इस समय जियांग लिंगजियन ने शांत होने का नाटक किया, लेकिन वह असमंजस में खड़ी रही। उसकी आंखों में ठंडक उमड़ पड़ी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। जियांग लिंगशियान को केवल यह महसूस हुआ कि वांग चेन अपने हाथों में जो पकड़े हुए था वह उसकी बांह नहीं बल्कि उसका दिल था। चूयाओ को भी ऐसा लग रहा था कि जियांग लिंगजियन के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता सकती थी कि क्या गड़बड़ है। जब चूयाओ करीब से देखने ही वाली थी तो जियांग लिंगक्सियन ने उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म थी। फिर इससे पहले कि आसपास के लोग प्रतिक्रिया कर पाते, जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को ले लिया और ताइक्सू अमर संप्रदाय की सड़क पर गायब हो गया। जियांग लिंगजियन की नज़र ने चूयाओ का दिल दहला दिया। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई और उन दो लोगों को देखा जो उसके सामने से डरकर गायब हो गए थे। संत ताइक्सू का क्या हुआ? चूयाओ को ये समझ में नहीं आया कि जियांग लिंगजियन के साथ क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में एक विचार उभरा। उन शब्दों को सुनने के बाद संत ताइक्सू की अभिव्यक्ति को देखते हुए, वांग चेन के गुरु के रूप में क्या ये हो सकता है कि वह अपने ही शिष्य को पसंद करती है? लेकिन उसके शिष्य की तो पहले से ही एक पत्नी है और वह उसके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। अब संत ताइक्सू को ये पता चलने पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चूयाओ चौंक गई और जल्दी से इधर उधर देखने लगी। उसने इस राज को पूरी तरह से छुपाने का फैसला किया, अन्यथा उसे थोड़ा डर था कि उसे चुप करा दिया जाएगा। हिस, ये लड़का वांग चेन खेल खेलने में बहुत माहिर है। उसके तरीके इतने जबरदस्त हैं कि वो संत ताइक्सू की भावनाओं से भी खेलने लगा है। मौके से जाने से पहले चूयाओ ने अपने दिल में एक गहरी सांस ली और चुपके से आह भरी कि वांग चेन वास्तव में बहुत बढ़िया था। लेकिन बाद में जब उसे जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन ने बांध कर पकड़ लिया तो उसने फिर कभी ऐसा नहीं सोचा। ताइक्सू सेंट मेडेन हॉल के अंदर। स्नैप! वांग चेन डर के मारे आंखें फाड़े दीवार से सट गया। उसी समय उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसने मन ही मन चूयाओ को हजारों बार कोसा। 5 या 6 सेकंड से भी कम समय बीता था जब चूयाओ ने कहा कि उसकी पहले से ही एक पत्नी है। वांग चेन पूरे समय उलझन में था और फिर एक पल में उसे लाल आंखों वाले जियांग लिंगक्सियन ने पीछे खींच लिया और दीवार से रोक दिया। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को दीवार से सटा दिया। वह अब अपने दिल की शिकायतों को सहन नहीं कर सकी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को देखा जिसे उसने दीवार से दबाया हुआ था। उसकी लाल आंखें और उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, मानो वह किसी भी क्षण फूट फूट कर रोने लगेगी। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला, तुमने मुझसे फिर झूठ क्यों बोला? जियांग लिंगक्सियन ने अपने दिल में अंतहीन शिकायतों को दबा दिया। उसकी ठंडी आवाज लगातार कांप रही थी क्योंकि वह बेहद परेशान करने वाले तरीके से वांग चेन से सवाल कर रही थी। पत्नी शब्द, साथ ही चूयाओ, आंतरिक संप्रदाय की महिला बुजुर्ग और अन्य आकृतियां जो वांग चेन को छीनना चाहती थीं, उसके दिमाग में आती रहीं। हर बार जब ये आकृतियां वास्तविकता में प्रकट होती तो वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर पाती, लेकिन अब उसने पाया कि वह अभी भी कुछ भी रोकने में असमर्थ है, रोकने में असमर्थ है। लिंगजियान, चूयाओ बकवास कर रहा है। जब से मैं 8वें उजाड़ महाद्वीप में आया हूँ मैं लगभग पूरे समय तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम्हें पत्नी का विचार कहाँ से आया? मुझे डर था कि वह मुझसे पिछले जन्म की तरह प्यार करने लगेगी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मेरी पहले से ही एक पत्नी है। वांग चेन चिंतित था, इस बार सचमुच चिंतित। जियांग लिंगजियन की ओर देखते हुए जो रोने ही वाला था उसने असहाय होकर समझाना शुरू किया। लेकिन जब जियांग लिंगशियान ने यह सुना तो वह इसे और नहीं रोक सकी और उसकी लाल आंखों से आंसू उसके सुंदर चेहरे पर बहने लगे। वह वास्तव में अपने पिछले जन्म में भी तुम्हें पसंद करती थी, इसलिए यदि तुम अब भी हर बार उससे मिलने जाते हो तो तुम्हें इस जन्म में भी उससे मिलना होगा। जियांग लिंगजियन ने अपने हाथ उठाए और अपने चेहरे से आंसू पोंछती रही, लेकिन उसकी दृष्टि अधिक से अधिक धुंधली होती गई। जियांग लिंगजियन को भी पता था कि वह अपना संयम खो चुकी है, लेकिन चूयाओ और वांग चेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह रोना बंद नहीं कर सकी। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने उसके साथ एक ही टेलीपोर्टेशन एरे साझा किया है और यही मायने रखता है, लेकिन इस जन्म में भी वह तुम्हारा नाम क्यों जानती है? वो क्यों? जियांग लिंगजियन जितना ज्यादा बोलती उसे उतना ही घुटन महसूस होती। उसका दिल मानो दबा हुआ सा लग रहा था और आंसू लगातार गिर रहे थे। इस समय जियांग लिंगजियन के मुंह से निकला हर शब्द रो रहा था। वह अपने हाथों से आंसू पोंछती रही और उसकी ठंडी आवाज लगातार कांप रही थी। तुमने मुझसे हर बार झूठ बोला, इससे पहले भी तुम्हें पता था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन तुमने मुझे बताने से इनकार कर दिया। तुमने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, तुमने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो जियांग लिंगजियन इतनी जोर से रोई कि उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, उसके शब्द रुक रुक कर आ रहे थे और उसका गोरा चेहरा आंसुओं के निशानों से भरा हुआ था। नहीं, मैंने इस जीवन में उससे मिलने की कभी पहल नहीं की, मैं उससे सिर्फ सड़क पर ही मिला था। जियांग लिंगशियान ने एक साथ इतने सारे प्रश्न पूछे कि वांग चेन का दिमाग भ्रमित हो गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह किसका उत्तर दे। अगर यह काम नहीं करता है तो हम जाकर उससे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। चलो रोना बंद करो, ठीक है? वांग चेन इतना दर्द में था कि वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। जियांग लिंगशियान को रोते और हौंफते देखकर वह भी दिल टूटने से खुद को नहीं रोक सका। वांग चेन ने पिछली बार की तरह जियांग लिंगशियान की भावनाओं को शांत करने के लिए उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह दो कदम पीछे हट गई। मत, मुझे मत छुओ। एक चू चू याओ काफी है, लेकिन अब एक और औरत है, फिर मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ? वो मैं वास्तव में एक अच्छा और मासूम मालिक हूँ। क्या हर दिन केवल तुम्हारे जैसे गद्दार ही मेरे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? अहम। जियांग लिंगशियान अब कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। उसने फिर से अपने आंसू पोंछे और अपने सुंदर चेहरे पर लाल आंखों से वांग चेन को देखा। रोने के कारण उसे खांसी भी आने लगी। जियांग लिंगक्सियन के ऊपरी बाएं हाथ पर पहना हुआ हांतियान कंगन उसके हाथ पर बहे आंसुओं से भीग गया था और उसमें से हल्की ठंडी रोशनी भी निकल रही थी। क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। नहीं, सामने वाली हानजुन दादी कहाँ है? मैंने अपना स्वामी क्यों बदल दिया? थोड़ी देर बाद हनतियन ब्रेसलेट से एक प्यारी सी लोली की आवाज आई। वह भी अभी जागी थी, इसलिए साफ तौर पर उलझन में लग रही थी। आप क्यों रो रहे हैं, नए मालिक? हालांकि ऐसा लग रहा था कि हांतियान ब्रेसलेट को कुछ आभास हो गया है और उसने जल्दी ही अपनी नई पहचान को अपना लिया, और एक प्यारी सी आवाज निकली। हांतियान ब्रेसलेट ने जियांग लिंगजियन की अत्यंत व्यथित मनोदशा को भांप लिया और उसका प्यारा स्वर धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। क्या इस बलात्कारी ने चुपके से तुम्हें अपवित्र किया है? मैं उसे अभी मार डालूंगा। जियांग लिंगक्सियन की बाईं कलाई पर हंतियान कंगन वांग चेन को देख रहा था और उसकी प्यारी आवाज गुस्से में बदल गई। फिर हंतियान कंगन की ठंडी रोशनी धीरे धीरे तेज हो गई और एक धुंधली शाही शक्ति जारी हुई, मानो वह वांग चेन को टुकड़ों में काटने के लिए दृढ़ थी। बस अगले ही पल, तुम मत करो, उसे मत छुओ, वापस जाओ। जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा आंसुओं के निशानों से भरा था और वह एक छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह रोई, लेकिन उसने जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं कलाई पर हंतियान कंगन को ढक लिया। इस समय जियांग लिंगक्सियन की सुंदर लाल आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका सुंदर चेहरा वांग चेन द्वारा धमकाए जाने की शिकायतों से भरा हुआ था, लेकिन वह अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने हंतियान कंगन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पीड़ा और सुरक्षा भरी नजर देखकर लोग बेवजह स्तब्ध रह गए। हमले से पहले फ्रॉस्ट ब्रेसलेट आधा जारी किया गया है। मास्टर, आप कैसे? हंतियान ब्रेसलेट के हर शब्द में एक स्तब्ध स्वर था, लेकिन इस बार इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, जियांग लिंगक्सियन ने बलपूर्वक संपर्क काट दिया। ये देखकर कि जियांग लिंगक्सियन का ध्यान अब उस हानतियन कंगन पर केंद्रित था जिसे उसने खुद को ढंक रखा था, वांग चेन ने जल्दी से अपनी बाहें फैला दी और उसे गले लगा लिया। आउच, मत छुओ, मुझे छुओ। कमर से पकड़े जाने के तुरंत बाद जियांग लिंगक्सियन होश में आ गई। जियांग लिंगक्सियन एक छोटी बिल्ली की तरह रो रही थी। उसका सुंदर चेहरा एक पीड़ादायक भाव से भरा हुआ था क्योंकि वह वांग चेन की बाहों में संघर्ष कर रही थी, मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। रोना बंद करो कृपया, मेरा वास्तव में चूयाओ से कोई लेना देना नहीं है। हम बाद में उससे आमने सामने बात कर सकते हैं, और मैं कसम खाता हूँ सच में मेरी कोई पत्नी नहीं है। अगर है भी तो वो तुम हो। जियांग लिंगक्सियन जितना संघर्ष करती, वांग चेन की बाहें उसे उतनी ही मजबूती से जकड़ लेती और वह बहुत तेजी से बोलता। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन के गर्म शरीर के तापमान और उनके स्पष्टीकरण और आराम के शब्दों को महसूस किया और उसकी संघर्षपूर्ण गतिविधियां अंततः थोड़ी कम हो गईं। वांग चेन जानता था कि यदि वह एक तियानजुंग क्षेत्र साधक वास्तव में मुक्त होना चाहती थी तो कोई भी तरीका नहीं था जिससे वह उसे पकड़ सके। अब जब मैं उसे गले लगा रहा हूं तो ये साबित हो गया है कि मैं उसे मनाने में सक्षम हूं। कृपया अभी रोना बंद करो। वांग चेन ने संकोचपूर्वक अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उसके सिर के पीछे सहलाया तथा उसके सुंदर चेहरे को अपने बाएं कंधे पर उसकी गर्दन में दबा लिया। हिस, लेकिन अगले ही पल वांग चेन को अपने कंधे में दर्द महसूस हुआ जिससे उसने अपनी आंखें खोली और सांस ली। हालांकि वांग चेन ने विरोध करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और जियांग लिंगजियन को एक साधारण व्यक्ति की तरह उसे काटने दिया। जियांग लिंगक्सियन ने और अधिक जोर से और अधिक बल के साथ काटा और यहां तक कि वांग चेन को भी लगा कि उसके कंधे की त्वचा काटने वाली है और उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन अंत में जियांग लिंगक्सियन की काटने की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और फिर उसने अपने हाथ उठाए और उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। वो जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की गर्दन को गले लगाया, अपना सुंदर चेहरा उसके कान में छिपा दिया और फिर से रोना शुरू कर दिया। वांग चेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके आंसुओं ने उसके कंधों पर पड़े कपड़ों को भिगो दिया था जिससे उसके चेहरे से ढके कंधे गर्म हो गए थे। जियांग लिंगजियन को पता ही नहीं था कि वो कब से रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सारी शिकायतें रो रोकर कह देना चाहती हो। इस बार वह न केवल चुयाओ के लिए रो रही थी, बल्कि अपनी टूटी हुई पत्नी के लिए या वांग चेन के पुनर्जन्म के लिए भी रो रही थी, जो उसे बिना बताए हुआ था। लेकिन पिछले जन्म में उसे वांग चेन की मृत्यु की खबर मिली थी, जिससे वह अकेले रोने लगी थी। और जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वह उस पहाड़ पर गई जहां वह दिन प्रतिदिन वांग चेन से मिलती रही और सैकड़ों वर्षों तक रोते हुए प्रतीक्षा करती रही। अनगिनत शिकायतें एक साथ मिलकर जियांग लिंगक्सियन अंततः आज वांग चेन के सामने उन्हें जारी करने से खुद को नहीं रोक सका। वांग चेन को नहीं पता था कि जियांग लिंगक्सियन कब से रो रहा था, वह केवल इतना जानता था कि उसके कंधों पर पड़े कपड़े पूरी तरह से आंसुओं से भीग गए थे। यहां तक कि अंत में स्वर्गीय पूजा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति जियांग लिंगक्सियन इतनी जोर से रोई कि उसने उसे गले लगा लिया और धीरे धीरे अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाकर सो गई। ऐसा लग रहा था कि केवल वांग चेन की उपस्थिति से ही जियांग लिंगक्सियन रोने के बाद शांति से सो सकती थी, अन्यथा वह पहले की तरह बुरे सपने के साथ अकेले जाग जाती। इस समय जब वांग चेन को लगा कि उसकी बाहों में जियांग लिंगक्सियन धीरे धीरे शांत हो गई है, तो उसने हाथ बढ़ाया और उसकी बाहों को खींच लिया जो उसकी गर्दन के चारों ओर थी। फिर वांग चेन ने अपने हाथ बढ़ाए और उसे राजकुमारी की तरह धीरे से उठाया, बिस्तर तक ले गया और धीरे से उसे उस पर लिटा दिया। जियांग लिंगक्सियन के आंसुओं से सने गोरे नहीं लाल चेहरे को देखते हुए वांग चेन ने हाथ बढ़ाया और उसे उसके लिए पहुंच दिया। इस समय जियांग लिंगक्सियन की बंद आंखों के कोने लाल थे और क्रिस्टल आंसू के निशान थे जो दिल तोड़ने वाला था। वांग चेन ने सिस्टम से साफ पानी और कपड़े के दो बेसिन खरीदे, उन्हें गीला किया और ध्यान से अपना चेहरा पोंछा। इसके बाद वांग चेन ने अपनी सफेद शर्ट को देखा जो उसके कंधों पर भीग गई थी और अपने कंधों को देखने के लिए उसे ऊपर उठाया। हिस, काटने से खून बह रहा है। वांग चेन ने अपना सिर घुमाकर अपने कंधे पर दांतों के निशानों की पंक्ति देखी जिनमें से खून की छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी। वांग चेन ने इससे कोई समझौता नहीं किया, बल्कि इसे वहीं छोड़ दिया और जियांग लिंगक्सियन की भावनाओं के स्थिर होने के बाद उसे दिखाने की योजना बनाई। फिर वांग चेन ने फिर से गीले सफेद कपड़ों को देखा और उन आंसुओं को सुखाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ने वाला था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होने से पहले हवा रहित सफेद कपड़ों का स्वचालित संस्करण उनके विचारों को समझ गया और काम करना शुरू कर दिया। मैंने वांग चेन के कंधे पर गीले कपड़ों का एक बड़ा क्षेत्र देखा जो हवा जैसी ऊर्जा से लगातार उड़ रहा था और धीरे धीरे सूख गया। वांग चेन एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर दृश्य को देखता रहा। उसे जियांग लिंगक्सियन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर डर के भाव के साथ वह अपना सिर थोड़ा हिला रही थी। जैसे ही वांग चेन ने एक पल के लिए स्तब्ध होकर अपना सिर घुमाया, उसकी नजर जियांग लिंगक्सियन की लाल आंखों पर पड़ी जो अचानक एक बुरे सपने से जाग गई थी। शिष्य, जियांग लिंगक्सियन के होठों के कोने धीरे धीरे नीचे मुड़ गए और वह बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी ठंडी और कर्कश आवाज में धीरे से पुकारा। उसकी आंखों में आंसू थे, वह दयनीय लग रही थी। टूटा हुआ, वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को देखा जो दयनीय लग रहा था और रोने वाला था। उसके हाथ में कपड़ा था और उसका दिल धड़क उठा। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने अपनी सामान्य ठंडी और अलग थलग सी शक्ल पूरी तरह खो दी थी। उसके दयनीय रोते हुए चेहरे के साथ उसका यह अंतर और भी गहरा था। वांग चेन तेज तर्रार और फुर्तीला था। उसने अपने जूते उतारे, जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और उसके कोमल शरीर को गले लगा लिया। शिष्य, आप, जियांग लिंगक्सियन के सुंदर चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव था और रोने से उसकी आवाज ठंडी और भारी हो गई थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसके होंठ किसी हाथ से बंद हो गए। वांग चेन जानता था कि वह उसे अब और बात नहीं करने देगा, अन्यथा वह शायद फिर से रोएगी। उसे बहुत सारी बातें फिर से समझानी पड़ सकती हैं और अंततः जब वह फिर से दयनीय रूप से रोएगी तो उसे सांत्वना देनी होगी। इसलिए उसका मुंह बंद करने और उसे दयनीय ढंग से रोने देने के बीच वांग चेन ने पहला विकल्प चुना। जियांग लिंगक्सियन को वांग चेन ने उसकी पतली कमर से गले लगाया और उसके होठों पर चूमा। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग बंद हो गया हो और वह आंखों में आंसू लिए उसे घूर रही थी। जियांग लिंगक्सियन पहले से ही बेहद आकर्षक और सुंदर है और अब वह इतनी दयनीय दिखती है कि लोग उस पर दया करना चाहते हैं। वांग चेन को ऐसा लगा जैसे वो पिघल रहा हो उसके कोमल होठों को चूमते हुए। उसका दिल इतना सुकून से भर गया कि वो लगभग फट ही गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखें, जो चूमने से लाल और आंसू भरी हो गई थी, थोड़ी बंद हो गई थी और उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थी। जब उनके होंठ खुले तो उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से सांसें लेने लगे। हफ, सांस लो। जियांग लिंगक्सियन अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसने अपना शर्माता हुआ चेहरा वांग चेन की गर्म गर्दन में कसकर छिपा लिया ताकि लोग उस पर दया करें। भले ही वह अब कुछ कहना चाहती थी, जियांग लिंगक्सियन का मस्तिष्क अब सोचने में सक्षम नहीं था। ऐसा खाली था मानो उसे ऑक्सीजन की कमी हो। खांसी खांसी खांसी, जियांग लिंगक्सियन का गला थोड़ा सा घूम गया और फिर वह अनजाने में कुछ बार खांसने लगी, मानो किसी चीज ने उसका गला घोंट दिया हो। वांग चेन भारी सांस लेते हुए छत की ओर देखता रहा और जियांग लिंगक्सियन के नाजुक शरीर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगता है अगली बार जब वह रोएगी तो मुझे बस उसका मुंह बंद करना होगा और उसे तब तक चूमना होगा जब तक वह मुश्किल से सोच पाए। वांग चेन ने अपनी बाहों में व्यक्ति के नाजुक शरीर से आती गर्मी को महसूस किया और उसके रोने की समस्या को हल करने के लिए उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। जियांग शियान, सो जाओ प्रिय। वांग चेन ने जियांग लिंगजियन को गले लगाया, अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके बालों को सहलाया, उसे धीमी आवाज में खुश किया। जियांग लिंगशियन ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जवाब देना भी नहीं चाहती थी। उसने बस अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया और कुछ नहीं बोली। वांग चेन ने ये देखकर कुछ नहीं कहा और उसे एक शांत वातावरण दिया, अन्यथा वह वास्तव में डर गया था कि वह उसे फिर से रुला देगा। वांग चेन ने पहली बार जियांग लिंगशियन को इस तरह रोते और हंगामा करते देखा था। उसके हमेशा ठंडे और अलग थलग स्वभाव से यह अंतर बहुत ज्यादा था। ऐसा लगता है कि जियांग लिंगक्सियन, जो अपने पिछले जीवन में आइस हॉट महारानी के रूप में जानी जाती थी, के दिल में भी गहरी कोमलता है, लेकिन उसकी कमजोरी में ही हूँ। वांग चेन को आज रात अच्छी नींद नहीं आई क्योंकि जियांग लिंगशियान समय समय पर नींद में जाग जाता था। वांग चेन बहुत गहरी नींद सोने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए हर बार जब जियांग लिंगक्सियन जागता था तो वह जल्दी से ऊपर और नीचे देखता था। कुछ बार तो ऐसा भी हुआ जब वांग चेन ने अपनी आंखें नीची करके जागृत जियांग लिंगजियन को कुछ देर तक देखा और उसका छोटा सा चेहरा अचानक बहुत दुखी हो गया। जब भी ऐसा होता था वांग चेन केवल उसे मनाने के लिए बोल सकता था। हालांकि जियांग लिंगजियन अब कोई हंगामा नहीं करती थी। हर बार जब वह वांग चेन की कोमल आवाज सुनती तो वह शांत हो जाती। क्योंकि यह रात का समय है और थोड़ा मन प्रकाश वाला घर अत्यंत शांत है, इसलिए अधिकांश लोगों के संवेदनशील हृदय इस समय अनगिनत गुना अधिक सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए हर बार जब जियांग लिंगक्सियन जागती थी तो वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती थी कि क्या वांग चेन वास्तव में उसकी बाहों में है, जैसे कि उसे डर था कि वांग चेन को कोई और छीन लेगा या गायब हो जाएगा। अंत में वांग चेन सोना ही नहीं चाहता था। उसने जियांग लिंगजियान को गले लगा लिया और छत को घूरता रहा। उसके शरीर में अराजकता नौयांग दिव्य कला चुपचाप दौड़ रही थी। जब तक खिड़की से घर में सूरज की रोशनी की एक किरण नहीं चमकी, तब तक वांग चेन ने महसूस नहीं किया कि जियांग लिंगक्सियन उसकी बाहों में फिर से हिल रहा है। जियांग लिंगजियन को धीरे धीरे अपना सुंदर चेहरा उठाते और उसकी ओर देखते हुए देखकर वांग चेन ने अवचेतन रूप से अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर कस दिया। जियांग शियान, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। वांग चेन ने अपनी बाहों में जियांग लिंगक्सियन को देखा, जो थोड़ी लाल आंखों से उसे देख रही थी, और जल्दी से उसे फुसलाया जैसा कि उसने देर रात किया था। लेकिन इस बार ये सुनने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने अपना सुंदर चेहरा उसकी गर्दन में नहीं छिपाया जैसा कि उसने पिछली बार किया था। इसके बजाय वह और वांग चेन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसकी खूबसूरत आंखें, जो कल रात रोने के बाद अभी भी थोड़ी लाल थी, उसे लंबे समय तक चुपचाप देखती रहीं। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा और फिर जियांग लिंगजियन करवट बदलने लगी, मानो उठना चाहती हो। ये देखकर वांग चेन दंग रह गया। जियान जियान, आप, अगर आप मुझे ऐसा बुलाना चाहते हैं। जियांग लिंगजियन को होश आने के बाद भी उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और ठंडेपन से जवाब दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह कल पूरी रात रोती रही, इसलिए उसकी आवाज नहीं खुली और शुरू में बोला गया नहीं, शब्द भी नहीं बोला गया। एक क्षण के लिए जियांग लिंगशियान ने खड़े होने के लिए रुककर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन उसने शांत होने का नाटक किया और खड़ी रही। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा, कृपया नाराज मत होना, ठीक है। जियान जियान, अब तुम क्या करने वाले हो? वांग चेन ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया, ये जानते हुए कि वह जागने के बाद भी गुस्से में थी, इसलिए वह उसे पकड़ना और उसे दिलासा देना चाहता था। मैंने कहा मुझे ऐसा मत कहो, मुझे जाने दो। जियांग लिंगक्सियन की स्पष्ट और ठंडी आवाज वांग चेन की हरकत से इतनी गुस्से से प्रभावित हुई कि उसने दो बार खांसी और फिर से इसे दोहराया। क्या तुम अब भी नाराज हो? अगर सब कुछ विफल हो जाए तो क्या हम जाकर चुयाओ को पकड़ सकते हैं और उसका आमने सामने सामना कर सकते हैं? जियांग लिंगक्सियन को अपने हाथों से बिस्तर पर सहारा देते हुए और उसके गले लगने के बावजूद उठने पर जोर देते हुए देखकर वांग चेन भी जल्दी से उठ बैठा। वांग चेन अगर चुयाओ का जिक्र न करता तो ठीक रहता। चुयाओ का जिक्र होते ही जियांग लिंगशियन एक ऐसी बिल्ली की तरह हो गई जिसका रोएं खड़े हो गए हों, और उसने वांग चेन के हाथ जो उसकी कमर में थे खींचने की कोशिश की। हिस, दर्द हो रहा है। इस दौरान जियांग लिंगक्सियन की कोहनी से वांग चेन के बाएं कंधे पर चोट लगी और उसने तुरंत चीखने का नाटक किया। उसी समय वांग चेन के हाथों ने अवचेतन रूप से जियांग लिंगक्सियन की पतली और मुलायम कमर को छोड़ दिया, जैसे कि वह वास्तव में दर्द में था। जियांग लिंगक्सियन की संघर्षपूर्ण गतिविधियां एक पल के लिए थम गईं, और जब उसने देखा कि वांग चेन ने वास्तव में उसे जाने दिया है, तो उसकी लाल आंखों में नुकसान का संकेत था। लेकिन जल्द ही उसने वांग चेन की ओर देखा, जो अपने कंधे को ढक रहा था, कुछ चिंता के साथ। जियांग लिंगक्सियन उसके पास जाकर उसकी चोटों की जाँच करना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह गुस्से में थी और उसे अनदेखा कर देना चाहिए। लेकिन अंत में जियांग लिंगक्सियन 3 सेकंड से भी कम समय के लिए हिचकिचाया और वांग चेन के करीब जाने और उसके कंधे पर देखने से खुद को रोक नहीं सका। बस एक नज़र और जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में पछतावा और दिल का दर्द था। जियांग लिंगक्सियन की निगाहों के बाद वांग चेन के बाएं कंधे पर दांतों के निशान की 2 पंक्तियां देखी जा सकती थी, जो खून की बूंदों से सने हुए थे। कोई बात नहीं, बस मामूली चोट है। जब वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसने जल्दी से उसके कंधों को कपड़े से ढक दिया और उसे सांत्वना दी। कुत्ते के मेजबान के तरीके अब भी पहले जैसे ही परिष्कृत हैं। सिर्फ तुम्हारी भोली भाली बहन लिंगक्सियन ही तुम पर यकीन करेगी। चले जाओ, मुझे बहुत चोट लगी है, कृपया। वांग चेन ने मन ही मन सिस्टम को एक खाली नजर से देखा, फिर भौंकते कुत्ते को अनदेखा कर दिया। नहीं, जब जियांग लिंगक्सियन ने देखा कि वांग चेन के कंधों पर कपड़े उसे ढकने वाले थे, तो वह मदद नहीं कर सकी और उसका हाथ पकड़ लिया। वांग चेन ने ये देखकर शक से आंखें उठाई। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उसे इस तरह देखा जा रहा था। चूंकि यह मैं ही था, मैंने इसे काटा, तो स्वाभाविक रूप से मैं ही इससे निपट लूंगा। ज्यादा मत सोचो। जियांग लिंगक्सियन ने शांत होने का नाटक किया और सीधे वांग चेन की आंखों में देखा और जो कुछ उसने कहा था उसे अधिक सच दिखाने की पूरी कोशिश की। तभी जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की सफेद शर्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे वांग चेन थोड़ा असहज महसूस करने लगा। लेकिन वांग चेन हिला तक नहीं, वह बस बिस्तर पर बैठ गया, जो उनके अंतरंग पलों के बाद भी गर्म था, और उसने उसे अपनी सफेद शर्ट के बटन खोलने दिए। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की मजबूत छाती को धीरे धीरे उभरते हुए देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक लाली आ गई। वांग चेन के ऊपरी शरीर पर से सफेद कपड़े उतार दिए जाने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने उसके मजबूत और गोरे शरीर को देखा और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे इतने करीब से देखना पिछली बार से बिल्कुल अलग था, जब वांग चेन ने गलती से उसे अपने सामने कपड़े बदलते हुए देखा था। जियांग शियान, तुम्हें क्या हुआ है? वांग चेन को उम्मीद नहीं थी कि जियांग लिंगक्सियन इतनी चकित हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने अनजान होने का नाटक किया और नमस्ते कहने के लिए उसके सामने हाथ हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, बात मत करो। बुलाए जाने के बाद जब जियांग लिंगक्सियन होश में आई, तो उसके सुंदर चेहरे के दोनों तरफ के कान तुरंत लाल और गर्म हो गए और बोलते समय वह हकलाने लगी। हालांकि जियांग लिंगक्सियन की हकलाने की आदत पुरानी थी। वांग चेन जानता था कि जब वह शर्मिंदा होगी तो उसकी बोली हकलाने लगेगी। जियांग लिंगक्सियन ने अपने गालों पर जलन को दबाया और जल्दी से अपने आत्मा स्थान से कुछ औषधीय पाउडर और आध्यात्मिक पट्टियां निकाली। जियांग लिंगक्सियन थोड़ा घबरा गई और जब उसने दवा पाउडर की जेड बोतल निकाली, तो वह गलती से बिस्तर पर गिर गई। जियांग लिंगक्सियन ने दवा पाउडर की जेड बोतल उठाई और वांग चेन के कंधे से खून पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पट्टी का इस्तेमाल किया। अंत में उसने दवा का पाउडर पट्टी पर डाला और फिर उसे सावधानीपूर्वक पट्टी बांधना शुरू कर दिया। वांग चेन चुपचाप जियांग लिंगक्सियन को देखता रहा, जो नंगे पैर बिस्तर पर घुटनों के बल बैठा था और अपने कंधे पर पट्टी बांधने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वांग चेन, जो अक्सर घायल हो जाते थे, के साथ जियांग लिंगक्सियन की पट्टी बांधने की तकनीक स्पष्ट रूप से थोड़ी अधिक कुशल हो गई। यद्यपि अंत में इसे टेढ़ा मेढ़ा बांधा गया था, लेकिन कम से कम इसे काफी मजबूती से बांधा गया था। ठीक है, अपने कपड़े खुद पहन लो। जब जियांग लिंगक्सियन ने दवा पाउडर की जेड बोतल और शेष आध्यात्मिक पट्टियां हटा दी, तो वह समय समय पर अवचेतन रूप से वांग चेन के शरीर पर नजर डालती रही। नहीं, तुमने ही मुझे ये दिया, तुमने मुझे काटा और मेरे कपड़े उतार दिए, तुम्हें अंत तक जिम्मेदारी लेनी होगी। वांग चेन ने अपनी बाहें खोली और गहरी आंखों से बोला, जैसे ही उसने जियांग लिंगक्सियन को देखा, जो उसके शरीर पर नजर डालने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखना है तो जितना देखना है देख लो, फिर भी शर्मा क्यों रहे हो? वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा, जिसने उसकी बात सुनने के बाद उसकी छाती पर एक नजर डाली और किसी कारण से थोड़ा अजीब महसूस किया। जियांग लिंगक्सियन स्पष्ट रूप से हिचकिचा रही थी, उसके कान पूरी तरह से लाल हो गए थे, लेकिन अंत में उसने धीरे से अपने पतले हाथ बढ़ा दिए। अगर मेरा शिष्य इस समय मुझे गले लगा ले तो कैसा लगेगा? जब जियांग लिंगक्सियन वांग चेन के सफेद कपड़ों से भरे ऊपरी शरीर को उठा रही थी, तो अनजाने में उसके दिमाग में एक विचार आया। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन वांग चेन के मजबूत शरीर को अचंभित होकर देख रही थी, उसने अचानक महसूस किया कि उसकी कलाई पकड़ ली गई है। फिर इससे पहले कि जियांग लिंगक्सियन प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी हथेली ने उसकी चकित आंखों में वांग चेन के शरीर को छू लिया। अपने दाहिने हाथ की हथेली के स्पर्श से जियांग लिंगजियन को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। शर्म से उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। जियांग लिंगजियन अब अपने गालों के गर्म होने की भावना को दबा नहीं सकी और उसका पूरा सुंदर चेहरा जल्दी ही लाल हो गया। उसे अपने लक्षणों का एहसास जरूर था। वान चेन को कोसने के बाद वह जल्दी से मुड़ी और उसका सामना करना बंद कर दिया। वान चेन ने जियांग लिंगजियन की तरफ देखा, जो मुंह फेर कर कुछ नहीं बोली। उसने बस मुस्कुराकर ऊपरी शरीर की सफेद पोशाक उठाई जो उसके छूटने के बाद गिर गई थी और उसे फिर से पहन लिया। अब और गुस्सा मत करो, ठीक है? वांग चेन ने अपनी सफेद शर्ट पहनने के बाद धीरे से जियांग लिंगक्सियन को पीछे से गले लगाया, अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा दिया और उसके कान में फुसफुसाया। मत मुझे गले लगाओ। जियांग लिंगक्सियन ने अपने कानों पर गर्म सांस महसूस की, उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने प्रतीकात्मक रूप से वांग चेन की बाहों को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर वांग चेन ने धीरे से उसके लाल कानों को चूमा और फिर धीरे से उसके गर्म सफेद गालों को कुछ बार चूसा। आप वांग चेन के हमले के बाद जियांग लिंगक्सियन तुरंत शांत हो गई। वह उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। वांग चेन ने अपनी बाहों में जियांग लिंगक्सियन के शरीर की कोमलता और उसकी थोड़ी अव्यवस्थित सांसों को महसूस किया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर स्क्रीन काली हो गई। स्नैप। लेकिन 3 सेकंड के भीतर दृश्य फिर से प्रकट हुआ और वांग चेन को पहले ही जियांग लिंगक्सियन की विस्फोटक साधना द्वारा बिस्तर से गिरा दिया गया था। आउच। वांग चेन का शरीर जमीन से टकराया और वह चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन इस बार जियांग लिंगजियान ने उसे अनदेखा कर दिया। गद्दार, बेशर्म। जियांग लिंगजियान की आंखों के कोने हल्के लाल हो गए थे। उसने बिस्तर के नीचे वांग चेन को दया और गुस्से से घूरा और जल्दी से अपने अस्त व्यस्त कपड़े ठीक किए। वांग चेन फर्श पर लेट गई और जियांग लिंगक्सियन को देखकर थोड़ा दोषी महसूस किया जो उसे घूर रहा था। मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम बहुत आकर्षक लग रही थी। तुम इसे रोक नहीं पाए। अगर मेरी साधना तुमसे ऊंची न होती तो मेरा कौमार्या तुम छीन लेते। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन दंग रह गई, लेकिन वांग चेन की बातों को समझने के बाद उसने शर्माते हुए गुस्से से जवाब दिया। लेकिन क्या मैं अभी जिस तरह था वह सचमुच मेरे शिष्य के लिए इतना आकर्षक था? जब जियांग लिंगक्सियन वांग चेन को डांट रही थी तो वह अपने शिष्य के चेहरे पर उस भावुक भाव को याद करने से खुद को नहीं रोक सकी जब वह अभी अभी उसकी ओर आकर्षित हुआ था और उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था। तो फिर मेरी साधना आपकी साधना से ऊंची है तो तुम चुप रहो। जियांग लिंगक्सियन को पहले से ही अंदाजा था कि वांग चेन आगे क्या कहेगा। वह इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने अपना हाथ उठाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसका मुंह बंद कर दिया। ओ, मुझे फिर कभी चूमने के बारे में मत सोचना। वांग चेन की गिड़गिड़ाहट और जियांग लिंगक्सियन के गुस्से और कठोर शब्दों के साथ दृश्य पलट गया। .. ताइक्सू फूड पवेलियन। आह, सुबह के समय अपेक्षाकृत सुनसान ताइक्सू फूड पवेलियन में सुंदर बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी और हरे कपड़े पहने एक युवक सफेद बांसुरी बजा रहा था। और कहीं एक कोने में एक और दयालु चेहरे वाला और सुंदर युवक बैठा था, वह किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस व्यक्ति का वह इंतजार कर रहा था वह देर से आ रहा था, जिसके कारण वह वहीं से उठाकर बैठा रहा, बांसुरी की धुन सुनता रहा और बार बार झपकी लेता रहा। बांसुरी की धुन समाप्त होने के बाद सफेद बांसुरी वाले युवक ने बांसुरी अपनी कमर में डाल ली और जाने के लिए मुड़ गया। पहले से ही वीरान ताइक्सू फूड पवेलियन और भी वीरान हो गया, केवल एक दयालु युवक कोने में ऊँगता हुआ दिखाई दिया। स्नैप। युवा ताइक्सू संप्रदाय के गुरु को ऐसा लगा कि बांसुरी की ध्वनि बंद हो गई है और उनका पूरा चेहरा सीधे मेज पर गिर गया। आउच। ताइक्सू संप्रदाय के युवा नेता ने विलाप किया, अपना चेहरा मेज से उठाया और ताइक्सू फूड मंडप पर अपनी नींद भरी आंखों से देखा जो पहले से ही आकाश में चमक रहा था। धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? टकराना। जब युवा ताइक्सू संप्रदाय के नेता जियो किंगक्सू ने देखा कि वांग चेन देर से आ रहा है तो उसने शाप दिया, मेज पटक दी और खड़ा हो गया। बाद में ताइक्सू फूड पवेलियन में जहां सिर्फ जियाओ किंगक्सू ही अकेला था, वह गुस्सेल आकृति अचानक गायब हो गई। अब ताइक्सू फूड पवेलियन सचमुच खाली था, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि कल रात वांग चेन को जियांग लिंगक्सियन ने ताइक्सू पवित्र युवती महल में पकड़ रखा था और वह इतना खुश था कि वह इसका वर्णन नहीं कर सकता था। ताइक्सू सेंट मेडेन हॉल के अंदर। डिंग, मिशन। पता चला है कि ये किंग की चांस फॉर लीफ फ्लेम ग्रास लगभग पक रही है। असंख्य जानवर इकट्ठा हो गए हैं, कृपया तुरंत जाकर प्रतिस्पर्धा करें। इनाम, संत स्तरीय सफेद बाघ तावीज। समय सीमा 7 दिन। सफेद बाघ ताबीज। वांग चेन ने इनाम को देखा और एक पल के लिए सोचा। उसने अपनी आंखें उठाई और ध्यान से जियांग लिंगजियन की ओर देखा जो पास ही एक कुर्सी पर पालथी मारकर बैठा अभ्यास कर रहा था। दस्तक दस्तक दस्तक। इस समय दरवाजे पर अचानक एक अधीर दस्तक हुई जिसने वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन का ध्यान आकर्षित किया। जियांग लिंगक्सियन ने कुर्सी पर पालथी मारकर बैठते हुए अभ्यास करना बंद कर दिया। उसने आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा, फिर वांग चेन की ओर। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? छिपने के लिए वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को अपनी ओर देखते हुए देखा, अपना हाथ उठाया और खुद की ओर इशारा किया, फिर पास ही में अलमारी या अपने शरीर पर बिछे बिस्तर को देखा। जरूरत नहीं, जियांग लिंगक्सियन ने शांत और सुखद आवाज में शांति से जवाब दिया, फिर अपनी पालथी मारकर बैठी स्थिति से नीचे उतरी और दरवाजे से बाहर चली गई। क्रंच। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने दरवाजा खोला, वांग चेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और बेहद परिचित युवा आकृति को देखा। ओह ओह, आपका शिष्य कहाँ है? जियो किंगक्सु रुक गया क्योंकि वह अपने हाथ ऊपर उठाकर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। उसने बेहद ठंडी आंखों से जियांग लिंगक्सियन को देखा और कमजोर स्वर में पूछा। उन्होंने लगभग पूरे ताइक्सु अमर संप्रदाय की खोज की और अंततः जब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा तो वे जियांग लिंगक्सियन से पूछने आए। तभी जियांग लिंगक्सियन की नजर युवा ताइक्सु संप्रदाय के गुरु जियाओ किंगक्सु पर पड़ी। जियांग लिंगक्सियन उनके युवा रूप को पहचान गई। मुझे नहीं पता तुम उससे क्या चाहते हो। जियांग लिंगक्सियन शुरू से ही बहुत खुश नहीं थी और अब जियाओ किंगजू दरवाजा पीट रही थी। एक पल के लिए उसकी आवाज किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी। तुम्हें पता नहीं? आह ठीक है ठीक है ठीक है, मैं। जियो किंगक्सु ने जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा जो स्पष्ट रूप से दुखी था। कमजोरी से यह कहने के बाद वह मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक उसने ऊपर देखा और कमरे में मौजूद व्यक्ति को देखा। वह तुम्हारे कमरे में और बिस्तर पर क्यों है? जियो किंगक्सु की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास के साथ जियांग लिंगक्सियन और फिर वांग चेन की ओर देखा। उसके कंधे में चोट लग गई और मैंने उसका इलाज किया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ है? जियो किंगक्सु ने जियांग लिंगक्सियन के ठंडे स्वर को सुना और उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। आपने गलत सुना जियो किंगक्सु, आपको कम से कम थोड़ा अभिनय तो करना चाहिए। क्या आप वास्तव में परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में इतने अच्छे हैं? जियो किंगक्सु ने जियांग लिंगक्सियन के शांत और ठंडे शब्दों को सुना और एक नज़र दिखाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ? आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के बिस्तर पर उतरा, काले चप्पल पहने और जियो किंगक्सु की ओर चला गया और संदेह से पूछा, मैंने कल ताइक्सु फूड पवेलियन में पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आए? जियो किंगक्सु ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, लेकिन उसके शब्दों से यह स्पष्ट हो गया और कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे समझ सकता था। वांग चेन ये सुनकर दंग रह गया। वह जियांग लिंगक्सियन के साथ वहीं खड़ा रहा और दरवाजे के बाहर जियाओ किंगक्सु को अजीब नजरों से देखने लगा। वह असल में इस मामले को भूल ही गया था। आखिरकार उसने जियो किंगक्सु के स्पिरिट स्टोन स्वीकार कर लिए थे, इसलिए यह उसकी ही गलती थी कि वह ताइक्सु फूड पवेलियन नहीं गया। मैं कल अपने छोटे से रोने वाले बच्चे को सांत्वना दे रहा था और उसके बारे में भूल गया। वांग चेन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और थोड़ी देर तक जियो किंगक्सु को देखने के बाद वह शांति से बोलना जारी रखा। जब जियांग लिंगक्सियन ने उस छोटे से रोने वाले बच्चे को सुना तो उसकी आंखें एक पल के लिए थोड़ी खाली हो गईं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बेहद ठंडा था और उसने कुछ भी नहीं दिखाया। छोटा रोने वाला बच्चा, ये सुनकर जियाओ किंगक्सु एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने जियांग लिंगक्सियन की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन जियो किंगक्सु ने कमरे के अंदर झांका तो देखा कि वांग चेन के अलावा वहां सिर्फ जियांग लिंगक्सियन ही थी। कोई और रोने वाला बच्चा नहीं होना चाहिए था। जियो किंगक्सु को अपनी ओर देखते हुए देखकर जियांग लिंगक्सियन ने अप्रसन्नता से भौहें चढ़ाई और ठंडेपन से पीछे देखा। क्या आपको लगता है कि वह जिस छोटे से रोने वाले बच्चे की बात कर रहा है वह मैं ही हूँ? जियांग लिंगक्सियन ने भौहें सिकुड़ी और जियाओ किंगक्सु को ठंडी नजरों से देखा। धीरे धीरे नाराजगी भरी एक ठंडी और सुखद आवाज निकली। लेकिन जियांग लिंगक्सियन ऊपर से शांत और ठंडी दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी। उसने अपने शिष्य को गले लगाया और एक छोटे बच्चे की तरह रोई, इसलिए दूसरों को पता न चले। अरे ये है मेरे छोटे डिंग। इस समय वांग चेन ने अपने दाहिने हाथ से छोटे सम्राट जुवान डिंग को निकाला और उसे संकेत देने के लिए धीरे से छोटे सम्राट जुवान डिंग के सिर को थपथपाया। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा और जब उसने देखा कि वांग चेन ने उसे उजागर नहीं किया तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वाह बड़े कबूतर, तुम क्या कर रहे हो? छोटे हुआंग शुवान डिंग को बिना किसी कारण के उसकी नींद से उठाकर दोष मर दिया गया। वह स्पष्ट रूप से भ्रमित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक वांग चेन विशन अनुमति नहीं खोलता वह भंडारण स्थान के बाहर बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो जियाओ हुआंग जुवान डिंग को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आखिरकार वांग चेन तो जियांग लिंगजियांग के साथ अंतरंग होते हुए भी उन्हें रोक ही लेता था। ओह, तो अब आप फ्री हैं ना? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर जानकारी सही निकली तो मैं आपको जरूर संतोषजनक इनाम दूंगा। जियो किंगक्सू ने वांग चेन के हाथ में छोटे से हुआंगक्सुआंडिंग को देखा, जो एक छोटी बच्ची की आवाज निकाल रहा था। आखिरकार उसे उसकी बात समझ में आ गई और उसने उस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने कहा, एक जूनियर बहन जो इतनी ठंडी दिखती है और अजनबियों को दूर रखती है, वह कैसे रो सकती है? ओह, शायद नहीं। वांग चेन ने जियो किंगक्सू की ओर देखा, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसकी ओर हाथ हिला रहा था, और उसने अपने सिर को हल्का सा हिलाकर जवाब दिया, क्यों? तुमने न केवल मुझे एक बार छोड़ दिया, बल्कि अब तुम मेरे पीछे आने से भी इनकार कर रहे हो। जियाओ किंगक्सू जाहिर तौर पर थोड़ा गुस्से में था। उसका दयालु और सुंदर चेहरा उदास हो गया और उसने वांग चेन को गौर से देखा। ठीक है, वांग चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन व्यवहारिक कार्यों से इसे साबित कर दिया और दरवाजे की ओर चल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब तक वांग चेन दरवाजे की चौखट तक नहीं पहुंचा और जियांग लिंगक्सियन के पास से नहीं गुजरा, तब तक उसने उसे रोकने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। अब वांग चेन दरवाजे की चौखट पर खड़ा था और एक कदम आगे बढ़ने से थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसे हमेशा अपने पीछे अजीब सी ठंड महसूस होती थी। वांग चेन ने थोड़ा चिंतित होकर पीछे देखा और जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखों से मिला, जो उसे शांति और ठंडेपन से घूर रही थी। ये देखकर कि वह हिली नहीं, वांग चेन ने एक पैर उठाया और दहलीज से बाहर निकल गया, जबकि दूसरा पैर वहीं छोड़ दिया। फिर जियांग लिंगजियन पलटी और उसके शरीर से एक हल्की ठंडक निकली, मानो वह लोगों से दूर रहने के लिए कह रही हो। ये देखकर वांग चेन ने जल्दी से अपना पैर वापस खींच लिया, जिससे जियो किंगक्सू दरवाजे के बाहर स्तब्ध रह गया। बस थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। वांग चेन ने अपने पैर पीछे खींच लिए और जियो किंगक्सू की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़ लिया। स्नैप, दरवाजा बंद होने की एक तीखी आवाज आई, जिससे जियो किंगक्सू बाहर बंद हो गया, जो अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर लिए अपना सिर बाहर निकाले हुए था। ठीक है बच्चे, तो मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, तुम वैसे भी भाग नहीं सकते। जियो किंगक्सू को ताइक्सू पवित्र युवती महल के आंगन में जमीन का एक टुकड़ा मिला, फिर वह पालथी मारकर बैठ गई और झपकी लेने लगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने जियांग लिंगक्सियन को यह सुझाव क्यों नहीं दिया कि वह चीजों पर चर्चा करने के लिए उन्हें ताइक्सू पवित्र युवती महल में जाने दें, क्योंकि हान जून ने जियांग लिंगजियन से कहा था जब वह अभी भी छोटी थी कि अगर उसने जियांग लिंगजियन के प्रति कोई भी बुरा विचार रखने की हिम्मत की तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। यही कारण है कि जियो किंगक्सू, हालांकि वह संप्रदाय का नेता है और उसका क्षेत्र जियांग लिंगक्सियन से ऊंचा है, हर बार जब वह उसे देखता है तो थोड़ा डर जाता है। इस समय ताइक्सू पवित्र युवती महल में दरवाजा बंद करने के बाद वांग चेन जल्दी से जियांग लिंगक्सियन के पास गया, जो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी और उसे ठंड लग रही थी, और उसने उसे सावधानी से देखा। जियान जियान, चुप रहो। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की बात भी नहीं सुनी और ठंडे स्वर में उसे बीच में ही रोक दिया और अपनी खूबसूरत ठंडी आंखें बंद कर ली। मैं इस बार तुम्हें बंद नहीं करूंगा, अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जाओ। जियांग लिंगक्सियन अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई और एक ठंडी आवाज निकली, मानो वह वांग चेन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। तो अगर मैं सचमुच चला गया तो तुम खुश नहीं रहोगे? वांग चेन ने चुपचाप अपना हाथ उठाया, जियांग लिंगक्सियन के गोरे और नाजुक छोटे चेहरे के दाहिने हिस्से को धीरे से चुटकी काटी और शब्दों को उगल दिया। मेरे चेहरे पर चुटकी मत काटो। जियांग लिंगक्सियन ने गुस्से से अपना गाल हिलाया और उसका गोरा और सुंदर चेहरा थोड़ा खींच गया, जिससे वह बेवजह प्यारी लग रही थी, जैसे कि वह रूठ रही हो। तो क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं चला जाऊं? वांग चेन बिस्तर पर चढ़ गया, जियांग लिंगक्सियन को बिना छुए उसके बगल में बैठ गया और उससे एक घातक सवाल पूछा। ये सुनने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और उसकी गहरी और ठंडी आंखें वांग चेन पर टिक गईं। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। मुझे कुछ काम निपटाने के लिए कुछ दिनों में रेगिस्तान जाना है, हो सकता है कि हम जल्द ही मिल ना पाएं। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को चुपचाप देखा और उसे बताया कि वह महुआंग जा रहा है। आखिरकार उसे देर सवेर यह कहना ही था। क्या ये सही है या नहीं? हालांकि जियांग लिंगक्सियन ने यह बात खुले तौर पर कही थी, लेकिन वह अपने दिल में पहले से ही जानती थी कि वांग चेन ने जो कहा था वह संभवतः सच था। आखिरकार इस जीवन के लिए उसकी अपनी योजनाएं हैं और स्वाभाविक रूप से वांग चेन की भी अपनी योजनाएं हैं। तो मैं तुम्हें एक और बहुत अच्छी ड्रेस दूंगी, प्लीज नाराज मत होना, ठीक है? वांग चेन ये सब चाहता था और उसने रहस्यमय तरीके से अपने पीछे से एक काले और सफेद बिल्ली के कान वाली नौकरानी की पोशाक निकाली और उसे बिस्तर पर रख दिया। ये औपचारिक स्कर्ट प्रकार की एक नौकरानी पोशाक थी और फिर जैसे ही वांग चेन ने तय किए हुए कपड़े खोले, ये पता चला। एक जोड़ी रोएदार सफेद बिल्ली के कान, एक जोड़ी सफेद मोजे और एक सफेद धनुषाकार पैर का पट्टा जिसे जांघ के चारों ओर बांधा जा सकता है। जब जियांग लिंगक्सियन ने पहली बार कपड़े देखे तो उसकी अभिव्यक्ति सामान्य थी, लेकिन जब उसने इसे खोला तो वह एक पल के लिए दंग रह गई। यहां तक कि वांग चेन भी चुपचाप निगलने से खुद को नहीं रोक सका और कपड़ों को अचंभे की स्थिति में पकड़े रहा। जोड़ी जोड़ी जोड़ी, क्या पैकेज इतना पूरा है? यहां तक कि जब वांग चेन सिस्टम से पूछ रहे थे तो उन्होंने अपने हाथों में कपड़ों को देखा और उनके शब्द हकलाने लगे। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ नौकरानी की पोशाक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह शामिल है। जियांग लिंगक्सियन के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर वह कपड़ों को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गई। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें ये खूबसूरत ड्रेस दे रही हूँ, क्या तुम कृपया नाराज मत हो? ये देखकर कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, वांग चेन के पास बोलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और वह हकलाने लगा। वांग चेन की आवाज़ सुनकर जियांग लिंगक्सियन आखिरकार होश में आई। उसने अपना सुंदर चेहरा थोड़ा झुकाया और कुछ देर तक उसे खाली नजरों से देखती रही। मैं इक्वल्स नहीं, ठीक है ठीक है। इससे पहले कि जियांग लिंगक्सियन अपनी बात पूरी कर पाती, वांग चेन की विनम्र और निराश आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए अपने होठों को बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसका सुंदर और ठंडा चेहरा झिझक दिखा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वांग चेन बिस्तर पर कपड़े रखने वाला था तो जियांग लिंगक्सियन ने मदद नहीं की और जल्दी से उसे पकड़ लिया। फिर भी इसे स्वीकार करो, वरना अगर मैंने इसे किसी और को दे दिया तो बुरा होगा। खैर, मैं इसे पहन नहीं रहा हूँ, मैं बस इसे स्वीकार कर रहा हूँ। जियांग लिंगक्सियन के गोरे और सुंदर हाथों ने बिस्तर पर बिल्ली के कान वाली नौकरानी पोशाक को दबाया और वह अपने दिल में खुद को सांत्वना देती रही। फिर वांग चेन की कुछ हद तक हैरान निगाहों के नीचे, जियांग लिंगक्सियन ने जल्दी से अपने गोरे हाथ फैलाए और बिल्ली के कान वाली नौकरानी की पोशाकें एक एक करके उतार दी। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उन दोनों के बीच का क्षेत्र खाली ना हो जाए। जियांग लिंगक्सियन के कान पहले ही लाल हो चुके थे। उसने अपना सुंदर चेहरा थोड़ा सा फेर लिया, शर्म से आंखें फेर ली, अपने प्रेमी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन का गोरा चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, उसके प्यारे लाल कान उजागर हो गए थे। जियांग लिंगक्सियन की शर्मीली नजर ने वांग चेन को एक पल के लिए थोड़ा चकित कर दिया और उसने धीरे से अपने हाथों को उसकी गोरी गर्दन को गले लगाने के लिए बढ़ाया। मत मुझे गले लगाओ। जब जियांग लिंगक्सियन ने देखा कि वांग चेन ने अचानक अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसका गर्म शरीर उससे सट गया तो वह खुद को रोक नहीं सकी और विरोध करने का नाटक किया और उसे दो बार धक्का दिया। हिलना मत। वांग चेन ने अपनी बाहें जियांग लिंगक्सियन की गर्म शर्मीली और गर्म गर्दन के चारों ओर डाल दी और धीरे धीरे शर्मीली जियांग लिंगक्सियन को कसकर गले लगा लिया, अपना सिर उसके कान में दबा दिया और चुंबकीय और कोमल आवाज में बोला। जियांग लिंगक्सियन को नहीं पता था कि वह किस तरह की जादुई शक्ति के अधीन थी, लेकिन वांग चेन के शब्दों को सुनने के बाद उसने धीरे धीरे अपने कमजोर संघर्ष को रोक दिया। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को गले लगाया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए थोड़ी घबरा गई और बेवजह छूटना चाहती थी, लेकिन जल्द ही जियांग लिंगक्सियन ने महसूस किया कि उसके कान को धीरे से चूसा जा रहा है और इस समय उसके गाल तुरंत लाल हो गए। नहीं नहीं, वो जियांग लिंगक्सियन ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वांग चेन के होठों ने उसे चुप करा दिया जो उसके लाल होठों के करीब आ गए। इस समय जियांग लिंगक्सियन पूरी तरह से भूल गई थी कि उसने सुबह इतनी जिद से क्या कहा था। अब से मुझे फिर से चूमने के बारे में सोचना भी मत। ... ताइक्सु सेंट मेडेन पैलेस के बाहर क्रंच। ताइक्सु पवित्र युवती महल का दरवाजा खुला और वांग चेन, जो धूल से भरा हुआ था लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, धीरे धीरे बाहर चला गया। कमरे में बिस्तर पर शर्माते चेहरे के साथ लेटी जियांग लिंगक्सियन ने जल्दी से अपने गीले और लाल होंठों को पोंछने के लिए अपने सफेद हाथ के पिछले हिस्से को ऊपर उठाया। बुरा शिष्य, बुरा शिष्य, बुरा शिष्य, जब उसने मुझसे बेहोशी की हालत में कुछ पूछा तो मैं बहुत मूर्ख थी, मैं कैसे सहमत हो सकती थी। जियांग लिंगक्सियन ने एक साफ सुथरी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। वह अपनी टांगे बगलों में फैलाए बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था, उस समय को याद करते हुए जब उसे बेहोश करके चूमा गया था, जब वांग चेन ने उसे बाहर जाकर जियो किंगक्सु से कुछ बात करने के लिए कहा तो उसने हम ध्वनि के साथ सहमति व्यक्त की, और जब वह उलझन में थी तो वांग चेन ने उससे कहा कि उसे वे कपड़े पहनने होंगे जो उसने उसे दिए थे उसे दिखाने के लिए। जियांग लिंगक्सियन को वांग चेन द्वारा बताई गई दूसरी शर्त याद आते ही बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वांग चेन को जाते देख उसने जल्दी से हाथ हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। जियांग लिंगक्सियन ने वास्तव में एक सच्चे यंडेरे की तरह काम नहीं किया और वांग चेन की स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। चूंकि उसने वांग चेन को जाने देने का वादा किया था, इसलिए जियांग लिंग शियन अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। उसे बस अपने दिल में थोड़ा सा खालीपन महसूस हो रहा था। यदि वांग चेन सचमुच बाहर जाने पर जोर देता तो वह सचमुच बाहर जा सकता था, क्योंकि जियांग लिंग क्सियन को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वांग चेन गुस्सा हो जाए और फिर उसे नजरअंदाज कर दे। जियांग क्सियन ने अपने होंठ भींच लिए, निराशा में अपनी आंखें नीची कर ली डॉट जेपीजी। और जिस क्षण दरवाजा बंद हुआ, आंगन के कोने में जियो किंगक्सू ने धीरे से सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने वांग चेन को अंततः बाहर आते देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वह जल्दी से खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। बच्चे, क्या अब तुम आजाद हो? जियो किंगक्सू वांग चेन के करीब आया, अपने हाथों को रगड़ा और अस्पष्ट रूप से थोड़ा सा डरपोक महसूस किया, इसलिए उसने पूछा, तुम्हारा बच्चा कौन है? मुझे बड़ा भाई कहो। वांग चेन ने अप्रसन्नता से भौहें चढ़ाई, जियो किंगक्सू को घूरा और बोला। वांग चेन जानता था कि यद्यपि जियो किंगक्सू ऊपर से गंभीर और गरिमा में दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में वह अंदर से काफी संकोची और संकोची था। इसीलिए उसने संप्रदाय के नेता शियाओ किंगक्सू के साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत की, वरना पिछले जन्म में वे नशे में धुत होकर एक जैसे कपड़े नहीं पहनते। अरे, मैं तो तुम्हारा वरिष्ठ अधिकारी हूँ, एक कबीले का नेता हूँ, तुम इतना अपमानजनक कैसे हो सकते हो? तो क्या तुम चिल्लाओगे या नहीं? बड़े भाई, जानकारी के लिए, जियो किंगक्सू ने आखिरकार हार मान ली। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कमजोर स्वर में भाई पुकारा। हा हा हा, बूढ़े आदमी, तुम अभी भी मूर्ख हो। जब वांग चेन ताइक्सू पवित्र युवती महल के प्रांगण से बाहर निकला तो उसने उसे भाई कहते हुए सुना और उसके कंधे को सहारा देते हुए हंसने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे पहले से जानते हो। मैं तो एक संप्रदाय का नेता हूँ, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं ये जानकारी देने से इनकार कर दूंगा। ओह, अगर तुम चाहते हो तो मेरे पीछे आओ, अगर नहीं तो बस चले जाओ। वांग चेन की हंसी खत्म होते ही उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ये सुनकर वह मंद मंद मुस्कुराया और धीरे से ओह कहा, फिर ताइक्सू फूड पवेलियन की ओर चल दिया। हालांकि जियो किंगक्सू गुस्से में था, फिर भी उसने खुद को नियंत्रित रखा और तुरंत वांग चेन की गति का अनुसरण किया। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों ताइक्सू फूड पवेलियन में दाखिल हुए, जहां लोग दोपहर के समय आध्यात्मिक भोजन खरीदने के लिए व्यवस्थित तरीके से कतार में खड़े थे। आह आह, बांसुरी की मधुर ध्वनि के कारण व्यवस्थित ताइक्सू फूड पवेलियन में शोर कम लग रहा था, क्योंकि ताइशु के सभी शिष्य 3-4 के समूहों में बांसुरी की धुन का आनंद ले रहे थे और वे पास आकर धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। आखिरकार ये वाकई बहुत सुंदर था। ताइक्सू फूड पवेलियन में प्रवेश करने के बाद वांग चेन ने परिचित बांसुरी संगीत सुना और मदद नहीं कर सका, लेकिन हरे रंग की आकृति को घूरने लगा। और ताइक्सू फूड पवेलियन में एक ऊंचा मंच है जहां लॉन्ग रिटियन बांसुरी बजाते हैं। आंखें बंद करके बांसुरी बजा रहे लॉन्ग रिटियन को भी मानो कुछ आभास हो गया हो। सफेद बांसुरी बजाते हुए उसने हल्का सा ऊपर देखा और उनकी आंखें आपस में मिल गईं। वैकल्पिक भाग्य का पुत्र लॉन्ग रिटियन, वह भाग्य का एकमात्र पुत्र भी है जिसे वांग चेन नापसंद नहीं करता और जिसके प्रति उसका रवैया तटस्थ है। पिछले जन्म में वह न तो उसका दुश्मन था और न ही दोस्त। लॉन्ग रिटियन ने अपने पिछले जीवन में घेराबंदी में भाग नहीं लिया था और शायद ही कभी उसके साथ लड़ाई की थी, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली था। वांग चेन को तो ये भी संदेह था कि उसके पिछले जीवन के 9 सम्राटों में एक रहस्यमय सम्राट था जो अजगर की तरह था, जिसे सिर से पूंछ तक नहीं देखा जा सकता था, और वह वही था। ऐसा लगता है कि लॉन्ग रिटियन पर कभी भी अपनी बुद्धि को कमतर नहीं कहा गया। वह फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में माहिर है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वांग चेन ने एक पल के लिए लॉन्ग रिटियन की शांत आंखों में देखने के बाद उसने दूर देखा और जियो किंगक्सू के साथ बैठने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। तुम जाओ और मेरे लिए 2 वक्त का खाना ले आओ। वांग चेन अपने पिछले जन्म के ब्लू स्टार ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसने ताइक्सू फूड पवेलियन के आध्यात्मिक भोजन खंड की ओर इशारा किया और गंभीरता से जियाओ किंगक्सू से कहा। जियो किंगक्सू ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, बल्कि खड़ा हुआ और आध्यात्मिक भोजन के व्यापार स्थान की ओर चला गया और आध्यात्मिक भोजन की कई प्लेटें खरीद ली। स्नैप, खाना खरीदने के बाद जियाओ किंगक्सू दौड़कर वापस आया और बांसुरी की ध्वनि के साथ आध्यात्मिक भोजन मेज पर रख दिया। फिर वह आंखों में उत्सुकता लिए बैठ गया। मैं सुनना चाहता हूँ रे, क्या मुझे आश्चर्य है कि वह अब कहाँ है? वांग चेन ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि जियो किंगक्सू, जो काफी देर से अपनी बात रोके हुए थी, उसे बीच में ही रोक लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। बकवास, बेशक यू संप्रदाय का संत यू संप्रदाय में है। वांग चेन ने बोलना समाप्त करने के बाद मेज पर मूंगफली जैसा दिखने वाला आध्यात्मिक भोजन उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और चबाना शुरू कर दिया। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वह चंद्र संप्रदाय की पवित्र युवती है? तुम्हें ये जानकारी कहां से मिली? जियो किंगक्सू ने वांग चेन को और अधिक गंभीरता से देखा, उसकी आंखों में जानबूझकर जांच का संकेत था। हाहाहा, लेकिन जब वांग चेन ने उसका विशेष रूप से गंभीर और सीधा रूप देखा तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा महसूस होता है जैसे आपका सबसे अच्छा दोस्त बातचीत के बीच में अचानक बहुत गंभीर हो जाता है। अंततः वह अचानक बोल पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। पास आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। वांग चेन ने धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट हटा ली, अपने मुंह में थोड़ा सा आध्यात्मिक भोजन डाला और अपने सामने खड़े जियो किंगक्सू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ये देखकर जियो किंगक्सू ने अपने साधना का उपयोग करके आसपास के वातावरण को अवरुद्ध कर दिया और अपने हाथों से अपने ऊपरी शरीर को मेज पर सहारा देते हुए उसके करीब झुक गया। परसों की कहानी के अनुसार 500 साल पहले सूर्य और चंद्रमा के गुप्त क्षेत्र में वह युवक प्रकट हुआ और उसने चंद्र संप्रदाय की संत से रक्त की सबसे महत्वपूर्ण पहली बूंद ली। इसके बाद दोनों के बीच एक मौन समझौता हुआ जिसके तहत वे अपने कपड़े पहनेंगे और ऐसा दिखावा करेंगे कि वे एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन वह युवक उस रात की भावना को भूल नहीं पाया और साथ ही उसे अपराध बोध भी हुआ। एक खास संप्रदाय का नेता बनने के बाद उसने कई वर्षों तक उसकी तलाश की। कितने दुख की बात है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वह महिला बिना किसी निशान के गायब हो गई है। दरअसल उस रात के बाद वह महिला, जियो किंगक्सू अपने मूड में उतार चढ़ाव के साथ सुन रहा था जब अचानक वांग चेन की आवाज बाधित हुई जिससे बाकी कहानी अवरुद्ध हो गई। तुम छोटे रस, वांग चेन के आखिरी गंदे शब्द सुनने के बाद जियो किंगक्सू इतना घबरा गया कि उसे थोड़ा डर लगा कि वह मर गई है। वांग चेन ने जो विवरण इतनी स्पष्टता से समझाया था उससे जियो किंगक्सू को पूरा विश्वास हो गया कि वांग चेन को ये जानकारी कहीं से मिली होगी। लेकिन जियो किंगक्सू ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह खबर वास्तव में वही थी जो उसने अपने पिछले जीवन में रोते और नशे में धुत होकर वांग चेन को बताई थी। पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वांग चेन को याद आया कि यूज़ोंग भी मोहुआंग में था, इसलिए उसने बूढ़े लड़के को सेंट लेवल 4 लीफ फ्लेम ग्रास के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मोहुआंग में खींच लिया। व्याख्या करना, जियो किंगक्सू अधीरता से भर गई। शुक्र है कि उन दोनों के आसपास का वातावरण सुरक्षित था, वरना शायद बहुत से लोग उन्हें देख रहे होते। क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो? मैं तुम्हें खुद उसे ढूंढने ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वांग चेन के बोलने के बाद उसने देखा कि जियो किंगक्सू अपने पिछले जीवन की तरह ही स्थिति में था, यानी वह थोड़ा टालमटोल कर रहा था लेकिन वास्तव में जाना चाहता था। छोड़ो भी, असल में वह ठीक है। वह बस एकांतवास में चली गई है और अभी तक बाहर नहीं आई है। लेकिन किसी कारण से युज़ोंग ने संत के रूप में अपना पद समाप्त कर दिया। जहां तक ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता है। अंत में वांग चेन ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए, लेकिन थोड़ी देर तक जियो किंगक्सू को देखने के बाद उसने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। क्योंकि अपने पिछले जीवन में जियो किंगक्सू ने उस महिला को इस दुनिया में आने के 200 साल से भी अधिक समय बाद पाया था। यू संप्रदाय की पवित्र महिला की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वांग चेन को नहीं पता था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन तार्किक रूप से युज़ोंग की पवित्र युवती और जियाओ किंगक्सू एक ही पीढ़ी के शक्तिशाली लोग थे। कम से कम वे आत्मा सम्राट स्तर के तो थे ही। वे कैसे मर सकते थे? इसमें कुछ गुप्त रहस्य अवश्य होंगे, लेकिन यह इस जीवन में 200 वर्ष पहले की बात है, इसलिए शायद इसे बचाया जा सके। आखिरकार जियो किंगक्सू एक अच्छा भाई था जिसने पहले भी उससे भीख मांगी थी या उसके साथ कठिनाइयां साझा की थी जब उसे अन्य लोगों की पैतृक कब्र खोदने के लिए पीछा किया गया था। जाओ, तुम्हें जाना ही होगा, ये तुम्हारा इनाम है। मुझे ताइक्सू और हुआलोंग संप्रदायों के बीच युद्ध की तैयारी और व्यवस्था करने दीजिए। जियो किंगक्सू एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार मान गया। फिर उसने एक छोटा सा स्टोरेज बैग निकाला और मेज पर रख दिया। वांग चेन ने कुछ नहीं कहा। उसने स्टोरेज बैग उठाया और उसे सीधे सिस्टम के अनंत स्टोरेज स्पेस में फेंक दिया। सिस्टम के भंडारण स्थान का उपयोग वास्तव में गुड़ियों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये पहले से ही असीम रूप से बड़ा है, तो गुड़ियों को संग्रहित करने का क्या मतलब है? आइटम 100 शीर्ष ग्रेड आत्मा पत्थर। वांग चेन ने त्वरित दृष्टि डाली और सोचा, वाह, भले ही इनकी संख्या केवल 100 है, लेकिन वास्तव में ये 1,000,000 मूल बिंदु हैं। वह अपनी सेवाओं के लिए पैसे देने को तैयार था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जियो किंगक्सू की मदद करने के लिए दृढ़ था। यहां तक कि चंद्र संप्रदाय का गुरु भी उसे रोक नहीं सका। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा, वरना मेरा छोटा सा रोने वाला बच्चा फिर से रो सकता है। वांग चेन खड़ा हुआ और मेज पर रखे एक मुट्ठी भर आध्यात्मिक भोजन को उठाया, फिर उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और इस तरह खाया कि बात खत्म हो गई। क्या आपके छोटे से रोने वाले बच्चे को इतना रोना पसंद है? जब वह कुछ देर तक दिखाई नहीं देता तो रोने लगता है। जियो किंगक्सू ने उस छोटे हुआंगक्सुआन डिंग के बारे में सोचा जो वांग चेन ने उसे दिखाया था, भौहें चढ़ाकर कुछ उलझन के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने कल रात से लेकर आज तक उसे मनाने में बहुत समय लगाया, वरना वह मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती। वांग चेन कुछ आध्यात्मिक भोजन खा रहा था, उसने जियो किंगक्सू की उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखा और दबी हुई आवाज में जवाब दिया। ये सही नहीं है, क्या तुम्हें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए? गुडू, मैं बाहर जाते समय उसे अंदर ही छोड़ आया और बाहर नहीं लाया। अगर तुम ठीक हो तो मैं अभी चलता हूँ। ये सुनकर वांग चेन ने आध्यात्मिक भोजन को गटक लिया, फिर अपने पीछे की कुर्सी को लात मारी, अपना हाथ लहराया और ताइक्सू फूड पवेलियन से बाहर भाग गया। जियो किंगक्सू ने वांग चेन को जल्दी से जाते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं, वह थोड़ा उलझन में था लेकिन उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 500 साल पहले वह वास्तव में चंद्र संप्रदाय की पवित्र युवती होगी। जैसे ही जियो किंगक्सू ने खड़े होकर यह सोचा, दृश्य पलट गया। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक! वांग चेन ने जमीन पर पैर पटक कर अचानक ब्रेक लगा दिए। उसके काले चप्पलों ने आड़ू के फूलों के जंगल में एक लंबी कीचड़ भरी खाई बना दी। तुम लालची लड़की हो, तुम ये सब खा रही हो? वांग चेन ने अपने सामने खड़े छोटे लड़के की ओर देखा जो उसकी छाती जितना ही लंबा था और जब उसने ध्यान नहीं दिया तो वह लगभग उससे दूर जा गिरा। अब्बा, अबाबा, अबाबा, क्या हो रहा है? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। लॉन्ग शियाताओ, जो गुलाबी बालों और लोलिता फिगर के साथ पैदा हुई थी और गुलाबी आड़ू के फूल की पोशाक पहनती थी, उसने आड़ू के फूल को अपने मुंह में भर लिया और एक आवाज के साथ जवाब दिया। वांग चेन ने उसे देखा, अपनी हथेली उठाई और उसे अपनी छाती पर रख दिया, उसे उसके सिर के बराबर दो बार हिलाया और फिर हा 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 हा। वांग चेन कुछ देर तक बिना कुछ कहे हंसता रहा, फिर मुड़कर चला गया और लॉन्ग शियाताओ को वहीं स्तब्ध खड़ा छोड़ गया। लॉन्ग शियाताओ, जो उम्र में वयस्क है लेकिन कद में एक लोली है और जिसकी प्रतिक्रिया समय धीमा है, अपने मुंह में आलू का फूल लिए कुछ देर के लिए वहीं स्तब्ध खड़ी रही। तुम आत्मा कमीने, मुझे अपने भाई को बताना होगा। लॉन्ग शियाताओ ने अपने होठों को भींच लिया, वांग चेन की पीठ की ओर देखा जो उसकी ऊंचाई का मजाक उड़ाकर चला गया था। उसने अपने पैर पटके और आंखों में आंसू भरकर दो बार गालियां दी। जब लॉन्ग शियाताओ गुस्से में मुड़कर जाने ही वाला था तभी दूर से हवा में वांग चेन की आवाज अचानक आई। आउच, ये 5 फुट लंबा बच्चा अपने माता पिता को बताने जा रहा है। तुम, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं वयस्क हूँ, बुबू। लॉन्ग शियाताओ इतनी क्रोधित हुई कि उसके आंसू अचानक बह निकले और उसकी छोटी सी आकृति आड़ू के फूलों के जंगल में भाग गई। जहां भी लॉन्ग शियाताओ के आंसू गिरेंगे वहां जमीन पर सुंदर आड़ू के फूल खिलेंगे। हर कदम एक आंसू और एक आड़ू का फूल लाता है। दूसरी ओर वांग चेन ने अब उस छोटे गुलाबी बालों वाले बेवकूफ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय वांग चेन के दाहिने हाथ में एक बड़ा फावड़ा था जो उसे एक खिले हुए आड़ू के पेड़ के नीचे की ओर इंगित कर रहा था। ओह, आठ उजाड़ महाद्वीप में सम्राट उजाड़ का एक निश्चित क्षेत्र। झनकार, जियांग लिंगजियन ने अपना पतला दाहिना हाथ बढ़ाया और उड़ती हुई ठंडी तलवार को जोर से पकड़ लिया। ठंडी तलवार हिल रही थी और एक भयानक झनझनाहट की आवाज कर रही थी। जियांग लिंगक्सियन ठंडी आंखों से मैदान पर चुपचाप जमीन को घूर रहा था। हुआलोंग जियानजों के साथ साधकों को देख रहा था जो सैकड़ों मीटर आकार के ड्रैगन शरीर से धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित हो रहे थे। ड्रैगन परिवर्तन संप्रदाय के साथ साधक जो पुनः मानव रूप में परिवर्तित हो गए थे, उनकी गर्दन पर तलवार का एक पतला निशान था और वह निशान बर्फ से भरा हुआ था। समतल घास के मैदान पर अंधेरे में भिक्षु देख रहे थे। ये दृश्य देखकर उनकी आंखें भय से भर आईं और उन्होंने एक ही तलवार से 7 विशालकाय अजगरों को मार गिराया। जियांग लिंगक्सियन ने ठंडी तलवार से टपक रहे खून को झाड़ दिया और फिर उसे दोबारा हिलाया और उससे चिपका हुआ खून तुरंत साफ हो गया। अफसोस की बात है कि यह असली ड्रैगन नहीं है, वरना अगर मैं इसे वापस ले आता तो मेरा शिष्य निश्चित रूप से बहुत खुश होता। जियांग लिंगक्सियन आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी। उसकी बर्फ सी सफेद स्कर्ट आध्यात्मिक शक्ति से ढकी हुई थी। उसने घास के मैदान में पड़ी 7 लाशों को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखों में दया थी। असली ड्रैगन का अंडा जल्द ही जन्म लेगा। इतने लंबे समय तक अपनी साधना को छुपाने के बाद अब उसे उजागर करने का समय आ गया है। वाह, जियांग लिंगजियन के सोचने के बाद उसके सामने शून्य में एक दरार खुल गई और उसकी आकृति हाथ में तलवार लिए हवा में धीरे धीरे उसमें चली गई। इस मामले के खत्म होने के बाद 8 उजाड़ महाद्वीपों की दुनिया में आधा घंटा बीत गया। ताइक्सू सेंट मेडेन हॉल के अंदर जियांग लिंगजियन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वर्गीय पूजा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हमला कर रही थी। उसके चारों ओर अंतहीन ठंडी हवा फैली हुई थी। अफसोस, यह अभी भी लगभग वही है। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी ठंडी और सुंदर आंखें खोली, उस बाधा को महसूस किया जो पार होने वाली थी लेकिन पार करना मुश्किल था, और अंदर ही अंदर आह भरी। दस्तक, दस्तक, दस्तक! दरवाजे पर दस्तक हुई जिससे जियांग लिंगक्सियन को होश आया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को जगाया और कुछ महसूस किया। शिष्य वापस आ गया है। जियांग लिंगशियन की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अपने पैर फैलाए, जूते पहने और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। आखिरकार उसने अपने हाथ बढ़ाकर धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने इसे देखा, जियांग लिंगशियान की पुतलियां हल्के गुलाबी रंग में बदल गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। उसने देखा कि उसके सामने एक पूरा आड़ू का पेड़, जो पूरी तरह से खिला हुआ था, लगभग 2.5 मीटर ऊंचा, बहुत सुंदर लग रहा था। अरे अरे, वांग चेन का सुंदर चेहरा अचानक पीछे से उभर आया और उसके चेहरे पर आश्चर्य और मुस्कान का एक अकथनीय भाव था। क्या यह अच्छा दिख रहा है? वांग चेन ने अपना सिर आगे झुकाया और मुस्कुराते हुए जियांग लिंगक्सियन को देखा, फिर आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। जियांग लिंगक्सियन होश में आए। उसकी आंखों में छुपे आश्चर्य और थोड़ी खुशी थी, लेकिन जब किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे अभी भी थोड़ा अस्वाभाविक महसूस हुआ। संघर्ष मत करो, हम गुरु और शिष्य हैं। हालांकि मैंने इस जीवन में तुम्हें सचमुच अपना गुरु नहीं माना है, फिर भी हाथ पकड़ना सामान्य बात है ना? वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की चिकनी सफेद और थोड़ी ठंडी हथेली को महसूस किया, जिसे पकड़ना बहुत आरामदायक था। जियांग लिंगक्सियन ने अपने निचले होंठ को थोड़ा सा दबाया और अभी भी अपना हाथ वापस खींचना चाहती थी, लेकिन वांग चेन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे यार्ड में ले गया। वांग चेन ने अपना खाली हाथ उठाया और उसे लहराया, और दरवाजे पर खड़ा 2.5 मीटर ऊंचा आड़ू का पेड़ धीरे धीरे उड़कर ऊपर आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। ये देखकर कि जियांग लिंगक्सियन थोड़ा प्रतिरोधी थी, वांग चेन उसकी हथेली छोड़ने वाला था। लेकिन जब वह उसे छोड़ने वाली थी, तो जियांग लिंगशियान को अनिच्छा महसूस हुई और उसने अपनी फिसलती उंगलियों को पकड़ना चाहा। जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहती, लेकिन जब मैं अपना हाथ नहीं पकड़ता तो तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती, तुम छोटी सी तसुंडेरे। वांग चेन मुस्कुराया और अपनी तर्जनी उंगली उठाई, धीरे से उसके सुंदर, निष्पक्ष और लचीले चेहरे को छुआ, जिससे ये थोड़ा अवतल हो गया। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन को एक पल के लिए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी नजर अनजाने में लक्ष्य से हट गई और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कश कश, तभी जियांग लिंगक्सियन को अचानक खुदाई की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ी उलझन में अपना सुंदर चेहरा उठाया और अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। ठीक है जियांग्सियन, यहाँ आओ, चलो इस आड़ू के पेड़ को एक साथ लगाते हैं। कुछ ही सेकंड में वांग चेन ने ताइक्सू पवित्र मेडेन पैलेस के आंगन में खुली जगह में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। फिर वांग चेन ने ताली बजाई, जियांग लिंगक्सियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसे धीरे से अपनी ओर खींच लिया। दोनों गुलाबी आड़ू के पेड़ के सामने खड़े हो गए, जो मिट्टी छोड़ने के बाद भी जीवंतता से भरा हुआ था और खिल रहा था, और एक दूसरे को देखने लगे। वांग चेन ने अगुवाई की और आड़ू के पेड़ को हवा में लटकाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट छोड़ा। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन ने भी धीरे धीरे एक हल्की सी ठंडक छोड़ी। एक आगे और एक पीछे की आभा ऐसी है जैसे कोई पति कुछ कर रहा हो और उसकी पत्नी पीछे से चुपचाप उसका साथ दे रही हो। अराजक नौ यांग आध्यात्मिक ऊर्जा और नौ यिन ठंडी हवा आपस में गुंथी हुई हैं। दोनों आध्यात्मिक शक्तियां, जो पूर्ण सामंजस्य में थीं और जिनमें कोई प्रतिकर्षण नहीं था, आड़ू के पेड़ से चिपकी रहीं। फिर उसने धीरे से लटके हुए आड़ू के पेड़ को हटाया और उसकी जड़ों को बड़े गड्ढे में डाल दिया। सुजू सुजू, नौयांग आध्यात्मिक ऊर्जा और नौ यिन ठंडी ऊर्जा आपस में गुंथी जा सकती हैं, एक दूसरे की मदद कर सकती हैं और हमेशा के लिए टिक सकती हैं। सुजू, तुम और जियांग लिंगक्सियन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह आड़ू के पेड़ में छोड़ सकते हो। इस तरह आड़ू का पेड़ अकेला छोड़ देने पर भी मुरझाएगा नहीं। इस समय सिस्टम भी मस्ती में शामिल होने के लिए बाहर आ गया। वांग चेन थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसे समझ आ गया। फिर वांग चेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस मिट्टी को नियंत्रित किया जो अभी अभी जमीन से खोदी गई थी और उसे वापस दफना दिया। तब से चेन और जियांग द्वारा लगाए गए आड़ू के पेड़ पूरे हो गए। ये देखकर कि जियांग लिंगक्सियन अभी भी उस आड़ू के पेड़ को देख रही थी जिसे उन्होंने लगाया था, वांग चेन चुपचाप उसके पीछे आ गया। फिर खिलते आड़ू के पेड़ के सामने वांग चेन ने धीरे से जियांग लिंगक्सियन के पीछे से अपने हाथ बढ़ाए, उन्हें उसकी कमर के पार ले गए और धीरे से उसे गले लगा लिया। जियांग लिंगक्सियन आड़ू के पेड़ से उतरकर होश में आई, पीछे से वांग चेन का शरीर उससे चिपका हुआ था। आलिंगन में उसका नाजुक शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन इस बार जियांग लिंगक्सियन ने अप्रत्याशित रूप से कोई विरोध या संघर्ष नहीं किया। उसने बस शर्म से अपना सुंदर चेहरा नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। ये देखकर वांग चेन ने धीरे से अपना नर्म और थोड़ा ठंडा दाहिना हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, धीरे से अपनी हथेली को आड़ू के पेड़ के तने पर दबाया। वांग चेन का हाथ जियांग लिंगक्सियन के हाथ से थोड़ा बड़ा था और उसकी गर्म हथेली ने धीरे से उसके मुलायम सफेद हाथ के पिछले हिस्से को ढक लिया। कोमल आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करो, वांग चेन ने पीछे से जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत छवि के सामने अपना चेहरा रखा और उसके कान में धीरे से बोला। जियांग लिंगशियान ने चुपचाप वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और वांग चेन ने भी वैसा ही किया, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा निकली जो उसकी हथेली से होकर आड़ू के पेड़ की ओर चली गई। इस अवधि के दौरान किसी कारण से वांग चेन को हमेशा महसूस होता था कि जियांग लिंगक्सियन की सांसें थोड़ी तेज और गर्म हो गई थीं और उसका नाजुक शरीर कुछ सहन कर रहा था। लेकिन जियांग लिंगक्सियन में बहुत मजबूत आत्मनियंत्रण था और उसने इसे ज्यादा नहीं दिखाया, इसलिए वांग चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति आड़ू के पेड़ के शरीर में संचारित हुई, पेड़ पर खिले आड़ू के फूल एक एक करके गिरने लगे। हवा में आड़ू के फूल उनके सिर पर गिरते रहे और वांग चेन और जियांग लिंगशियान के चारों ओर उड़ते रहे। सफेद कपड़े और सफेद स्कर्ट पहने दो लोगों की आकृतियां फूलों की बारिश में धीरे धीरे तैर रही हैं। ये दृश्य इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है मानो वे इस दुनिया में है ही नहीं। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के शरीर को पकड़ लिया, जो कि अस्पष्ट रूप से थोड़ा कमजोर था, और धीरे से उसे अपने सामने कर दिया। जियांग लिंगजियन के गाल थोड़े लाल थे और उसका सुंदर चेहरा लाल था, मानो उसने थोड़ा नशा कर लिया हो। वह बेहद आकर्षक थी और वांग चेन उसके रूप को देखकर दंग रह गया। अगर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? तो फिर इसे चूमो, वो जियांग लिंगक्सियन ने उसके होंठों का स्पर्श महसूस किया और धीरे से फुसफुसाई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी कांप रही थी जब उसने वांग चेन को देखा, और उस क्षण जब उनके होंठ धीरे धीरे चूम रहे थे, दोनों व्यक्तियों के सामने आड़ू के पेड़ पर मुरझाया हुआ प्रत्येक आड़ू का फूल उनके शरीर में अनंत यिन और यांग आध्यात्मिक शक्ति के साथ पुनः उगता और अंकुरित होता रहा। अंततः खिल गया। वांग चेन आड़ू की पंखुड़ियों से ढकी जमीन पर खड़ा था, उसकी बाहें धीरे से जियांग लिंगक्सियन की पतली और मुलायम कमर के चारों ओर थी। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी बाहें वांग चेन की गर्दन के चारों ओर डाल दी, उसकी खूबसूरत आंखों की पलकें थोड़ी कांपने लगी और उसके होंठ उसके होंठों से कसकर चिपक गए। जब वे एक दूसरे को चूमकर अलग हुए तो आड़ू के पेड़ की पंखुड़ियां पूरी तरह खिली हुई थीं, शानदार और सुंदर, हवा में झूम रही थीं। इस बार वांग चेन का चुंबन बहुत हल्का था, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बाहों में जियांग लिंगक्सियन का नाजुक शरीर अभी भी थोड़ा नर्म था। शिष्य, कृपया अब चूयाओ को मत ढूंढना, ठीक है? जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन से अपने होंठ अलग करने के बाद गर्म सांस ली और अपने गाल को धीरे से वांग चेन के कान के पास गर्दन में दबा दिया और दबी हुई आवाज में बोली, जियांग शियान, उसके और मेरे बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम बस सड़क पर मिले थे और मैंने कभी उसे ढूंढने की पहल नहीं की। अगली बार जब हम उससे मिलेंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा ताकि उससे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकूं, ठीक है? जियांग लिंगक्सियन की बातें सुनकर वांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने कुछ लाचारी के साथ धीरे और विनम्रता से समझाया। लेकिन जियांग लिंगक्सियन ने अपना थोड़ा गर्म चेहरा उसके बाएं कान के नीचे उसकी गर्दन में दबा दिया और कुछ नहीं कहा। ठीक है, अगर तुम सच में अच्छा। इससे पहले कि वांग चेन अपनी बात पूरी कर पाता, जियांग लिंगक्सियन की दबी और ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाए और उसके पिछले शब्दों का जवाब दिया। मैं तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा सीमित रखने की जरूरत नहीं है। असल में अगर तुम उसे रास्ते में मिल जाओ तो कोई बात नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब तक कोई महत्वपूर्ण काम न हो आप उससे मिलने जाने की पहल न करें, ठीक है? जियांग लिंगक्सियन को यह एहसास हुआ कि उसके कार्यों से वांग चेन को बहुत घुटन महसूस हो सकती है, इसलिए उसने धीरे से अपना ठंडा और सुंदर चेहरा उठाया और सीधे उसकी ओर देखा और बोली। जियांग लिंगशियन ने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग चेन को उसकी बाहों में देखा। उसकी गहरी आंखों में हल्की सी हलचल थी जिसमें याचना का भाव था। जियांग लिंगशियन नहीं चाहती थी कि वांग चेन उसके साथ रहते हुए घुटन और बंधन महसूस करे। उसे यह स्थिति पसंद नहीं थी। भले ही जियांग लिंगक्सियन ने गलती से सोचा था कि वांग चेन पिछली बार चुयाओ को ढूंढने जा रहा था, जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को केवल कुछ दिनों के लिए बंद रखा क्योंकि वह भावनात्मक रूप से अस्थिर और नियंत्रण से बाहर थी और वह चाहती थी कि वांग चेन उसके साथ अधिक समय बिताए। वांग चेन को तब तक बंद रखने के बाद जब तक वह वास्तव में बाहर जाना नहीं चाहता था, उसने उसे जाने दिया भले ही वह थोड़ा अनिच्छुक थी। जब वांग चेन ने इस समय जियांग लिंगक्सियन के शब्द सुने तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह बस यही सोच रहा था कि अगर अगली बार गलती से चूयाओ से उसकी मुलाकात हो गई और जियांग लिंगक्सियन ने उसे देख लिया तो क्या होगा। उस स्थिति में क्या ये संभव है कि इस बार उसे सीधे जियांग लिंगक्सियन द्वारा बंद कर दिया जाएगा और बांध दिया जाएगा, जो इस जीवन में थोड़ा सा अंधेरे है। लेकिन जियांग लिंगशियान के प्रदर्शन ने ये स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसी नहीं होंगी, है ना? ये भी कहा जा सकता है कि जियांग लिंगक्सियन विशेष रूप से विचारशील है और वह अपनी सुरक्षा की भावना के लिए लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक आवश्यक न हो मैं उसकी तलाश करने की पहल नहीं करूंगा और वह मुझे निश्चित रूप से पसंद नहीं आएगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे प्यार करूंगा, क्या ये ठीक है? वांग चेन ने सीधे जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखों में देखा और जब उसने दूसरा वाक्य कहा तो वह धीरे धीरे उसके कान के करीब गया और धीरे से फुसफुसाया। वांग चेन के तीन हमेशा और एक वाक्य, वह केवल उससे प्यार करेगा, ने जियांग लिंगक्सियन के दिल को थोड़ा काम दिया। जियांग लिंगक्सियन, जिसने पहले कभी प्रेम शब्दों के बारे में नहीं सुना था, एक पल के लिए थोड़ा असहाय महसूस किया और शर्माते हुए अपना सुंदर चेहरा वांग चेन की बाहों में झुका लिया। वांग चेन ने शर्मीले जियांग लिंगक्सियन को अपनी बाहों में देखा, उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जबकि वह चुपके से अपने दिल में चुयाओ के बारे में सोच रहा था। बेशक यह उस तरह का विचार नहीं था, बल्कि वह सोच रहा था कि उसे पकड़ने और जियांग लिंगजियांग के सामने उससे सवाल जवाब करवाने का समय कैसे निकाला जाए। चूंकि जियांग लिंगक्सियन ने सुरक्षा की इस भावना को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, तो वह उसे ये दे देगा। ताइक्सू अमर संप्रदाय, वह घर जहां आंतरिक शिष्य रहते हैं। हाँ, चुयाओ अपने चचेरे भाई के साथ उसके सामने बातचीत कर रही थी जब उसे अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के छींक आ गई। बहन, तुम्हें क्या हुआ है? चूहान ने चुयाओ की ओर देखा जो अपना निचला चेहरा ढकते हुए छींक रही थी और चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब लग रहा है। चुयाओ ने अपना पतला हाथ नीचे कर लिया जो धीरे से उसके चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढक रहा था, वहीं सिकोड़ ली और उसके दिल में एक अकथनीय घबराहट महसूस हुई। तार्किक रूप से कहें तो साधकों को आसानी से छींकना नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब केवल यही है कि निकट भविष्य में कुछ घटित हो सकता है या परेशानियां आ सकती है। ऐसा लगता है कि मुझे आजकल हर चीज के प्रति अधिक सावधान रहना होगा। चुयाओ का आकर्षक और मोहक चेहरा उदास था और साथ ही उसने चुपके से खुद से कहा कि उसे हाल ही में सावधान रहना होगा। बहन, बहन, चूहान ने चकित चुयाओ को थोड़े चंचल चेहरे से देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दी और दो बार चिल्लाया। आह, ओह, बहन, ये वही अमृत है जो तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। अच्छा अभ्यास करो। चुयाओ ने चूहान की पुकार सुनी तो वह चौंक गई और होश में आई। उसने जल्दी से कुछ साधना सामग्री निकाली। बहन आपको धन्यवाद, ये देखकर चूहान ने उसे धन्यवाद दिया और मेज पर एक एक करके खेती के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए हाथ बढ़ाया। तो फिर बहन पहले चली जाएगी। चुयाओ ने अपना हाथ उठाया और चूहान के छोटे से सिर पर धीरे से थपथपाया। उसका आकर्षक चेहरा और होंठ थोड़े से मुड़ गए, फिर वह उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल पड़ी। जब तक उसके पास ये संसाधन है, भाई येकिंग निश्चित रूप से वापस आने के बाद अपनी साधना में और अधिक तेजी से सुधार कर पाएंगे। फिर उस बुरे खलनायक को हराओ जिसका उसने जिक्र किया था। हे। चूहान ने चुयाओ की पीठ की ओर देखा जब वह दरवाजा खोलकर चली गई, फिर उसने अपने हाथ में खेती के संसाधनों को देखा और बहुत खुश हुआ। लेकिन चूहान को यह नहीं पता था कि उसका प्रिय भाई ये किंग ही अपराधी बनेगा जो भविष्य में उसके पूरे चू परिवार को लगभग मार डालेगा। ताइक्सू आंतरिक शिष्यों के निवास को छोड़ने के बाद चुयाओ रास्ते में ताइक्सू फूड मंडप से गुजरा और अचानक अंदर से आ रही खुशबू से आकर्षित हो गया। चुयाओ को अकारण लालच महसूस हुआ और वह खुद को रोक नहीं सकी, इसलिए वह अनजाने में ही अंदर चली गई। वाह भाई, किसी ने फिर मेरी लंबाई पर हंसते हुए मुझे बच्चा कहा। मैं बच्चा नहीं हूँ, वो। चुयाओ ने अभी ताइक्सू फूड पवेलियन में कदम रखा ही था कि उसे धीरे धीरे कुछ दूर से आती हुई एक धीमी और धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज ने कई लोगों की आंखें खींच ली और यहाँ तक कि चुयाओ भी उलझन में देखने से खुद को नहीं रोक सका। वाह, कितना प्यारा गैजेट है। चुयाओ को तुरंत लॉन्ग शियाताओ से प्यार हो गया जो नीले कपड़ों में एक आदमी के बगल में खड़ी थी। उसने पीच गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और एक छोटे आलू जैसी दिख रही थी। वह उसकी प्यारी अदाओं पर तुरंत मोहित हो गई। इस समय लॉन्ग रिटियन अपने दाहिने हाथ में एक सफेद बांसुरी पकड़े हुए था और असहाय होकर लॉन्ग शियाताओ को देख रहा था। लॉन्ग रिटियन केवल थोड़ा सा नीचे बैठ सकता था और अपने बाएं हाथ को उठाकर लॉन्ग शियाताओ के गोरे छोटे चेहरे से आंसू पोंछ सकता था ताकि उसकी भावनाओं को शांत किया जा सके। जियोताओ, हालांकि तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो, लेकिन तुम पर कौन हंसा? अपने भाई को उसे ढूंढने के लिए ले जाओ और तुम्हारा भाई तुम्हें बदला लेने में मदद करेगा, ठीक है? लॉन्ग रिटियन नीचे बैठ गया, अपने बाएं हाथ से लॉन्ग शियाताओ का चेहरा पकड़े हुए, अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए और धीरे से बोला। लॉन्ग शियाताओ को उनके और शाही परिवार द्वारा बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, तो बात सिर्फ उसकी लंबाई की नहीं है। हालांकि वह एक वयस्क है, उसका दिमाग भी थोड़ा अपरिपक्व है और लॉन्ग रिटियन इस बारे में लाचार है। वाह वाह, अगर लॉन्ग रिटियन ने ऐसा न कहा होता तो बच्चा ठीक रहता। उसके इतना कहते ही लॉन्ग शियाताओ वहीं खड़ा होकर और भी जोर से रोने लगा। ताइक्सू फूड पवेलियन में खाने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लॉन्ग रिटियन को उसकी बहन को मनाने से रोके। ज्यादातर ने अपने कान बंद कर लिए। आखिरकार लॉन्ग रिटियन एक अमर साधना राजवंश के शाही परिवार का सदस्य है। वह भी अभी ताइक्सू अमर संप्रदाय में शामिल हुआ है और राजकुमार के रूप में उसका दर्जा अभी भी बना हुआ है। चू याओ, जो शो देख रहा था, ने सहजता से कुछ आध्यात्मिक भोजन खरीदा जो स्वादिष्ट लग रहा था। फिर कुछ शिष्यों की निगाहों को अनदेखा करते हुए वह एक कोने में बैठ गई और उस युवक को आध्यात्मिक भोजन करते हुए अपनी बहन को मनाते हुए देखने लगी। स्क्रीन पलट जाती है। उसी समय ताइक्सु पवित्र युवती पैलेस में। जियान जियान, क्या तुम खाना चाहोगे? वांग चेन बिस्तर के बाईं ओर बैठा था और अभ्यास के बाद उसने अपनी आंखें खोली। जियान लिंगशियन उसके बगल में पालथी मारकर बैठी थी। ये सुनकर उसने भी अपनी सुंदर आंखें खोली। मैं, जियान लिंगशियन ने अपनी स्वाभाविक ठंडी और खूबसूरत आंखों से वांग चेन की ओर देखा। मैं, कहने के बाद उसने स्तब्ध होकर अपने सुंदर चेहरे को दो बार हिलाया। वांग चेन ने ऐसा न कहा होता तो ठीक था। जैसे ही उसने ये कहा, जियांग लिंगशियन को उसके बनाए खाने की याद आ गई। तो चलो ताइक्सु फूड पवेलियन में कुछ सामग्री खरीदने चलते हैं। मेरे पति ने अभी अभी कुछ आध्यात्मिक नूडल्स पकाने के लिए खरीदे हैं और वे खुद आपको परोसेंगे। वांग चेन बोलते समय थोड़ा नीचे झुका और धीरे धीरे अपने हाथों को बढ़ाकर जियांग लिंगशियन की कोमल कमर को गले लगाना चाहता था। पति, आपका क्या मतलब है? लेकिन जियांग लिंगशियन ने भौहें चढ़ाई, धीरे से वांग चेन के फैले हुए हाथों को कुछ संदेह के साथ पकड़ लिया और पूछा। क्योंकि वांग चेन ने अपने पिछले जीवन या इस जीवन में कभी भी उसके सामने इस शब्द का उल्लेख नहीं किया था, जियांग लिंगक्सियन वास्तव में नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। यह एक और नाम है जिससे केवल आप ही मुझे पुकार सकते हैं। यह आपका और केवल आपका है। कैसा रहेगा, है ना? ये देखकर कि जियांग लिंगक्सियन उसकी बात सुनने के बाद विचारशील लग रही थी, वांग चेन बेईमानी से उसके हाथों से मुक्त हो गया और उसकी नर्म कमर को गले लगा लिया। तो क्या मेरा भी कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो आपके लिए अनोखा हो? जियांग लिंगक्सियन ने अपने नाजुक शरीर को आलिंगन में थोड़ा अस्वाभाविक रूप से हिलाया और फिर से उलझन में पूछा। हाँ, मेरी पत्नी जियानिक्सियन। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को गले लगाया और धीरे धीरे अपना पूरा शरीर उससे सटा दिया। वह उसके कान के पास रुका और चिपचिपी आवाज में धीरे से फुसफुसाया। जियांग लिंगक्सियन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इस शब्द को नहीं समझ पाई थी। लेकिन किसी कारण से वांग चेन के चिपचिपे स्वर के कारण वह थोड़ा शर्मा गई और अपने होठों को थोड़ा अस्वाभाविक रूप से भींच लिया। लेकिन अगर संभव हो तो मैं तुम्हें पत्नी कहूंगा। जैसे ही वांग चेन ने ये शब्द उसके कान में फुसफुसाए, उसकी चिपचिपी गर्म सांस उसके हल्के लाल कानों पर पड़ी। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने महसूस किया कि उसका दिमाग अचानक थोड़ा भ्रमित हो गया और वह धीरे धीरे अपने निचले होंठ को हल्के से दबाने से अनजाने में उसे काटने लगी। अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए जियांग लिंगशियान को उस पत्नी की याद आई जिसका उल्लेख चुयाओ ने किया था, हालांकि वांग चेन ने समझाया था कि ऐसा नहीं था। लेकिन जियांग लिंगक्सियन अभी भी अनजाने में अपने दिल में इस मामले के बारे में सोच रही थी। उसी समय जियांग लिंगक्सियन को बेवजह डर था कि चुयाओ द्वारा उल्लिखित वांग चेन की तथाकथित पत्नी वास्तविक हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा शिष्य केवल मेरा ही हो सकता है। मेरा, मैं नहीं चाहती कि वे बुरी औरतें उसे छुएं। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने ये सोचा, वह वांग चेन की बाहों में आ गई और अप्रत्याशित रूप से उसने उसे पत्नी कहने से इनकार नहीं किया। इस बार जियांग लिंगक्सियन ने शर्माते हुए अपना सुंदर चेहरा थोड़ा सा झुकाया, लेकिन उसने थोड़ा संघर्ष किया और वांग चेन की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह इस प्रतीकात्मक संघर्ष में शामिल हो गई। अरे, वांग चेन ने सचमुच जाने दिया और तुरंत जियांग लिंगक्सियन को अपने दिल में अनिच्छा और खालीपन की तीव्र भावना महसूस हुई। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। चलो कुछ सामग्री खरीदते हैं और मैं पहले अपनी पत्नी जियान जियान के लिए खाना बनाता हूं, ठीक है? वांग चेन को जियांग लिंगशियन के मन की बात समझ आ गई थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी गोरी नाक को हल्के से सहलाते हुए इशारा किया। जियांग लिंगशियन ने ठंडी और कमजोर आवाज में हम कहा। थोड़ी उदास और दुखी लग रही थी, वह बिस्तर पर बैठ गई और वांग चेन की तरफ देखने लगी। आओ, अपने पैर नीचे रखो और मैं तुम्हारे लिए जूते पहनता हूं। वांग चेन उस गर्म बिस्तर से उछल पड़ा जिस पर वे काफी देर से बैठे थे। वह बिस्तर के पास उकड़ू बैठ गया और जियांग लिंगक्सियन की तरफ देखा, जो उसकी बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। ताइक्सु फूड पवेलियन, लॉन्ग शियाताओ, जिसे लॉन्ग रितियन ने फुसलाया था, उसके बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया जो केवल जांग से घुटने तक ऊंची थी। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक पैनकेक था जो उसके चेहरे से भी बड़ा था। वह एक कुर्सी पर बैठी, अपने पैर हिला रही थी और लाल आंखों से खा रही थी। इस समय चुयाओ खाना खा चुकी थी। उसने एक पतले सफेद कपड़े से अपना मुंह पोंछा, उठकर दरवाजे की ओर चल दी। लेकिन अचानक चुयाओ की आंखें चमक उठी और वह चौंक गई जब उसने दूर से वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन को दरवाजे की ओर चलते देखा। हे भगवान, ये फिर से वही हैं। इस बार चुयाओ ने नमस्ते कहने के लिए दौड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि जल्दी से आने जाने वाले शिष्यों के बीच बैठ गया। फिर कुछ शिष्यों की भ्रमित निगाहों के नीचे चूयाओ उकड़ू बैठ गया और एक चोर की तरह सावधानी से चलने लगा। जहां तक वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन का सवाल है, जो दरवाजे से अंदर आए वे कुछ देर तक दिखाई नहीं दिए क्योंकि ताइक्सू फूड पवेलियन में बहुत अधिक लोग थे। जब तक वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ताइक्सू फूड पवेलियन में चले गए, तब तक चूयाओ पहले ही चोर की तरह दरवाजे तक पहुंच चुका था। वांग चेन ने अपने आसपास मौजूद शिष्यों की ओर देखा जो हमेशा उसके पीछे देख रहे थे। एक पल के लिए उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। जब जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को पीछे मुड़कर देखा तो वह उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए उलझन में ताइक्सू फूड पवेलियन के प्रवेश द्वार की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। कई शिष्यों की निगाहों के नीचे चूयाओ, जो एक चोर की तरह बैठा था और दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, उसे कुछ आभास हुआ और उसने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा। लॉन्ग रिटियन के बगल में बैठे हुए वह एक बड़े चबाने वाले पैनकेक का एक निवाला ले रहा था। उसने उसे काटने के बाद अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और फिर वापस झुका दिया। लॉन्ग शियाताओ, जिसके मुंह में बिस्किट था, ने अचानक वांग चेन को देखा। इस समय वांग चेन, जियांग लिंगक्सियन, चूयाओ और लॉन्ग शियाताओ सभी एक पल के लिए ताइक्सू फूड पवेलियन में जम गए। जब चूयाओ ने ताइक्सू फूड पवेलियन में हम दोनों को अपनी ओर देखते हुए देखा तो कुछ दिन पहले उसके अभिवादन की चमक उसकी आंखों से गायब हो गई। चूयाओ, जिसने सोचा था कि उसने वांग चेन और उसके मालिक के बीच का रहस्य खोज लिया है, बस जल्दी से भाग जाना चाहती थी और बिल्कुल भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। वाह, काली पोशाक पहने चूयाओ अचानक एक बड़े काले चूहे की तरह उठ खड़ा हुआ और ताइक्सू फूड पवेलियन से बाहर भाग गया। जल्दी उसे पकड़ो, चलो उसका सामना करते हैं। वांग चेन ये देखकर चिंतित हो गया और जल्दी से जियांग लिंगक्सियन को बुलाया, फिर उसे अपने पीछे खींचने के लिए बाहर ले गया। भाई, ये वही है, इसी ने मुझे परेशान किया था। ये देखकर लॉन्ग शियाताओ चिंतित हो गई और उसने जल्दी से अपने चेहरे को ढकने वाले पैनकेक को नीचे रख दिया, वांग चेन की ओर इशारा किया और लॉन्ग रिटियन पर चिल्लाई। जब लॉन्ग रिटियन ने ऊपर देखा तो उसने केवल दो कपड़ों को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा और थोड़ा पीछे का दृश्य देखा, लेकिन उसने उस व्यक्ति का असली चेहरा नहीं देखा। लेकिन किसे परवाह है, अगर कोई जियाओताओ को धमकाने की हिम्मत करता है तो बस उसका पीछा करो। लॉन्ग रिटियन ने जल्दी से सफेद बांसुरी को एक तरफ रख दिया, लॉन्ग शियाताओ को अपने कंधों पर उठा लिया और बाहर निकल गया। ठीक इसी तरह ताइक्सू अमर संप्रदाय में 5 लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि और पहचान है और वे आसानी से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस समय कई ताइक्सू शिष्यों की हैरान और भ्रमित निगाहों के नीचे 5 लोग एक के बाद एक ताइक्सू फूड पवेलियन से बाहर निकल गए। .. ताइक्सू अमर संप्रदाय, संप्रदाय सड़क पर। वाह, जियांग लिंगक्सियन ने एक आत्मा बंधन रस्सी फेंकी जो कहीं से भी आई थी और तेजी से चूयाओ की ओर दौड़ी। टॉनिक, वाह, चूयाओ, जो भाग रही थी, ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर जकड़ गया है और उसका पूरा शरीर बंधा हुआ है और हवा में लटका हुआ है, हिलने में असमर्थ है। इस समय वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन जल्दी से उसके पास पहुंचे, उसके बगल में खड़े हो गए और उसे गौर से देखने लगे। इस समय चूयाओ को लगा कि उसका जीवन निराशाजनक है और उसका भविष्य अंधकार में है। उसे लगा कि वह आज यहीं मर जाएगी। वाह, तभी एक हरा आध्यात्मिक हमला हुआ, लेकिन जानलेवा नहीं। यह इतना कमजोर था कि मानो उन दोनों को सबक सिखा रहा हो। हालांकि इससे पहले कि हरा हमला जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन तक पहुंच पाता, यह अचानक मध्य हवा में फट गया और नष्ट हो गया। जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन ने भौहें चढ़ाई, धीरे धीरे घूमे और लॉन्ग रिटियन की ओर ठंडेपन से देखा, जो लॉन्ग शियाताओ को अपनी पीठ पर लेकर उनका पीछा कर रहा था। लेकिन इस समय जब लॉन्ग रिटियन ने देखा कि उसने संत ताइक्सू और उसके शिष्य को लगभग टक्कर मार दी है, तो उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। बहन, तुम मुझे धोखा दे रही हो। इस समय लॉन्ग शियाताओ, जो लॉन्ग रितियन के कंधों पर थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लॉन्ग रितियन के स्थिर खड़े रहने के बाद वह नीचे उतरने के लिए संघर्ष कर रही थी। भाई, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? चूंकि वह अपनी छाती की ऊंचाई से मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं कूदकर उसकी छाती पर लात मारने वाला हूँ। लॉन्ग शियाताओ ने दोनों हाथों से लॉन्ग रितियन के कंधों को सहारा दिया, फिर वांग चेन और अन्य दो की ओर पीट करके नीचे कूद गई। फिर वह धीरे से घूमा और वांग चेन की ओर देखा, उसकी आंखों में मूर्खतापूर्ण और प्यारा गुस्सा था और उसने अपनी बाहें मोड़कर उसे गुस्से से देखा। वांग चेन ने पहले तो उसे पहचाना नहीं, जब तक कि वह गुस्से से पलटकर उसे घूरने नहीं लगी, तब वह स्पष्ट रूप से देख सका। उफ, क्या तुम आड़ू के जंगल वाले बच्चे नहीं हो? लॉन्ग शियाताओ के मूर्खतापूर्ण रूप को देखने के बाद वांग चेन हंसने से खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराते हुए पूछा। उसी समय वांग चेन ने लॉन्ग रिटियन की ओर देखा। लॉन्ग शियाताओ ने अभी जो कहा था उससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वे असल में भाई बहन थे। पिछली बार आड़ू के फूलों के जंगल में वांग चेन आड़ू के फूल खा रही इस छोटी सी चीज से लगभग टकरा ही गया था। उसका बुरा व्यवहार देखकर वह उस पर हंसा था। अप्रत्याशित रूप से वह लॉन्ग्रिटियन की बहन निकली। अपने पिछले जन्म में उसने कभी नहीं सुना था कि लॉन्ग्रिटियन की कोई बहन भी है। बेशक यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पिछले जन्म में उसका लॉन्ग्रिटियन से ज्यादा वास्ता नहीं था। आप जब लॉन्ग शियाताओ ने बच्चा शब्द सुना तो वह इतनी गुस्से में थी कि उसके शब्द रुक गए। वह बहुत देर तक हकलाती रही और उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। अंततः ये देखकर कि वह बहस नहीं जीत सकती, लॉन्ग शियाताओ को इतना गुस्सा आया कि वह दौड़कर वहां जाना चाहती थी। फिर लॉन्ग्रिटियन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, एक रस्सी निकाली और उसे जल्दी से बांध दिया, फिर उसे अपनी कमर के चारों ओर पकड़ लिया। भाई तुम क्या कर रहे हो? लॉन्ग शियाताओ अपने भाई के अचानक विद्रोह से स्तब्ध रह गई। उसे रस्सियों से बांध कर उसकी कमर में जकड़ लिया गया था और वह लगातार संघर्ष कर रही थी। आप कौन हैं? ये दृश्य देखकर जियांग लिंगक्सियन की भौहें धीरे धीरे नाराजगी से सिकुड़ गईं और उसने ठंडी आवाज में लॉन्ग्रिटियन और लॉन्ग शियाताओ को देखा। यदि उसने यह न देखा होता कि उसका शिष्य उन्हें जानता है तो वह अभी आध्यात्मिक हमले से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए संत ताइक्सु, मैं किंगक्सुआन राजवंश का दूसरा राजकुमार हूँ। मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया और अनजाने में आपको नाराज कर दिया। मेरे बगल वाली मेरी छोटी बहन है। वो बहुत छोटी बच्ची है, ज्यादा समझदार नहीं है और जो चाहे बोल देती है। मुझे बहुत दुख है। ये देखकर लॉन्ग्रिटियन ने जल्दी से लॉन्ग शियाताओ को, जो अभी भी उसकी बाहों में अनियंत्रित व्यवहार कर रही थी, जमीन पर लिटा दिया, उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और माफी मांगने लगा। मैं कोई छोटा सा नहीं हूँ। लॉन्ग्रिटियन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और जल्दी और चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन शब्दों को रोक दिया जो लॉन्ग शियाताओ चिल्लाना चाहता था। आत्मा राजा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ यदि कोई वास्तविक लड़ाई छिड़ गई तो वह संत ताइक्सु द्वारा एक हाथ से मार दिया जाएगा। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने लॉन्ग्रिटियन की माफी सुनी और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने किंगशुआन राजवंश के बारे में सुना था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय पूज्य राज्य के नौवें स्तर के शिखर पर कोई शाही पूर्वज शासन कर रहा था। उसकी शक्ति बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। जियांग लिंगक्सियन ने उसे अनदेखा कर दिया और धीरे धीरे अपनी ठंडी आंखें घुमाकर अपने बगल में खड़े वांग चेन की ओर देखने लगी। वांग चेन ने उसकी ओर देखा और जान गया कि जियांग लिंगक्सियन उसकी राय पूछ रही थी। राजकुमार, ये तो बहुत उदार प्रस्ताव है। 100 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर और एक उस हमले के लिए जो आपने अभी हम पर किया है। फुफ, ये देखकर लॉन्ग्रिटियन ने वांग चेन के शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना एक छोटा सा भंडारण बैग फेंक दिया और यह धीरे धीरे वांग चेन की ओर उड़ गया। वह स्वाभाविक रूप से खुश होगा कि वह आपदाओं से बचने के लिए धन का उपयोग कर सकता है। आखिरकार जिस चीज की उसे सबसे कम कमी थी वह थी धन। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये देखकर कि उसने इतनी दृढ़ता से माफी मांगी, वांग चेन को थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने बहुत कम कहा था। आहम, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वांग चेन ने जल्दी से हाथ उठाकर उड़ते हुए छोटे से स्टोरेज बैग को उठाया। उसकी बातें रुक गईं, वह दो बार खांसा और उनकी तरफ हाथ हिलाया। आप दोनों को पुरानी शिकायतें भूलने के लिए धन्यवाद। लॉन्ग्रिटियन ने आखिरी शब्द कहे, जल्दी से आगे बढ़कर लॉन्ग शियाताओ को उठाया जो अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था और रो रहा था, और जल्दी से मुड़कर चला गया। वाह, एक और मिलियन ओरिजिन पॉइंट्स हाथ में आ गए और उस आदमी ने सचमुच मुझे धन्यवाद दिया। वांग चेन ने अपने हाथ में पकड़े छोटे स्टोरेज बैग को स्टोरेज स्पेस में रख दिया और मुस्कुराते हुए देखा कि लॉन्ग्रिटियन छोटे लॉन्ग शियाताओ को ले जा रहा है। जियांग लिंगक्सियन ने भौहें चढ़ाई और अपनी आंखों में एक अजीब नजर से वांग चेन को देखा। उसे याद आया कि वांग चेन के पास अभी भी 1,000,000 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं जो उसने उसे दिए थे। छोटा धन प्रेमी शिष्य, जियांग लिंगक्सियन ने ठंडी आंखों से वांग चेन को देखा और अपने दिल में धीरे से हंसते हुए कुछ स्नेहपूर्ण बातें कही। अरे तुम्हें मेरी जिंदगी या मौत की परवाह है? मैं दिन भर यहां बंधा रहा हूं। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हें नमस्ते कहा और तुम्हें पसंद नहीं आया। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम मेरे पीछे पड़ने लगे। चुयाओ को सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो बेवकूफ बनने वाली है। अगर उसे पहले पता होता तो उसे वांग चेन को जानने की पहल ही नहीं करनी चाहिए थी। आह, वांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे याद आया कि उनके पीछे एक व्यक्ति था जो आत्मा को बांधने वाली रस्सी से बंधा हुआ था और हवा में लटका हुआ था। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, हा हा हा। वाह, तुम इतनी बुरी तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? चुयाओ ने वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन को देखा जो पीछे मुड़े हुए थे और वांग चेन की हंसी से डर गए और उनसे दूर रहने की पूरी कोशिश की। इस समय चुयाओ को केवल यह महसूस हुआ कि वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन राक्षस थे जो उसे यातना देने की तैयारी कर रहे थे। वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ने चुपचाप चुयाओ को देखा, फिर अपनी निगाहें बदल कर एक दूसरे को देखा। फुफ, फिर वांग चेन, जियांग लिंगक्सियन और चुयाओ उन शिष्यों की निगाहों के सामने से गायब हो गए जो 3 या 4 के समूहों में शो देख रहे थे। तस्क तस्क तस्क, यह अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक आदमी के लिए लड़ाई हार गई है। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ देखा है उसके आधार पर हर दिन संप्रदाय की सड़क के किनारे खड़े होकर साजिश को सामने आते हुए देखने पर ऐसा लगता है कि मामला यही है। हाहाहा, साथी यात्रियों, मैं तो बस हर दिन यहाँ बैठा रहता हूँ, संत लेडी ताइक्सू और उनके शिष्यों के आने का इंतजार करता हूँ और फिर खरबूजे खाता हूँ। जब वांग चेन और अन्य दो लोग चले गए तो केवल कुछ ताइक्सू शिष्यों की दूर से तमाशा देखने के बाद आपस में फुसफुसाने की आवाज ही रह गई। डॉट 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 डॉट, ताइक्सू सेंट मेडेन हॉल के अंदर। मुझे नहीं मालूम, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। चूयाओ ताइक्सू पवित्र युवती महल के आंगन में आड़ू के पेड़ से बंधी हुई थी और वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन को देख रही थी जो भयभीत होकर उसकी ओर आ रहे थे। ठीक है, खैर, भले ही मुझे पता है कि आपकी, वांग चेन, पहले से ही एक पत्नी है और आप अभी भी एक मालिक चाहते हैं, आप दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। संत ताइक्सू एक बुरा आदमी है, उसके बहकावे में मत आना। मुझे अभी जाने दो, जागो। चूयाओ एक आड़ू के पेड़ से बंधी हुई थी, रस्सियों से संघर्ष कर रही थी और उसके शब्दों से पता चला कि वह जियांग लिंगक्सियन को विद्रोह के लिए राजी करने की उम्मीद कर रही थी। वांग चेन, जियांग लिंगक्सियन, आखिर उसे इस दुर्घटना के बारे में कहां से पता चला? चूयाओ की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर वांग चेन उलझन में पड़ गया और जियांग लिंगक्सियन को थोड़ा घबराहट से देखने लगा। मैंने नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं किया। जियांग लिंगक्सियन को कुछ असहज नजरों से देखते हुए देखकर वांग चेन ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और कसम खाने के लिए तीन उंगलियां ऊपर उठाई। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन ने अपने होठों को थोड़ा सा दबाया और उसकी असहज भावनाएं अंततः काफी हद तक कम हो गईं। लेकिन वह अब चूयाओ की बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। हालांकि उसने जो कहा वह शायद सच नहीं था, फिर भी ये सुनने में असहज था, इसलिए जियांग लिंगक्सियन ने सफेद कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। जब वांग चेन ने देखा कि जियांग लिंगक्सियन अब उसकी ओर नहीं देख रहा है तो उसने राहत की सांस ली और उसे थोड़ा पसीना भी आया। फिर वांग चेन ने चूयाओ को देखा जो आड़ू के पेड़ से बंधा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सिस्टम से सोयाबीन का एक बड़ा बैग खरीदने और उसे उसके हाथ में रखने के लिए कहा। हम कितनी बार मिले हैं, हम कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ मिले हैं, और हाँ, मेरी पत्नी मेरे बगल में है, कोई और नहीं। वह वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अंत में ये भी है, कहो या ना कहो, कहो या ना कहो, कहो या ना कहो, तुम अब भी नहीं कहना चाहते है ना? वांग चेन के सवाल पूछने के बाद उसका स्वर अचानक बदल गया। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ से छोटी पीली फलियां उठाई और चूयाओ के सिर पर फेंक दी। वो चूयाओ को तो जियाओ हुआंग दो ने लगभग पागल कर दिया था। उसका मुंह सफेद कपड़े से कसकर ठूंस दिया गया था और वह न तो बोल पा रही थी और न ही कोई संघर्ष कर पा रही थी। वांग चेन मन ही मन बहुत खुश था। उसे पता था कि चूयाओ के मुंह में सफेद कपड़े का एक टुकड़ा है, लेकिन वो बस जानबूझकर थोड़ा बदला लेना चाहता था। इस मूर्खतापूर्ण बकवास के कारण वह लगभग जियांग लिंगक्सियन द्वारा बांध दिया गया था और उसे अधीनता में लाने में काफी समय लगा। स्नैप स्नैप स्नैप, बोलो या ना बोलो, बोलो या ना बोलो। वो 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 शिष्य, अच्छा, क्या हम उसे बोलने देने से पहले उसके मुंह से सफेद कपड़ा हटा दें? जियांग लिंगक्सियन ने चूयाओ को देखा जो इतना चिंतित था कि उसके आंसू निकलने वाले थे और वह वांग चेन को धीरे से छूने और इशारा करने से खुद को रोक नहीं सका। आह, ओह, ये सही है, मेरे दिमाग को देखो, मैं भूल गया था कि उसके मुंह में एक सफेद कपड़ा ठूंसा हुआ था और वह बोल नहीं पा रही थी। वांग चेन ने स्पष्ट रूप से समझ लिया लेकिन भूल जाने का नाटक किया और फिर जियांग लिंगक्सियन की ओर भारी सिर हिलाया। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन आगे बढ़ी, अपना पतला सफेद हाथ बढ़ाया और चूयाओ के मुंह से सफेद कपड़ा खींच लिया। तुम मुझे धमका रहे हो, मैंने अपने जीवन में कभी इतना दुख महसूस नहीं किया, तुम कमीने कमीने बड़े कमीने। जब चूयाओ के मुंह में लगा सफेद कपड़ा खींचा गया तो वह तुरंत शिकायत में चिल्लाई, अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए और गालियां देने लगी। वांग चेन चुप थे, जियांग लिंगक्सियन चुप थे। इस बार वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन नाखुश नहीं थे। आखिरकार वह दुखी तो थी ही और उन्हें उसे अपनी बात कहने देनी ही थी, वरना बहुत बुरा होता। वांग चेन द्वारा छोटी पीली फलियां फेंकने का बल ज्यादा नहीं था, इसलिए चोट नहीं लगी। दरअसल चूयाओ बस निराश और चिंतित महसूस कर रहा था। कुछ देर के लिए माहौल शांत होने के बाद, तुम मेरे खिलाफ फिर से हिंसा का प्रयोग कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं तुम्हें बताऊं? चूयाओ, जिसकी आंखें हताशा से आंसुओं से झिलमिला रही थी, अब इस तरह के माहौल को सहन नहीं कर सकता था और बस जल्द से जल्द इन दो राक्षसों से बचना चाहता था। जैसे जैसे पूरे आठ उजाड़ महाद्वीप में समय बीतता गया, चूयाओ अज्ञात समय तक बंधे रहने और समझाने के बाद, अरे बस तुम्हें एक याद दिलाना है, अपने चू परिवार के चूहान से ज्यादा सावधान रहना। खासकर जब वह आपके सामने ये किंग नाम के एक आदमी के साथ आए तो सावधान रहना याद रखें। वांग चेन ने चुयाओ की अकेली पीठ को देखा जब वह ताइक सुपवित्र युवती महल के द्वार की ओर चली गई और उसे याद दिलाया, अगर आप सचमुच इससे उबर नहीं पा रहे हैं तो आइए और हमसे मदद मांगिए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन अब एक साथ चुयाओ को धमका रहे हैं, वांग चेन अभी भी अपने पिछले जीवन में उसकी दयालुता को नहीं भूली है। हालांकि चुयाओ ने इस जीवन में उसके लिए कोई उपकार नहीं किया था, वांग चेन केवल एक स्पष्ट विवेक चाहता था। चूंकि चुयाओ की मृत्यु पिछले जन्म में ही हो गई थी, इसलिए वांग चेन चुयाओ को उसके पिछले जन्म में लगभग उसकी जान बचाने के लिए दिए गए ऋण का भुगतान नहीं कर सका। तो मैं इसी जन्म में इसका बदला चुका दूंगा। मुझे यकीन है कि चुयाओ अपने पिछले जन्म में पूरे चू परिवार को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। इस समय वांग चेन के शब्दों के कारण चुयाओ यार्ड के गेट पर रुक गया और एक पल के लिए वहीं स्तब्ध होकर खड़ा रहा। तब फक फक करना, चुयाओ ने गुस्से से घुरघुराया और एक अकेली पीठ के साथ यार्ड के गेट से बाहर चला गया, एक काले रंग की पोशाक पहने और गुस्से में कदम रखते हुए। चुयाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसके दिमाग में गुरु और शिष्य के खिलाफ विद्रोह के कई दृश्य घूम गए तो वह बस भाग जाना चाहती थी। अगर वह अभी नहीं गई तो उसे सचमुच डर है कि उसे चुप करा दिया जाएगा। चुयाओ अभी दरवाजे से बाहर चला गया। वह जियो किंगक्सु से टकराया, जिसने ताइक्सु अमर संप्रदाय के अधिकांश हिस्सों की खोज की थी, लेकिन वांग चेन को नहीं ढूंढ सका था और उसके पास देखने के लिए यहां आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। दोनों की आंखों में थोड़ी उलझन थी, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, एक तरफ हट गए और चलना जारी रखा। ताइक्सु सेंट मेडेन पैलेस के प्रांगण में, जियांग शियान, क्या अब तुम्हें इस पर विश्वास है? वांग चेन आड़ू के पेड़ के नीचे जियांग लिंगक्सियन के करीब चला गया और उसका चेहरा धीरे धीरे करीब आ गया। जियांग लिंगजियन ने अपने लाल होंठों को थोड़ा सा भींच लिया, थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और थोड़ा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन चूंकि मेरे शिष्य ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की है, इसलिए मैं इस बार उसे ऐसा करने दूंगा। जियांग लिंगक्सियन के कान धीरे धीरे लाल हो गए, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा झुक गया, उसके शरीर में थोड़ी गर्मी महसूस हुई क्योंकि वह वहां खड़ी थी और उसकी आंखें कुछ अस्वाभाविक रूप से दरवाजे की ओर देख रही थी। जैसे ही उसने महसूस किया कि वांग चेन का चेहरा उसके करीब आ रहा है, उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने जल्दी से दोनों हाथों से वांग चेन के बाएं कंधे को पकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए इस आध्यात्मिक कपड़े को हटा दूंगा। जियांग लिंगशियन के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से ठंडी और सुंदर भाव लौट आए। वह वांग चेन के बहुत करीब झुक गई और उसके बाएं कंधे के ऊपर से देखने लगी। तुम पहले नहीं आए, तुम बाद में भी नहीं आए, लेकिन तुम इस समय आए, तुम कुछ अच्छा नहीं करने वाले हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने शिष्य के साथ घर वापस चला जाता। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से वांग चेन के कंधों पर सफेद कपड़े को उठा दिया। अंदर आध्यात्मिक पट्टी की जांच करने का नाटक करते हुए थोड़ा दुखी महसूस किया। पास आते ही वांग चेन की आकृति स्तब्ध रह गई। आंगन के गेट पर कदमों की आहट सुनकर उसे समझ आ गया कि जियांग लिंगक्सियन अचानक ऐसी क्यों हो गई। शश, इसे अलग मत करो, इससे थोड़ा दर्द होता है। वांग चेन ने महसूस किया कि जियांग लिंगशियान ने उसके कंधे को हल्के से छुआ है और मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ से उसे ढकने का नाटक किया। हालांकि जब वांग चेन ने उसका हाथ ढक दिया तो उसने चुपके से जियांग लिंगक्सियन के सफेद और कोमल हाथ के पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और अपनी तर्जनी उंगली से उसे दो बार खरोंच दिया। जियांग लिंगक्सियन को अपने हाथ के पीछे खुजली महसूस हुई, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा चौंक गया और उसने अपनी ठंडी और सुंदर आंखें उठाई। इस समय वांग चेन के पीछे जियो किंगक्सु भी आ गया। हालांकि क्योंकि वांग चेन ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए जियो किंगक्सु ने यह दृश्य नहीं देखा। तुम्हारे कंधे में क्या चोट लगी है? संत के इलाज के बाद भी यह ठीक क्यों नहीं हुआ? जियो किंगक्सु वांग चेन के पीछे पीछे आया, उसका चेहरा मिलनसार लेकिन सुंदर था और वह असमंजस में बोला। जाहिर है उसने सचमुच सोचा था कि जियांग लिंगक्सियन वांग चेन की चोटों का इलाज कर रहा था और उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। अफसोस, पिछली बार जब मैं रोती हुई लड़की को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था तो उसने हताश होकर मुझे जोर से काट लिया, मैं कुछ नहीं कर सका। ये सुनकर वांग चेन ने शांति से अपना बायां कंधा ढक लिया और घूम गया। वह अपने सुंदर चेहरे से, जो सुंदर तो था पर थोड़ा अनियंत्रित भी था, बेबसी से बोला, ओह, तो उस पर उस छोटी सी आत्मा लड़की ने हमला किया था, है ना? ये सामान्य बात है, आखिरकार इसका ताओवादी हथियार उच्च कोटि का है, इसके काटने से हुए घावों में ताओ कविता होनी चाहिए, इसीलिए उनका इलाज मुश्किल है। ये सुनकर जियाओ किंगक्सु को समझ आ गया। उसने वांग चेन की तरफ देखा, सिर हिलाया और हंसी से बोला। और जियांग लिंगक्सियन, जो वांग चेन के पीछे खड़ी थी, ने अपनी स्वाभाविक ठंडी आंखों से वांग चेन को देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में नाराजगी का एक हल्का सा संकेत था। बुरे शिष्य, तुम हमेशा मुझे रोने वाला कहते हो और तुम अभी भी अपने गुरु के प्रति गद्दार हो।
हूँ,
नहीं नहीं नहीं, क्या मैं उसका मालिक नहीं हूँ? क्या आपने इस मामले से निपटा है? वान चेन ताइक्सु पवित्र युवती महल के आंगन में आड़ू के पेड़ से ज्यादा दूर जमीन पर खड़ा था। जियो किंगक्सु को उलझन में देख रहा था और पूछा,
अभी नहीं, लेकिन मैं बाद में तुम्हारे मालिक से इस बारे में बात करूंगा और तब ये लगभग पूरा हो जाएगा।
जियो किंगक्सु ने अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा रोका, जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा जो एक ठंडी परी की तरह वान चेन के पीछे चुपचाप खड़ा था, और इशारा किया।
ओह, वान चेन ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुड़कर जियांग लिंगक्सियन की ठंडी आंखों से मिला जो पीछे से उसे चुपचाप देख रही थी।
ठीक है, कृपया पहले बैठ जाओ। वान चेन ने उन दोनों का अभिवादन किया, फिर जियांग लिंगक्सियन को आंगन में छोटे मंडप में ले गया और वे तीनों बैठ गए। वान चेन और जियांग लिंगक्सियन एक दूसरे के करीब बैठे थे जबकि जियो किंगक्सु उनके सामने बैठे थे और धीरे धीरे बातें करने लगे। दोनों संप्रदायों के हालिया मामले तेजी से जटिल होते जा रहे हैं तथा अन्य दो प्रमुख अमर संप्रदायों के भी इसमें शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। योजनाएं बदलावों के साथ नहीं चल सकती। हान जून शुरू करने के तुरंत बाद एकांतवास से बाहर आने वाला है, इसलिए तुम्हें उसके साथ बाहर जाना होगा। और जियो किंगक्सु गंभीर दिख रहा था जब उसने जियांग लिंगक्सियन को देखा, जिसका रूप सुंदर और भाव ठंडा था, और धीरे धीरे बोलना जारी रखा। जियांग लिंगक्सियन समय समय पर सिर हिलाती या हम कहकर जवाब देती। उसकी स्वाभाविक रूप से ठंडी और सुखद आवाज भावनाहीन लगती थी। इस समय मंडप में मौजूद तीन लोगों में कुछ भी असामान्य नहीं था। जब तक जियांग लिंगक्सियन का बायां हाथ, जो उसके पैरों पर रखा हुआ था, मेज पर एक अदृश्य स्थान पर एक अन्य गर्म हाथ द्वारा धीरे से पकड़ लिया गया, जियांग लिंगक्सियन का दिल थोड़ा कांप उठा। लेकिन जियो किंगक्सु को देखकर, जो अभी भी दूसरी तरफ गंभीरता से बात कर रही थी, वह केवल शांत होने का नाटक कर सकती थी। जियांग लिंगक्सियन चुपचाप अपना हाथ वापस लेना चाहती थी, लेकिन वांग चेन ने अचानक उसकी पांचों उंगलियां खोल दी और उन्हें कसकर पकड़ लिया। इतना ही नहीं, जियांग लिंगक्सियन ने यह भी महसूस किया कि वांग चेन का दाहिना पैर, जो उसके बाईं ओर बैठा था, ने धीरे से उसके बछड़े को पकड़ा और उसे खींच लिया। इस पल जियांग लिंगक्सियन का दिल फिर से कांप उठा। वह अपनी सांसों से अपने ऊपरी शरीर को नियंत्रित कर सकती थी और उसे स्थिर रख सकती थी और शांति से जियो किंगक्सु को देख रही थी। स्नैप! अचानक जमीन पर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज हुई, जिससे जियांग लिंगक्सियन, जो अपने पति का हाथ पकड़े खड़ी थी, चौंक गई। उसका दिल कांप उठा और उसने जल्दी से उधर देखा। जियो किंगक्सु ने भी वांग चेन की ओर देखा, लेकिन सामने बैठे दो लोगों के ऊपरी शरीर की दृष्टि मेज के कारण अवरुद्ध थी और कुछ भी असामान्य नहीं था।
नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ गिरा दिया है, तुम लोग बातें जारी रखो।
जियो किंगक्सु ने वांग चेन की ओर देखा, जो शर्मिंदगी में अपना सिर खुजला रहा था, समझ में सिर हिलाया और जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा। लेकिन इस समय जियांग लिंगक्सियन का दिमाग खाली हो गया और वांग चेन को देखते हुए उसकी ठंडी आंखों में एक अस्पष्ट तनाव था। यदि मेरा शिष्य नीचे बैठ जाए तो क्या वह अधिक कार्य नहीं कर सकेगा? जियांग लिंगक्सियन का दिल धीरे धीरे तनावग्रस्त हो गया, लेकिन दो लोगों के हाथों को एक साथ जोड़कर देखकर वह बच नहीं सकी।
हम अभी कहां थे?
इस समय जियो किंगक्सु की आवाज फिर से सुनाई दी। जियांग लिंगक्सियन को, जो अभी भी वांग चेन को देख रही थी, अपनी नजर वापस मोड़ने के लिए कहा। ये यात्रा शायद किंगयू तक जाएगी।
ओह हाँ,
जियांग लिंगक्सियन का जवाब सुनने के बाद जियो किंगक्सु, जो थोड़ा उलझन में था, को अचानक कुछ याद आया और उसने बोलना जारी रखा। वांग चेन मेज के नीचे बैठ गया। उसने जियांग लिंगक्सियन के बाएं हाथ को अपनी दाहिनी पांच उंगलियों से कसकर पकड़ लिया और अपनी बाईं तर्जनी उंगली से उसकी जांघ को हल्के से थपथपाया।
सीओ जियान जियान, आई विल गिव यू अ लेग मसाज।
ठीक है, वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के लंबे पैरों पर अपने बाएं हाथ से स्ट्रोक दर स्ट्रोक लिखा और अंत में संकेत देने के लिए उसे हल्के से दबाया। जियांग लिंगक्सियन के पैर उसकी स्कर्ट से ढके हुए थे, इसलिए हालांकि वह सभी स्ट्रोक महसूस नहीं कर सकी, लेकिन उसने मोटे तौर पर समझ लिया कि उनका क्या मतलब है। जियांग लिंगक्सियन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपना बायां पैर हिलाया और अपनी पतली टांगों को सफेद स्कर्ट के नीचे से निकालने की कोशिश की, लेकिन साफ मना कर दिया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वांग चेन ने अचानक उसे गले लगा लिया और उसका बायां हाथ बेईमान हो गया।
कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूं, बस बोलते रहो।
जियो किंगक्सु को अपनी ओर देखते हुए देखकर जियांग लिंगक्सियन को अपनी जांग पर एक अजीब सनसनी महसूस हुई और वह खुद को बोलने के लिए मजबूर कर सकी।
ओह, तो बाकी दो, मुझे कहना होगा कि जियांग लिंगक्सियन का अभिनय कौशल वाकई जबरदस्त है।
जियाओ किंगक्सु ने तो ये भी सोचा कि जियांग लिंगक्सियन का हम कहना उसकी कही बात का जवाब था। अगर तुमने फिर से मेरे पैरों पर चुटकी काटी तो मैं मुझे फिर से चूमने के बारे में सोचना भी मत। जियांग लिंगक्सियन अब और सहन नहीं कर सकी। उसने अपने शरीर की बेचैनी को सहा और शर्मिंदगी के साथ वांग चेन को एक संदेश भेजा।
इस अवधि के दौरान वह वांग चेन को दंडित करना चाहती थी, लेकिन अंत में ये पता चला कि उसने वांग चेन को उसे चूमने की अनुमति नहीं दी। शायद मैं उसे सही तरीके से चूमने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, यह अधिक अधिकारपूर्ण होगा। लेकिन जियांग लिंगजियन ये भूल गई थी कि वह स्वर्गीय पूजा के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। वास्तव में जियांग लिंगजियन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वांग चेन को उसे छूने से रोक सकती थी, लेकिन उसने जैसी की उम्मीद थी, वांग चेन के पास अंतिम परिष्करण बल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने इसे थोड़ा सा दबाया और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। जियांग लिंगक्सियन कुर्सी पर बैठ गया। उसने जियो किंगक्सु को एक मजबूर ठंडे भाव से देखा और जब उसने दो युद्ध स्थितियों के बारे में बात की तो उसने हम ध्वनि के साथ जवाब दिया। लेकिन जियो किंगक्सु को जो बात थोड़ी अजीब लगी वह ये थी कि जियांग लिंगक्सियन की ठंडी अभिव्यक्ति हमेशा लोगों को थोड़ा उदास महसूस कराती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब चीजों से निपटना उसके लिए थोड़ा ज्यादा तनावपूर्ण हो? अफसोस, इस भारी दबाव के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। 8,000 महाद्वीपों के चार प्रमुख अमर संप्रदायों की स्थिति अब बहुत जटिल हो गई है। जियो किंगक्सु ने एक पल सोचा और आखिरकार बस यही संभावना उसके दिमाग में आई। उसने मन ही मन आह भरी, जियांग लिंगजियांग के लिए खुद को असहाय महसूस किया। दूसरी तरफ वांग चेन पहले से ही मेज के नीचे अपनी कुर्सी पर मुस्कुराहट के साथ बैठ गया था। ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जियो किंगक्सु के बोलने के बाद उसने जियांग लिंगक्सियन की ओर थोड़ा सा सिर हिलाया, जिसके कान उसके बालों के नीचे लाल थे और वांग चेन जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर जियो किंगक्सु धीरे से खड़ी हुई और वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ने जल्दी और चुपचाप अपने हाथों को ढीला कर दिया। जब जियो किंगक्सु ने मेज के कारण अवरुद्ध दृश्य को देखा तो उसने केवल यही देखा कि सब कुछ सामान्य है। आप रेगिस्तान जाने की योजना कब बना रहे हैं? जियो किंगक्सु खड़ा हुआ, वांग चेन को देखा और अपने और वांग चेन के निजी मामलों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कल दोपहर को मेरे पास आओ और सीधे चले जाओ। वांग चेन ने आकाश की ओर देखा, फिर याद आया कि चार पत्ती वाली ज्वाला घास लगभग 5 दिनों तक परिपक्व नहीं होगी, इसलिए उसने बात की। ठीक है, मैं पहले निकलूंगा। जियो किंगक्सु ने हल्के से मुस्कुराया, थोड़ा सिर हिलाया और फिर मुड़कर यार्ड के गेट की ओर चल दिया। क्रंच, दूर से एक आवाज आ रही थी और जियो किंगक्सु ने वास्तव में दरवाजा बंद कर दिया। तुम बुरे बेशर्म 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 गद्दार बेशर्म गद्दार। ये देखकर कि जियो किंगक्सु अंततः चला गया था, जियांग लिंगक्सियन ने मुड़कर अपनी सीट से वांग चेन को शर्म और गुस्से से देखा और शर्म और गुस्से में उसे कोसने लगी। लेकिन वांग चेन मुस्कुराया और जियांग लिंगजियन को देखा, जो शर्मिंदा भी था और गुस्से में भी। दरअसल उसके शब्दों में जरा भी आक्रामक शक्ति नहीं थी। ठीक है मास्टर, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं अगली बार आपके पैरों को न छूने की कोशिश करूंगा। वांग चेन जियांग लिंगशियान के करीब गया, जिसका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था, और उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लेकिन जियांग लिंगजियन उस समय शर्मिंदा और गुस्से में थी तो वह उसे गले कैसे लगा सकती थी। वह अपने थोड़े कमजोर शरीर के साथ गुस्से से खड़ी हो गई। मुझे फिर से गले लगाने के बारे में सोचना भी मत। जियांग लिंगशियान उस खाली हाथ व्यक्ति को देखकर शर्मा गई, गुस्से से कुछ कहा और मुड़कर अकेले ही घर में चली गई। स्नैप, जियांग लिंगक्सियन ने ताइक सुपवित्र युवती महल का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इसे बंद नहीं किया। वांग चेन उसे मनाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि पहले कुछ सामग्री खरीदने के लिए ताइक सुफूड पवेलियन जाने के बारे में सोच रहा था। अंततः मैंने उसके लिए 20-स्टार कपल मील पकाया, उसे आश्चर्यचकित किया और साथ ही उसे खुश भी किया। आखिरकार कार्रवाई के साथ मनाने और बिना कार्रवाई के मनाने में बहुत अंतर है। वांग चेन ने जैसा कहा था वैसा ही किया और गणना की कि वह ये कार्य 1 घंटे में पूरा कर सकता है। अमर साधकों की गति अद्भुत होती है। आखिरकार वांग चेन को पता था कि जियांग लिंगक्सियन के संवेदनशील व्यक्तित्व के कारण वह जल्द ही चिंतित होने लगेगी। ... ताइक्सु फूड पवेलियन के अंदर लॉन्ग रिटियन ने राहत की सांस ली जब उसने लॉन्ग शियाताओ को देखा, जो आंखों में आंसू लिए अपने चेहरे से भी बड़े पैनकेक को कुतर रही थी। ओह, मैंने अंततः उसे मना लिया और अब मैं नौहत्या बांसुरी का अभ्यास जारी रख सकता हूँ। नौहत्या बांसुरी कौशल में एक कोमल बांसुरी ध्वनि होती है, लेकिन अक्सर कोमल बांसुरी ध्वनि अदृश्य रूप से लोगों को मारने के लिए सबसे आसान होती है। हालांकि वह इसका इस्तेमाल कम ही करता है, ज्यादातर वह ताइक्सु फूड पवेलियन में दिखावा करने और बांसुरी बजाने आता है। प्रशंसकों के समूह की चमकती आंखें उसे देखते हुए देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होता है। टैप टैप टैप। लॉन्ग रिटियन, जो अभी अभ्यास जारी रखने ही वाला था, ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और उस व्यक्ति की ओर देखा जो ताइक्सु फूड पवेलियन के दरवाजे से अंदर आया था। टूटा हुआ, लॉन्ग रिटियन का दिल तेजी से धड़का और उसने लॉन्ग शियाताओ की तरफ देखा। जाहिर है लॉन्ग शियाताओ मुंह में बिस्किट लिए वांग चेन को घूर रही थी। भैया, अब वह अकेला है, मुझे परवाह नहीं, मैं उसे लात मार दूंगा। लॉन्ग शियाताओ ने केक को अपने मुंह में निगल लिया। बेहद दुखी चेहरे के साथ लॉन्ग रुरु को देखा और अपने छोटे हाथ से वांग चेन की ओर इशारा किया। वांग चेन को भी कुछ महसूस हुआ और उसने देखा, फिर वह मुस्कुराया और बिना किसी कारण के थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया। भाई, वह मुझ पर हंसा और वह मुझ पर फिर हंसा। लॉन्ग शियाताओ अब इसे सहन नहीं कर सका और ताइक्सू फूड पवेलियन में कुछ ताइक्सू शिष्यों के सामने वांग चेन की ओर दौड़ा। हाय, ये देखकर लॉन्ग रिटियन ने जल्दी से अपनी सफेद बांसुरी रख दी, असहाय होकर आह भरी और पीछे चल दिया। लॉन्ग शियाताओ इतनी गुस्से में थी कि वह उछल पड़ी और वांग चेन की छाती पर लात मार दी। और फिर तभी वांग चेन ने एक हाथ से उसके गुलाबी पीच रंग के कपड़े का पिछला कॉलर पकड़ लिया और उसके अंग छोटे कछुए की तरह फड़फड़ाने लगे। तुम आत्मा अंडा। लॉन्ग शियाताओ की बुद्धि पहले इंसानों जैसी थी और अब तो और भी ज्यादा इंसानों जैसी हो गई है। वह बस हुंडन शब्द को बार बार कोस सकती है। इस समय लॉन्ग रिटियन भी वांग चेन के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, जैसे कि उसकी बहन को परेशानी के बाद पकड़ लिया गया हो। कोई बात नहीं, लो ये लो। वांग चेन ने लॉन्ग शियाताओ को उठाया, जो केवल आत्मा निर्माण क्षेत्र में थी, और उदारता से उसे लॉन्ग रिटियन के सामने ले आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, तुम दूसरों की मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन अपनी बहन की नहीं। लॉन्ग शियाताओ चिल्लाए और वांग चेन की छाती पर फिर से लात मारने के लिए अपना पैर बढ़ाया। ये लात अब उसका जुनून बन गई थी। ज़ियाओ ताओ, चुप रहो, उसने बस अपनी बातों से तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुमने उसे अनगिनत बार नाराज किया है और अब सब कुछ भूल गया है। लॉन्ग रिटियन ने वांग चेन के हाथ से लॉन्ग शियाताओ को ले लिया और उसे कड़ी नजर से डांटा। वांग चेन ये दृश्य देखकर थोड़ा हैरान हुआ। लॉन्ग रिटियन का नाम सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह भाग्य का एक मजबूत और अजेय पुत्र हो, जो किसी से भी लड़ने की हिम्मत करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग रिटियन अलग होगा। उसके मूल्य बहुत सकारात्मक थे, जो अमर साधना की दुनिया में दुर्लभ था। वांग चेन को याद आया कि पिछले जन्म में उसने उसके साथ इसलिए व्यवहार किया था क्योंकि दूसरे पक्ष से उनके हितों को खतरा था, जिसके कारण उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। हालांकि प्रत्येक युद्ध के बाद यदि हितों का कोई टकराव नहीं होता है तो दोनों जब भी मिलेंगे अजनबी की तरह रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चाल नहीं चलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, मैं अभी व्यस्त हो जाऊंगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो फिर मिलेंगे। वांग चेन ने लॉन्ग रिटियन पर दयालुता से मुस्कुराया और जब उसने देखा कि उसने शांति से सिर हिलाया है तो वह उसके चारों ओर चला गया और ताइक्सू फूड पवेलियन की रसोई में चला गया। अमर खेती की दुनिया में बहुत सारा मांस है, सभी प्रकार के अजीब आकार और स्वाद के साथ, और यहाँ तक कि बिना मसाले के भी। इसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, मसालेदार और नमकीन स्वाद होता है। सौभाग्य से वांग चेन को पता था कि अपने पाक कौशल के अनुसार सामग्री के खाना पकाने के तरीकों को कैसे अनुकूलित और बेहतर बनाया जाए। अंत में वांग चेन ने ताइक्सू फूड पवेलियन से कुछ आध्यात्मिक अंडे, कुछ आध्यात्मिक पशु पसलियां और मांस, एक ड्रैगन हेड मछली और कुछ सब्जियां खरीदी। खरीदारी करने के बाद वांग चेन तुरंत वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने शेफ से रसोई उधार ले ली। अंततः रसोइयों की भ्रमित निगाहों के सामने बर्तन कड़ाही में इधर उधर बिखर गए और गड़बड़ हो गई। लेकिन जब यह अंततः बर्तन से बाहर आया, वहां उपस्थित सभी रसोई आश्चर्यचकित थे तथा लाल, चिकने तथा हल्के जले हुए पके हुए मांस को देखकर वे अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। वांग चेन ने अंततः विभिन्न व्यंजनों के लिए कुछ आकृतियां बनाई जिससे वे अच्छे दिखें और उन्हें भंडारण स्थान में रख दिया। घर जाओ। ताइक्सू फूड पवेलियन से बाहर निकलते हुए वांग चेन की पीठ धीरे धीरे लॉन्ग रिटियन की अजीब निगाहों के नीचे फीकी पड़ गई, क्योंकि वह धीरे से अपनी बहन को मना रहा था। सूरज डूबता है और सूर्यास्त का दृश्य लाल रंग में रंग जाता है। ताइक्सू सेंट मेडेन हॉल के अंदर जियांग लिंगजियन बिस्तर पर करवट लेकर लेट गई, अपने लाल होठों को थोड़ा सा भींच लिया और अपनी खूबसूरत आंखों से थोड़ा दुखी होकर दरवाजे की ओर देखा। शिष्य, तुम अंदर क्यों नहीं आते? क्या मैंने अभी बहुत कठोर गाली दे दी? मुझे आशा है कि मेरा शिष्य नाराज नहीं होगा। शिष्य जियांग लिंगजियन बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी खूबसूरत आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी और उसका दिल अधिक से अधिक चिंतित और असहज होने लगा। क्या शिष्य चला गया? औरतें तो हर जगह हैं। क्या होगा अगर मेरा शिष्य किसी और औरत के बहकावे में आ जाए? जियांग लिंगक्सियन का दिल धीरे धीरे चिंता से डर में बदल गया और अंततः वह उठकर बैठ गई। उसने बस छुआ, बस मेरे पैर छुए, उसने सीमा पार नहीं की। ये ठीक है, उसे दोष मत दो। जियांग लिंगक्सियन बिस्तर पर बैठ गई और अपने दिल में खुद को सांत्वना दी, फिर खड़ी हुई और उत्सुकता से वांग चेन को खोजने चली गई। क्रंच, जियांग लिंगक्सियन अभी एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि वांग चेन वापस आया और अगले ही पल धीरे से दरवाजा खोल दिया। वांग चेन ने रहस्यमयी अंदाज में अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए, मानो कुछ छिपा रहा हो। उसने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और जियांग लिंगजियान को मुस्कुराते हुए देखा। जियांग लिंगजियन के चेहरे पर शांति थी और उसने अपनी बेचैनी से राहत की सांस ली। उसकी आंखों की उदासी आखिरकार गायब हो गई। ज़ियाओक्सियांगक्सिया, अनुमान लगाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वांग चेन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके घर में चला गया। जियांग लिंगक्सियन के सामने खड़ा हो गया और रहस्यमय तरीके से बोला,
आड़ू फूल, गलत, असल में मैं कुछ भी नहीं लाया।
वांग चेन ने अचानक अपने खाली हाथ बढ़ाकर जियांग लिंगक्सियन के सामने रख दिए, जिससे वह दंग रह गई। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए ठिठक गई, मानो कुछ कहना चाहती हो पर झिझक रही हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह थोड़ी व्यथित और थोड़ी असमंजस में थी। तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ, यह मेरे पास है। ये देखकर वांग चेन का दिल धड़क उठा और एक सुंदर और उत्तम स्ट्रॉबेरी केक उसके हाथों में आ गया और उसे जियांग लिंगक्सियन के सामने रख दिया गया। स्ट्रॉबेरी केक के ऊपर एक खिलता हुआ चार पत्ती वाला आड़ू का फूल रखा गया है, जो सुंदर और उत्तम है। एक क्षण के लिए घर में स्ट्रॉबेरी केक की मीठी खुशबू फैल गई। दरअसल मैं गई नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाने गई थी। नाराज मत हो। वांग चेन ने अपने दाहिने हाथ में उत्तम स्ट्रॉबेरी केक पकड़ा और धीरे धीरे अपना बायां हाथ बढ़ाकर जियांग लिंगक्सियन की कमर को पकड़ लिया, जो वहां स्तब्ध होकर खड़ा था। वांग चेन का गर्म शरीर जियांग लिंगजियान से सट गया और वह उसके कान के पास झुक गया और उसकी हल्की चुंबकीय और कोमल आवाज ने जियांग लिंगजियान को धीरे से शांत कर दिया। वांग चेन ने अपने बाएं हाथ से जियांग लिंगक्सियन की पतली कमर पकड़ी, उसे मेज पर लाया और धीरे से स्ट्रॉबेरी केक मेज पर रख दिया। फिर वांग चेन ने विभिन्न व्यंजन निकाले, विशेष रूप से ड्रैगन हेड मछली, जिसका ड्रैगन हेड बेहद दबंग होना चाहिए। अब वांग चेन ने नुकीले दांत और शल्क हटा दिए हैं, इसे भाप में पकाया है और इसे आड़ू के फूलों और विभिन्न सामग्रियों से सजाया है, जिससे ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये बड़े सिर वाले मलेट जैसा दिखता है और इसका आकार भी बहुत सुंदर है। किसी कारणवश आपको अपना जन्मदिन नहीं पता, इसलिए मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मान लेते हैं आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने ये तुम्हारे लिए खुद बनाया है, इसलिए यह जरूर स्वादिष्ट होगा। वांग चेन ने बर्तन नीचे रख दिए और जियांग लिंगजियन को अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में कोमलता थी। उसने अपनी बाहें उसकी कमर में डाल दी और धीरे से बोला, वांग चेन। जियांग लिंगजियन थोड़ा चकित लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें लंबे समय तक चुपचाप वांग चेन को घूर रही थी और उसके दिल की गहराई में कुछ धीरे धीरे टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों घर में एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। उनकी गहरी और गहरी पुतलियां थोड़ी थोड़ी कांप रही थीं और वे एक दूसरे को बहुत देर तक घूरते रहे। जैसे ही वांग चेन अपना चेहरा थोड़ा झुकाकर जियांग लिंगक्सियन के होठों पर धीरे से चुंबन लेने वाला था, जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा सक्रिय रूप से आगे आया और जैसे जैसे वह धीरे धीरे पास आ रही थी, उसकी ठंडी और सुंदर आंखों में कुछ लहरें सी दिखाई दे रही थी। अंत में वांग चेन की थोड़ी चकित आंखों में जियांग लिंगक्सियन ने अपने लाल होंठों को उसके होंठों से दबाने की पहल की, गहराई से दबाया। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब जियांग लिंगक्सियन ने चुंबन की पहल की थी। उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से थोड़ी अपरिचित थीं और उसकी गर्म सांसें थोड़ी अव्यवस्थित थीं। नर्म और गर्म, वांग चेन ने अपने होठों पर अजीबपन महसूस किया और अचानक जियांग लिंगक्सियन की पतली और नर्म कमर के चारों ओर अपनी बाहों को कस दिया, उसे करीब खींच लिया। वो जियांग लिंगक्सियन को अचानक बल ने गले लगा लिया और वांग चेन को होठों पर चूमा। वह एक पल के लिए कराह उठी और दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी हिलती आंखों से देखा। रात्रि भोजन से पूर्व एक छोटी मिठाई के बाद, जैसे ही जियांग लिंगक्सियन का नाजुक शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया, अगले ही पल उसने महसूस किया कि वांग चेन ने अपने होंठ खोल दिए हैं और उसका दिमाग खाली हो गया। जियांग लिंगजियन ने वांग चेन को खाली नजरों से देखा, जैसे कि वह नहीं जानती थी कि वह क्या करना चाहता है, जब तक कि कुछ उसके होंठों और दांतों को छूता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। वो जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए चौंक गया और अवचेतन रूप से और सहज रूप से एक शर्माहट के साथ सुंदर चेहरे से दूर चला गया और उसके गाल पर चुंबन लिया गया। वांग चेन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके सुंदर चेहरे पर उसकी आंखें भ्रम में जियांग लिंगक्सियन को देखने लगी। ये भी पहली बार था जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी और उसकी हरकतें बहुत अपरिचित थीं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी जियांग लिंगजियन अचानक चकमा दे देगा। वांग चेन ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाई और एक पल के लिए अपने दिल में थोड़ा खालीपन महसूस किया, लेकिन वह क्रोधित नहीं था, बस थोड़ा असहज था। दोनों गर्म शरीर एक दूसरे से सट गए। जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह वांग चेन की बाहों में थी, लंबी और गर्म सांसें ले रही थी। काफी देर तक शांत रहने के बाद जियांग लिंगक्सियन को होश आया, जब उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर नर्म और चिपचिपापन गायब हो गया है। अपने होंठों को मुक्त करने के बाद जियांग लिंगक्सियन का मन धीरे धीरे स्पष्ट हो गया और उसे अंततः याद आया कि वांग चेन अभी क्या करना चाहता था। लेकिन मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि इसने अभी माहौल खराब कर दिया है। जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपना चेहरा पीछे कर लिया और उसकी खूबसूरत आंखें, जो चूमने के बाद थोड़ी कोमल हो गई थी, माफी के भाव के साथ वांग चेन की ओर देखने लगी।
मैं कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ। मैं अचानक,
वांग चेन ने जियांग लिंगशियांग की ओर देखा, जो नर्म आवाज में माफी मांगते हुए बोल रही थी, और थोड़ा उलझन महसूस करते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। इस बार वांग चेन कोई दिखावा नहीं कर रहा था। आखिरकार उसकी समझ में जियांग लिंग जियांग को शायद ये पसंद न आए। इस समय जियांग लिंगक्सियन वांग चेन की बाहों में थी, उसे देख रही थी, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा उदास लग रहा था। उसके होंठ थोड़े हिल रहे थे, वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन यह नहीं जानती थी कि क्या कहे।
चलो खाना खाते हैं, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया है, आओ और देखो कि मेरी खाना पकाने की कला में कितना सुधार आया है।
वांग चेन को पता था कि माहौल खत्म हो गया है, इसलिए उसने धीरे से जियांग लिंगक्सियन को छोड़ दिया और एक कुर्सी खींच ली। जियांग लिंगक्सियन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब उसने अपने शिष्य की जटिल मनोदशा देखी तो उसका दिल भी गड़बड़ हो गया। मैं बहुत मूर्ख था, जियांग लिंगक्सियन ने अपने दिल में खुद को दोषी ठहराया और वांग चेन की पिछली कार्रवाई से बचने के लिए थोड़ा पछतावा महसूस किया। वांग चेन को अपने हाथों को छोड़ते देख जियांग लिंगक्सियन की आंखें अनिच्छा से भर गईं, लेकिन वह केवल असहाय होकर उसे कुर्सी खींचते हुए देख सकती थी। जब जियांग लिंगक्सियन ने सोचा कि वांग चेन उसे बैठने का इशारा करेगा, तो उसने देखा कि वांग चेन अकेले कुर्सी पर बैठा है।
शिष्य, क्या ये गुस्सा है?
हाँ, गुस्सा होना सामान्य बात है, ये सब मेरी गलती है। अपनी खूबसूरत आंखों से ये दृश्य देखकर जियांग लिंगक्सियन ने मन ही मन खुद को दोषी ठहराया, थोड़ा परेशान महसूस किया और खुद को दोषी ठहराया। लेकिन ये देखकर कि वांग चेन ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जियांग लिंगक्सियन थोड़ा दुखी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। जियान जियान, यहाँ आओ। वांग चेन कुर्सी पर बैठे बैठे ही घूम गया और जियांग लिंगशियान की ओर हाथ हिलाया, जो उसकी बगल में खड़ी थी और उसकी आंखों में शिकायत का भाव था। इस समय जियांग लिंगक्सियन को थोड़ा व्यथित महसूस हुआ, वह उस दृश्य के बारे में सोच रही थी जहां उसका शिष्य क्रोधित हो गया होगा और एक कुर्सी खींचकर अकेले बैठ गया होगा। लेकिन जब उसने सोचा कि कारण अभी भी वह खुद ही थी, तो जियांग लिंगक्सियन ने अपना सुंदर चेहरा उठाया और वांग चेन की पुकार सुनने के बाद उसकी ओर देखा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, है ना? इधर आओ और मेरी गोद में बैठो, कैसा रहेगा? कुर्सी पर बैठे वांग चेन को जियांग लिंगक्सियन के दुख भरे विचार समझ आ गए। इशारा करने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसके पैर थपथपाए। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसे एहसास हुआ कि उसके सभी छोटे छोटे विचार उसे पता थे। लेकिन वांग चेन के दूसरे शब्द सुनने के बाद जियांग लिंगक्सियन का दिल बेवजह दुख गया और आश्चर्य के क्षण में बदल गया। पता चला कि शिष्य नाराज नहीं था, बल्कि उसकी गोद में बैठना चाहता था। हूँफ। जियांग लिंगक्सियन को जब ये बात समझ में आई तो वह एक पल के लिए मन ही मन खुश हुई, लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगी।
नहीं, ये ठीक नहीं है, उसके पैरों पर बैठो।
पैरों पर?
ठीक है, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे बैठने के लिए एक और कुर्सी निकाल देता हूँ।
वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के संकोची भाव को देखा और असहाय और निराश होकर कहा कि वह खड़े होने वाला था, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी थी। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की तरफ देखा, जो असहाय और खोई हुई सी खड़ी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर झिझक के भाव थे। उसने अपने लाल होंठों को थोड़ा भींचा और दांत पीस लिए। जियांग लिंगक्सियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन व्यवहारिक कार्यों से यह साबित कर दिया। उसने झट से अपने सुंदर सफेद हाथों से वांग चेन के कंधों को दबाया। फिर वांग चेन की उलझन भरी निगाहों में उसने उसे धीरे से उसकी सीट पर वापस धकेल दिया और फिर छोटे कदम उठाकर कमजोर ढंग से उसके पास चली गई। वांग चेन के पैर उसकी आंखों के ठीक सामने थे। जियांग लिंगक्सियन उससे 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर खड़ी थी, लेकिन बैठने को तैयार नहीं थी। उसका सुंदर चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो रहा था। वांग चेन को पता था कि वह इस समय इसे पहले ही स्वीकार कर चुकी है, लेकिन महिलाएं आमतौर पर अधिक संकोची होती हैं, तो उसे और ज्यादा सक्रिय होना पड़ा। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए चौंक गई और जब उसे होश आया तो वह पहले से ही वांग चेन के पैरों पर बैठी थी, उसका शरीर उसकी बाहों पर टिका हुआ था। जियांग लिंगक्सियन का दिमाग कुछ देर के लिए खाली हो गया, उसकी खूबसूरत आंखें जमीन पर घूर रही थी, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था, जिससे लोगों को उसे काटने का मन कर रहा था। जियांग लिंगक्सियन धीरे धीरे होश में आई और इतनी शर्मिंदा थी कि उसने वांग चेन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। वह उसकी गोद में बैठ गई और उसकी बाहों में कसकर लिपट गई। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की तरफ देखा, जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, और मुस्कुराए। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया और उसकी बैठने की स्थिति को थोड़ा पीछे कर दिया। जियांग लिंगक्सियन को केवल यह महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से वांग चेन के पैरों पर बैठी थी और केवल उसके पैरों की उंगलियां ही जमीन को छू सकती थी। इस समय जियांग लिंगक्सियन बेहद संयमित हो गई। उसने असहाय होकर अपने हाथ अपने पैरों पर रख लिए और उसका शर्माता हुआ चेहरा बस अपनी स्कर्ट के किनारे को देखने के लिए नीचे झुका हुआ था। ये देखकर वांग चेन ने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली और मुलायम बांह पकड़ ली और उसे अपनी गर्दन के पीछे रख दिया, जबकि उसने थोड़ा विरोध किया। वांग चेन की दृष्टि में जियांग लिंगशियान दाईं ओर मुंह करके खड़ा था। तो इस समय दोनों की अस्पष्ट मुद्रा यह है कि वांग चेन का बायां हाथ उसकी कमर के चारों ओर है और जियांग लिंगक्सियन का पतला दाहिना हाथ वांग चेन की गर्दन के चारों ओर है। यह अमर साधना की दुनिया में एक भूत की अस्पष्ट मुद्रा की तरह है जब वह लोगों को लुभाने और लुभाने की कोशिश कर रही होती है। जियांग लिंगजियन एक भूत नहीं है, लेकिन उसकी शर्मीली, कमजोर और असहाय उपस्थिति एक भूत से अधिक आकर्षक है। वांग चेन ने जियांग लिंगशियन की गर्माहट महसूस की, जिसका सुंदर चेहरा उसकी बाहों में था, और अचानक उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने हाथ बढ़ाकर मेज से एक स्ट्रॉबेरी उठा ली। फिर वांग चेन ने स्ट्रॉबेरी के बट से चार पत्ते निकाले और धीरे से उसे अपनी बाहों में लेकर जियांग लिंगक्सियन को सौंप दिया, मानो उसे खाना खिला रहा हो। आह, वांग चेन ने भी मुस्कुराया और शर्मीले जियांग लिंगक्सियन के सुंदर चेहरे को देखा, अपना मुंह थोड़ा खोला और ऐसी आवाज निकाली जैसे वह किसी बच्चे को दूध पिला रहा हो। जियांग लिंगजियन स्पष्ट रूप से बेहद शर्मिंदा थी। अपने कान के पास आह की आवाज सुनकर वह बस कमजोरी से अपने होंठ खोल पाए। ये देखकर वांग चेन ने धीरे से स्ट्रॉबेरी की नोक जियांग लिंगक्सियन के होठों के बीच रख दी और उसे एक छोटा सा टुकड़ा खाने दिया। बुरा शिष्य, तुम मुझे क्या समझते हो? जियांग लिंगशियन को अपने मुंह में स्ट्रॉबेरी का मीठा स्वाद महसूस हुआ। हालांकि वह मन ही मन वांग चेन को दोष दे रही थी, फिर भी उसे किसी कारण से थोड़ी खुशी महसूस हुई। वांग चेन ने एक और छोटी स्ट्रॉबेरी उठाई, लेकिन इस बार जियांग लिंगक्सियन ने आह की आवाज सुनी और स्ट्रॉबेरी की नोक को काटने के लिए अपने होंठ खोल दिए। अगले ही पल जियांग लिंगक्सियन ने अचानक महसूस किया कि उसकी ठोड़ी को धीरे से दबाया जा रहा है और उसका सुंदर चेहरा, जिस पर एक स्ट्रॉबेरी थी, धीरे धीरे और बलपूर्वक ऊपर उठाया गया। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन की ठोड़ी को बलपूर्वक ऊपर उठाया गया, वह चकित हो गई और उसने वांग चेन का सुंदर चेहरा देखा। वांग चेन ने अमर जैसी गहरी आंखों से उसे शांति से देखा और अगले ही पल उसने बिना किसी कारण के उसे हल्के से काट लिया। जियांग लिंगक्सियन के होठों और दांतों के बीच स्ट्रॉबेरी को धीरे से काटा गया और फिर उसकी चकित आंखों के सामने उसके लाल होंठ उसके होठों से सट गए। वांग चेन, जो कुर्सी पर बैठे थे, ने अपना बायां हाथ जियांग लिंगक्सियन की पतली कमर के चारों ओर रखा, अपने दाहिने हाथ से उसकी ठोड़ी को धीरे से चुटकी काटी और स्ट्रॉबेरी से उसे दबंगई से चूमा। जियांग लिंगक्सियन ने अपना दाहिना हाथ वांग चेन की गर्दन के चारों ओर डाल दिया, उसकी थोड़ी भींच दी गई और उसने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठा लिया। वह अचंभित होकर उसे घूर रही थी, जबकि वह उसे दबंगई से चूम रहा था। स्ट्रॉबेरी की मीठी सुगंध उनके मुंह में भर गई, जिससे जियांग लिंगक्सियन, जो अपना सिर ऊंचा उठाए हुए थी, अनजाने में अपनी कांपती हुई सुंदर आंखें बंद कर बैठी। इस बार जियांग लिंगक्सियन, जिसे वांग चेन ने प्यार करने के लिए मजबूर किया था, बेहद आकर्षक था, जिसने वांग चेन को चुंबन को गहरा कर दिया। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट। जब उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा तो दोनों ने जोर से सांस ली और यहां तक कि वांग चेन को भी थोड़ा उलझन महसूस हुई। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर वांग चेन की बाहों में धीरे से झुक गया। उसके हाथ मानो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गए थे और उसने धीरे से वांग चेन के सफेद कपड़े खींचे। ताजी हवा की गहरी सांस लेते हुए उसके नम लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपना गर्म चेहरा वांग चेन की गर्म गर्दन में दबा दिया। उसका नाजुक शरीर धीरे से उसके खिलाफ दबाया गया। खांसी, खांसी, खांसी। जियांग लिंगक्सियन की सफेद और कोमल गर्दन का गला थोड़ा सा घूम गया और वह घुटन के कारण दो बार खांसने से खुद को नहीं रोक सकी। इस समय जियांग लिंगजियन नशे में लग रही थी। उसने अपनी बाहों से वांग चेन की गर्दन को कमजोरी से पकड़ लिया और अपना थोड़ा धुंधला सा लाल चेहरा उसकी गर्दन में गड़ाकर उसे धीरे से रगड़ा। ये शांत वातावरण काफी देर तक कायम रहा। जियानिक्सियन, क्या तुम अभी भी खाना चाहते हो? वांग चेन ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और अंत में अपनी बाहों में रखे उस छोटे से मुलायम व्यंजन को देखा जो केवल उसका था और धीरे से बोला, शिष्य, मैं सोना चाहता हूँ। जियांग लिंगक्सियन ने चुपचाप अपना गर्म चेहरा वांग चेन की गर्म गर्दन में छिपा लिया और एक दबी हुई और थोड़ी चकित आवाज निकली। अच्छा, वांग चेन ने मेज पर पड़े बचे हुए व्यंजनों को देखा और असहाय होकर उन्हें एक एक करके भंडारण स्थान में रखने लगा, जहां समय रुक गया था। आज रात हम सब जियांग लिंगक्सियन को खाने जा रहे हैं, सब्जियां कौन खाएगा? वांग चेन ने अपने होठों और मुंह पर मीठे स्ट्रॉबेरी के स्वाद को महसूस किया और जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह स्ट्रॉबेरी की मिठास को दबा नहीं सका। मेज पर सभी बर्तन रखने के बाद वांग चेन ने नींद में सो रही जियांग लिंगजियन को दोनों हाथों से धीरे से उठाया। जियांग लिंगक्सियन, जिसे उठा लिया गया था, ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी बंद कर ली और थोड़ा असुरक्षित महसूस किया क्योंकि उसने अपनी बाहों से वांग चेन को कसकर गले लगा लिया, उसकी बाहों पर झुक गई। कुछ हद तक चकित जियांग लिंगक्सियन ने अपने जूते उतार कर बिस्तर पर रख दिए। वांग चेन ने भी अपने जूते उतार दिए और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही वह लेटा, वांग चेन ने महसूस किया कि जियांग लिंगक्सियन तुरंत उससे चिपक गया और उसे कसकर गले लगा लिया। शिष्य, गुरु को मत छोड़ना, कभी नहीं, गुरु को कभी मत छोड़ना, ठीक है? जियांग लिंगक्सियन ने अपनी पतली बाहों को वांग चेन की कमर के चारों ओर लपेट लिया और बेहद असुरक्षित महसूस करते हुए उसने अपना सुंदर चेहरा उसकी छाती से सटा दिया और फुसफुसाया। वांग चेन के चुंबन ने जियांग लिंगक्सियन को उसकी सुरक्षा की भावना को तुरंत खो दिया और वह बहुत डर गई कि वांग चेन भविष्य में उसे छोड़ देगा। अच्छा, वांग चेन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके बालों को धीरे से सहलाया तथा उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लेकिन जियांग लिंगक्सियन को पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी और उसके सुंदर चेहरे से धीरे धीरे गर्म आंसू बहने लगे जो वांग चेन की छाती से दबा हुआ था। वांग चेन ये देखकर दंग रह गया, लेकिन जियांग लिंगक्सियन इस बार बहुत धीरे से रोया, बिना कोई आवाज किए, बस शिकायत के आंसू बहाए। रो मत, रो मत। वांग चेन ने जल्दी से अपना हाथ उसके चेहरे पर बढ़ाया, धीरे से उसके आंसू पोंछे और उसे धीरे से मनाया। जियांग लिंगक्सियन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी कमर को गले लगा लिया। उसकी बंद खूबसूरत आंखों में आंसू थे और धीरे धीरे उसने बात करना बंद कर दिया। समय के साथ जियांग लिंगक्सियन की सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर जाहिर था कि वह सो गई थी। ये देखकर वांग चेन ने हाथ बढ़ाया और धीरे से रजाई खींचकर खुद को और उसे ढक लिया। फिर उसने जियांग लिंगक्सियन को थोड़ा और कसकर गले लगाया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे हल्की नींद में सो गया। आठ जंगल महाद्वीप रेगिस्तान यूए संप्रदाय के भीतर, जहां सभी इमारतें चांदनी में चमकती हैं, एक शयन कक्ष है जो पूरी तरह से एक संरचना से घिरा हुआ है। ये शयन कक्ष मूलतः 500 साल पहले यू संप्रदाय पवित्र युवती हॉल था, या इसे अब पुराना यू संप्रदाय पवित्र युवती हॉल कहा जा सकता है। शयन कक्ष बेदाग और बेदाग था, सिवाय एक अजीब सी खूबसूरत महिला के जो खिड़की से आती मंद चांदनी में बेजान लग रही थी। सू जियान्यू ने घर में पुराने लेकिन बेदाग सामान को देखा और उसकी बेजान आंखों में कोई रंग नहीं था। सरसराहट सू जियान्यू कुछ सुस्त शरीर के साथ धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी साधना का स्तर, जो 500 वर्षों से आत्मा सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर बना हुआ था, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। टैप टैप टैप। सू जियान्यू, जिसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, वह हर दिन केवल खिड़की के पास खड़ी रह सकती है और अपने सुंदर चेहरे के साथ खिड़की के बाहर बड़े चंद्रमा को घूर सकती है। जब से 500 साल पहले उसने उस युवक के साथ संभोग किया था, तब से उसके शरीर में चंद्र सार तेजी से नष्ट हो रहा है और उसकी साधना थोड़ी भी आगे बढ़ने में असमर्थ रही है। यू संप्रदाय पुरुषों के बिना एक संप्रदाय है, क्योंकि उनके कौशल का अभ्यास बहुत जल्दी किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ी खामी है, वह यह है कि वे अपना कौमार्य नहीं खो सकते हैं। अन्यथा अपना कौमार्य खोने के बाद आपकी साधना में कोई प्रगति करना कठिन हो जाएगा और यहां तक कि यू संप्रदाय के शिष्य भी आपको अजीब निगाहों से देखेंगे। हजारों वर्षों से यू संप्रदाय के साधारण शिष्य ऐसे ही रहे हैं। यू संप्रदाय की पवित्र युवती की तो बात ही छोड़िए, जो हमेशा हर चीज में एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो सू जियान्यू के कौमार्य खोने के लगभग 100 साल बाद उसके गुरु ने पाया कि उसकी साधना में बहुत कम प्रगति हो रही है, इसलिए उन्होंने उसके शरीर की जाँच की। अंतिम परिणाम वही है जो हम अभी देख सकते हैं। मालिक, जो अपनी प्रतिष्ठा खोने से डर रहा था, ने सू जियान्यू को बंद कर दिया। 400 साल, पूरे 400 साल उसका मालिक उसे आत्महत्या करने या घर छोड़ने का भी हक नहीं देगा। सू जियान्यू ने अब किसी को दोष नहीं दिया, न ही उसने उस युवक को दोष दिया जो शायद कई वर्षों पहले मर चुका था, क्योंकि उसका दिल बहुत पहले ही मर चुका है। सू जियान्यू की मृत आंखों में दूर आसमान में बड़ा सफेद और हल्का नीला चांद दिखाई दे रहा था। आप इसे केवल दूर से देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सू जियान्यू यू संप्रदाय के पुराने पवित्र मेडेन हॉल की खिड़की के पास एक मानव मूर्ति की तरह बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़ी रही। अज्ञात समय के बाद आकाश में लटका हुआ बड़ा चंद्रमा धीरे धीरे अस्त हो गया और क्षितिज से धीरे धीरे प्रकाश उठने लगा। उसी समय आठवें निर्जन महाद्वीप में एक और अधिक शानदार ताइक्सु पवित्र युवती महल ने एक बिल्कुल अलग दृश्य प्रस्तुत किया। वांग चेन गर्म रजाई में गहरी नींद सो रहा था। जियांग लिंगक्सियन के गर्म और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में शांति से सोते हुए महसूस करते हुए उसकी चेतना धीरे धीरे वापस लौट आई। वांग चेन ने धीरे से आंखें खोली तो उसका मन थोड़ा उलझन में था। वह काफी देर तक छत को घूरता रहा, फिर रुक गया। चार पत्ती वाली ज्वाला घास के पकने में अभी लगभग 4 दिन बाकी हैं। लगता है मुझे आज ही ज़ियाओ किंगक्सु को रेगिस्तान ले जाना होगा। वान चेन ने अपनी आंखें नीचे करके जियांग लिंगजियन को देखा जो अपने खूबसूरत चेहरे को उसकी बाहों में दबाए हुए चुपचाप सो रही थी और उसने उसे दो बार धीरे से चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया। जियांग लिंगजियन ने इसे महसूस कर लिया था और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन सौभाग्य से वह नहीं जागी। ये देखकर वान चेन ने उसके सुंदर चेहरे के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दिया, जो कोमल तो था लेकिन मोटा नहीं था, और उसे गर्म रखने के लिए सावधानी से गले लगा लिया। वैसे मुझे नहीं पता कि पिछली बार ताइक्सू ट्रेजर पवेलियन से मुझे जो दो खजाने मिले थे उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। वांग चेन ने जियांग लिंगजियन को अपनी बाहों में सोते हुए देखा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सिस्टम पैनल खोला। वांग चेन, संविधान, अराजकता नौयांग दिव्य शरीर, क्षेत्र दानहाई, क्षेत्र स्तर एक सफलता संभव, गुयुआन क्षेत्र स्तर छह के रूप में प्रच्छन्न, कौशल कैस नाइन यांग दिव्य कला, भंडारण स्थान जियांग लिंगक्सियन के 10 लाख शीर्ष ग्रेट स्पिरिट स्टोन, 200 शीर्ष ग्रेट स्पिरिट स्टोन, छद्म सम्राट स्तर सम्राट बैनर, पवित्र स्तर सम्राट जुवानडिंग, सुपर रेज कार्ड, ताइक्सू ब्रोकन तलवार, ज्वाला कवच, कियानकुन पर्वत और समुद्री मानचित्र, उद्गम बिंदु 11,55,288, समग्र मूल्यांकन दानहाई दायरे के पहले स्तर पर एक मानव मुर्गी। वांग चेन ने सबसे पहले अपने पास बचे 10 लाख से अधिक मूल बिंदुओं की जांच की और फिर उसने भंडारण स्थान की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। ज्वाला कवच, वांग चेन जब भंडारण स्थान में वस्तु पर प्रदर्शित नाम को देखा तो वह थोड़ा दंग रह गया और उसकी आध्यात्मिक भावना ने भंडारण स्थान की खोज की। भंडारण स्थान में तैरते हुए सुस्त धूल भरे कवच को देखकर वांग चेन ने भंडारण स्थान में अपनी आध्यात्मिक भावना से अपना सिर खुजलाया। सिस्टम, इस तथाकथित फ्लेम आर्मर को सक्रिय करने के लिए कितने मूल बिंदुओं की आवश्यकता है? डिंग, इंपीरियल ग्रेड टॉप ग्रेड फ्लेम आर्मर, एक्टिवेशन के लिए 100,000 ओरिजिन पॉइंट्स की आवश्यकता है। क्या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं? चाहे, वांग चेन की आत्मा ने स्टोरेज स्पेस में उसके सामने आए दो शब्दों हाँ और ना पर गौर किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उन पर क्लिक कर दिया। हाँ, चूंकि मुझे ये पहले ही मिल चुका है, मैं 100,000 ओरिजिन पॉइंट्स को इंपीरियल ग्रेड टॉप ग्रेड आर्मर के एक सेट से बदल सकता हूँ। कितना बड़ा मुनाफा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं। वांग चेन के हाँ पर क्लिक करने के बाद उसने देखा कि भंडारण स्थान में तैरता हुआ ज्वाला कवच सक्रिय होना शुरू हो गया। भंडारण स्थान में हवा के बिना कवच के पूरे सेट पर जमी धूल उड़ने लगी। अंततः एक गहरे भूरे रंग का कवच प्रकट हुआ जिस पर प्रबल ज्वाला के पैटर्न उभरने लगे। अंततः कवच के पूरे सेट के पांच पक्ष सामने पीछे बाएं दाएं और अंदर घने लौ पैटर्न से ढके हुए थे और अंततः धमाका वुश, एक चौंकाने वाली ज्वाला जो अचानक पूरे जलते हुए कवच से आकाश में उठी अंततः तेजी से फैल गई और एकत्रित हो गई। इस दृश्य ने वांग चेन को भयभीत कर दिया जो यांग काई के बगल में खड़ा था और वह आकाश में उठती लपटों से चौंक गया और पीछे की ओर तैरने लगा। हाहाहा, मानव मशीन मेजबान आत्मा विनाश से नहीं बल्कि इससे डरता है। सिस्टम की उपहासपूर्ण आवाज अचानक भंडारण स्थान में गूंज उठी जिससे वांग चेन की आत्मा का चेहरा काला पड़ गया। सिस्टम, जब अगला चाइल्ड ऑफ लक मिशन सामने आए तो कृपया इनाम को ऐसे में बदल दे जो आपको रूपांतरित होने की अनुमति दे। ये संभव नहीं है, मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता हूँ कि मेरे लिए बदलाव लाना नामुमकिन है। इसके अलावा इस प्रकार का कार्य आमतौर पर मुख्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ क्यों? ये सुनकर सिस्टम थोड़ा भ्रमित हो गया और उसके चेहरे पर ऐसा आश्चर्य हुआ मानो उसके दिमाग में तीन प्रश्न चिन्ह उभर आए हों। क्योंकि तब तुम्हारा बांध तुम्हें पीट सकता है और तुम अब भी पूछ रहे हो कि क्यों? भंडारण स्थान में वांग चेन की आत्मा ने आगे की ओर इशारा किया और चिल्लाया जैसे कि सिस्टम उसके सामने खड़ा था। बदबूदार मेजबान, यहां से निकल जाओ। वांग चेन ने सिस्टम की भौंकने की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आत्मा को ज्वाला कवच पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ाया जिसका रंग पूरी तरह से बदल गया था। ये सही है, इसे ही ज्वाला कवच कहा जाता है। वांग चेन ने ज्वाला कवच को देखा जो प्रभावशाली ज्वाला पैटर्न से ढका हुआ था और बिना उपयोग किए भी छूने पर गर्म महसूस हो रहा था और खुद से बुदबुदाया। जब आप चार पत्ती वाली ज्वाला घास को हथियाने के लिए रेगिस्तान में जाएं, तो इस ज्वाला कवच को पहने और इसे पकड़ लें। मुझे नहीं पता कि इस ज्वाला कवच की रक्षात्मक शक्ति क्या है या इसमें क्या क्षमताएं हैं। ऐसा लगता है कि मैं इसे केवल समय आने पर ही महसूस कर पाऊंगा। वांग चेन की आत्मा की आकृति ने भंडारण स्थान में अंतिम बार ज्वाला कवच की सतह पर दस्तक दी, फिर घूम गई और धीरे धीरे दूसरी तरफ तैर गई। अंततः वह एक लुढ़के हुए क्षैतिज चित्र के सामने रुक गया। भंडारण स्थान आइटम कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र के नाम के अनुसार अंदर कुछ होना चाहिए, है ना? वांग चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे लुढ़का हुआ कियानकुन पर्वत और समुद्री मानचित्र खोला। कियानकुन पर्वत और समुद्र का नक्शा आयताकार है, लगभग 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा। सतह धूल से ढकी हुई है और तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती। हाँ, किसी कारण से पेंटिंग की सतह पर धूल को देखकर वांग चेन अवचेतन रूप से नीचे झुका और उसे उड़ा दिया। हाहाहा, बेवकूफ मेजबान, पूरी तरह से गतिहीन धूल ब्रह्मांड पर्वत और समुद्र मानचित्र को देखते हुए सिस्टम ने वास्तव में इस पर हंसने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। चले जाओ, मैं तो बस तुम पर हंसना जानता हूँ, धिक्कार है। इसे एक्टिवेट करने के लिए कितने ओरिजिन पॉइंट्स चाहिए? वांग मिंग ने बाहर से तो कोसा, लेकिन वह अभी भी अंदर से थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए वह केवल विषय बदल सकता था और गुस्से से पूछ सकता था। डिंग, सेंट ग्रेड, उच्च ग्रेड की आनकुन पर्वत और समुद्री मानचित्र, जिसमें एक विशाल ब्रह्मांड और एक जीवंत छोटी दुनिया समाहित है। सक्रियण के लिए 10,00,000 मूल बिंदुओं की आवश्यकता है। डिंग, सक्रिय करें। चाहे चुपके से कुत्ते के मेजबान को बता दो कि अब से तुम जियांग लिंग जियांग के साथ अंदर जा सकते हो। इस तरह तुम चाहे कुछ भी करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सच कहूं तो मेरा मन तो कर रहा है, पर मैं तो सुबह की क्लास में हूं, ये इतना महंगा क्यों है? कोई बात नहीं, चलो चल देते हैं। वांग चेन ने चार शब्दों पवित्र ग्रेड सुप्रीम को देखा और फिर भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और अपने पास बचे हुए केवल 1,000,000 मूल बिंदुओं का उपयोग किया। जैसे ही वांग चेन ने हां पर क्लिक किया, उसके सिस्टम पैनल पर 10,55,288 मूल बिंदु अचानक 55,288 बिंदु बन गए। तभी वांग चेन की दृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी के पहाड़ों और समुद्रों का तैरता हुआ नक्शा अचानक हिंसक रूप से हिल गया। कियानकुन पर्वत और समुद्र चाट पर जमी सारी धूल को हिलाकर अलग कर दिया गया, जिससे गहरे भूरे रंग का कियानकुन पर्वत और समुद्र चाट प्रकट हो गया। लेकिन ये सब नहीं है, मैंने देखा कि कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र पर चित्र से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बाएं से दाएं सक्रिय हो गई और यह बेहद उज्ज्वल थी। अंततः कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र का वास्तविक स्वरूप सामने आया, चित्र स्पष्ट था और छवि अत्यंत सुंदर थी। वांग चेन ने स्पष्ट रंग परतों वाली तस्वीर को देखा और भंडारण स्थान में छोटी आत्मा की आकृति दंग रह गई। मैंने देखा कि लंबे कियानकुन पर्वत और समुद्री मानचित्र का ऊपरी आधा हिस्सा पूरी तरह से समुद्री नीला था और उसके ऊपर कई अज्ञात बड़े पक्षी उड़ रहे थे। कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र के निचले आधे हिस्से में ऊंचे पहाड़ और बीच में एक बड़ा मैदान है, जिसमें अनगिनत फूल, पौधे, पेड़ और यहां तक कि खरगोश भी इधर उधर दौड़ते हैं। खास बात यह है कि यहां सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक विशाल झरना बहता है। बड़े झरने के नीचे बहती नदी घुमावदार होकर अंततः ऊपर समुद्र से मिल जाती है। कई हिरण नदी के किनारे पानी पी रहे हैं। इसके अलावा समुद्र का पानी और नदी का पानी स्पष्ट रूप से स्तरीकृत है, क्योंकि बीच में जहां नदी समुद्र से जुड़ती है, समुद्र गहरा नीला है और नदी हल्का नीला है। होस्ट, अब आप अंदर जा सकते हैं। सचमुच इतना उन्नत? वांग चेन की आत्मा भंडार से निकलकर उसके शरीर में लौट आई। अंततः उसने कियानकुन लैंडस्केप पेंटिंग निकाली और उसे बिस्तर के ऊपर तैरा दिया। मैं इसमें कैसे प्रवेश करूं? वांग चेन ने चुपचाप सो रहे जियांग लिंगक्सियन को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी गहरी आंखें उसके और जियांग लिंगक्सियन के ऊपर तैरती हुई वस्तु को घूर रही थी। वह उलझन में था। जैसे ही वांग चेन के मन में कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र में प्रवेश करने का विचार आया, कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र ने अचानक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित किया। अंततः उसने वांग चेन की बाहों में सो रही सुंदरी को नजरअंदाज कर दिया, उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और फिर अचानक पीछे हट गया। वाह, ताइक्सू सेंट मेडेन पैलेस में बिस्तर के ऊपर तैरते हुए कियानकुन पर्वत और समुद्र मानचित्र की रोशनी थोड़ी मंद हो गई और अंततः धीरे धीरे शांत हो गई। वांग चेन को अपनी आंखों के सामने एक चमक महसूस हुई और उस पर भारहीनता का एहसास छा गया। जब अंततः उसकी दृष्टि पुनः अवरुद्ध हो गई तो वांग चेन स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है, ये कहां से आया? वांग चेन घास के एक टुकड़े पर नंगे पैर खड़ा था और अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से फूलों, पौधों और पेड़ों से भरे आसपास के दृश्य को देख रहा था। टकरा जाना। लगभग 100 मीटर दूर एक बड़ा झरना नदी की सतह पर पानी छिड़क रहा था और हवा की आवाज के साथ एक तेज आवाज सुनाई दे रही थी। टैप टैप टैप, उसके चिल्लाने से उसके पास घास खा रहे कई छोटे खरगोश और अन्य मुर्गियां टक टक की आवाज करते हुए भागने लगी। वांग चेन ने इस अजीब दृश्य को देखा कि इस छोटी सी दुनिया में जीवित प्राणी थे और दो कदम चलने, नीचे बैठने और उसे भीगे फूलों और पौधों को छूने से खुद को रोक नहीं सका। जल्दी करो, मुझे वापस जाने दो। लेकिन अगले ही पल जमीन पर उकड़ू बैठे वांग चेन को अचानक कुछ सूझा। उसका चेहरा धीरे धीरे डर से भर गया और वह जोर से चिल्लाया, फुफ। जैसे ही वांग चेन ने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति अचानक चमक उठी और आकाश में बादलों की ओर दौड़ती हुई प्रकाश की धारा में बदल गई। अंत में जियांग लिंगक्सियन की आंखों में, जो अभी अभी ताइक्सू पवित्र युवती महल में बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। उसके सिर के ऊपर से कियानकुन पर्वत और समुद्री मानचित्र से एक आकृति निकली और उसकी ओर गिर पड़ी। स्नैप, वांग चेन को केवल यह महसूस हुआ कि वह एक गर्म आलिंगन में गिर गया और वे दोनों अचानक बिस्तर पर गिर गए। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन को चोट पहुंचाने से डरता था, इसलिए वह इतना डर गया था कि वह जल्दी से उठना चाहता था। लेकिन वांग चेन को अचानक अपनी कमर के चारों ओर एक खिंचाव महसूस हुआ और उसका शरीर जोर से पीछे की ओर खिंच गया और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। जैसे ही वांग चेन का शरीर जियांग लिंगक्सियन के खिलाफ दबा, उसने अपना सिर उसके गर्म कान और कंधे में दबा दिया। वांग चेन घबराहट के कारण जियांग लिंगक्सियन के दिल की धड़कन को भी महसूस कर सकता था। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के हल्के से घबराए हुए गले लगने का एहसास किया और उसकी हरकतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। उसने भी अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगा लिया। यह महसूस करने के बाद कि जियांग लिंगक्सियन का आतंक धीरे धीरे शांत हो गया है, वांग चेन ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उसे अपनी बाहों में देखा। पहली चीज जो उसने देखी वह थी जियांग लिंगक्सियन का खूबसूरत चेहरा, जिस पर शिकायत और घबराहट के भाव थे, और उसकी खूबसूरत आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह रोने वाली हो। कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। वांग चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने शरीर को ढंक लिया और बिस्तर को सहारा दिया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके गुलाबी चेहरे को धीरे से थामकर हल्के से सहलाया। अपने पिछले जन्म में तो आप एक गुरु थे, इस जन्म में आप एक छोटे शिष्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसे धीरे से रगड़ा और नीरस माहौल को तोड़ने के लिए एक हल्की मुस्कान दिखाई। जियांग लिंगक्सियन ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गई, मानो शब्दों ने उसके दिल को छेद दिया हो और वह और भी असहज महसूस करने लगी। जियांग लिंगक्सियन ने धीरे धीरे अपने निचले होंठ को दबाया, शिकायत और बेचैनी के भाव के साथ वांग चेन के हाथों से मुक्त हुई और धीरे धीरे अपना सुंदर चेहरा वांग चेन के बाएं कंधे पर गर्दन में छिपा लिया। क्योंकि आपके पिछले जन्म में आप मर गए थे, जियांग लिंगक्सियन की दबी हुई आवाज वांग चेन के कान के पास सुनाई दी, और जब उसने ये कहा तब भी उसकी ठंडी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वांग चेन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? इस समय वांग चेन को अचानक याद आया कि जब वह अपने पिछले जीवन में जीवित था तो जियांग लिंगक्सियन स्पष्ट रूप से अभी तक मरा नहीं था, और उसे अजीब लगा। जियांग लिंगक्सियन वांग चेन की बाहों में सिमट गई और उसने स्पष्ट रूप से ये शब्द सुने, लेकिन उसने अपना सुंदर चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया और चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि उसके शिष्यों को पता चले कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली थी। दस्तक दस्तक दस्तक। सौभाग्य से इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। दोनों बिस्तर पर एक दूसरे से लिपट गए और आंखें हल्की सी घुमाकर देखने लगे। ये ताइक्सु संप्रदाय का गुरु होना चाहिए जो आ गया है। वांग चेन ने पहले ही जियांग लिंगक्सियन की पतली और मुलायम कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी थी, दरवाजे की ओर देखते हुए और पाठ करते हुए अपने शरीर को हल्के से उस पर दबा रहा था। केवल इतना ही नहीं बल्कि मेरे स्वामी क्या? जियांग लिंगक्सियन की दबी हुई आवाज सुनकर वांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसका दिल बेवजह धड़कने लगा। अरे नहीं, कल मैंने जो मेज के नीचे रखा था वह दिखाई नहीं देगा, और अब वे मुझे गिरफ्तार करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, है ना? ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे पैर छूने पर जोर दिया। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन का दिमाग एक पल के लिए ठहर गया। उसने वांग चेन से थोड़ी शिकायत की और अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा गई। अंत में जियांग लिंगक्सियन के बेहद अनिच्छुक होने के कारण दोनों के पास एक दूसरे को छोड़ने और बिस्तर से उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ने अपने बिखरे हुए कपड़ों को व्यवस्थित किया, एक दूसरे को चुपचाप देखा और शांत होने का नाटक किया। अंत में वांग चेन ने जल्दी से कियानकुन पर्वत और समुद्र के नक्शे को एक तरफ रख दिया, कुर्सी पर चला गया और बैठ गया, आधा कप चाय डाली और उसे मेज पर रख दिया। जब जियांग लिंगक्सियन ने देखा कि वांग चेन ने सामान पैक करना और तैयारी लगभग पूरी कर ली है तो वह दरवाजा खोलने गई। क्रंच, जैसे ही दरवाजा खुला वांग चेन को अचानक लगा कि दो बेहद ठंडी आंखें उसे घूर रही हैं। गुरु, संप्रदाय गुरु, क्या हो रहा है? जियांग लिंगक्सियन ठंडे और उदासीन भाव से दरवाजे पर खड़ा था, हान जून और जियो किंगक्सु को देख रहा था और ठंडे स्वर में पूछा, क्या वह कल तुम्हारे घर पर सोया था? सुंदर युवक जियो किंगक्सु ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में वांग चेन की ओर इशारा किया और भ्रम में फुसफुसाया, नहीं, वह आज मुझसे कुछ पूछने आया था। मास्टर, अंदर आइए। जियांग लिंगक्सियन की बात खत्म होने के बाद उसने दरवाजा खोला और हान जून को अंदर आकर बैठने का इशारा किया। तुम बाहर प्रतीक्षा करो। हान जून ने जियाओ किंगक्सु को ठंडी नजर से देखा, ठंडी आवाज में बोला और फिर घर में चला गया। महिला, स्नैप। इससे पहले कि जियो किंगक्सु अपना ठीक है जवाब पूरा कर पाता, जियांग लिंगक्सियन ने दरवाजा बंद कर दिया। स्पष्ट रूप से वह नहीं चाहती थी कि वह अंदर आए। वांग चेन एकमात्र ऐसा आदमी था जो कभी उसके कमरे में आया था, और वह हमेशा केवल वांग चेन को ही अंदर आने देती थी। नमस्ते ग्रैंड मास्टर। हान जून को अपने सामने बैठा देखकर वांग चेन जल्दी से खड़ा हो गया और सलामी दी, फिर बैठने के बजाय खड़ा हो गया। जियांग एब दोनों संप्रदायों के बीच युद्ध लगातार गंभीर होता जा रहा है और अन्य दो प्रमुख संप्रदाय भी इसमें शामिल होने की फिराक में हैं। तुम्हें अब मेरे साथ आना होगा। हान जून कमरे में प्रवेश करने और बैठने के बाद उसने चाय के आधे भरे कप पर नजर डाली, फिर वांग चेन के जवाब में सिर हिलाया, जियांग लिंगजियन की ओर देखा और बोला। हान जून ने कभी नहीं सोचा होगा कि जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में मौजूद दो लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। सौभाग्य से गुरुदेव अपने शिष्य को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ नहीं है। सौभाग्य से हान जून मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ नहीं है। सौभाग्य से वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ने राहत की सांस ली जब उन्होंने सुना कि हान जून किसी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने अभी अपने शिष्य के बारे में प्रश्न पूछना समाप्त नहीं किया है। गुरुजी, क्या आप एक क्षण रुक सकते हैं? जियांग लिंगजियन के हाव भाव उदासीन और स्वाभाविक थे। उसने शांत और ठंडी आंखों से हान जून को देखा, थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। ये सुनकर हान जून ने अपनी ठंडी आंखों से मेज पर रखे आधे कप चाय पर चुपचाप नजर डाली, फिर जियांग लिंगजियन की ओर देखा। किसी कारणवश इस समय कमरे का वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया। अंत में हान जून ने अपने ठंडे और सुंदर चेहरे से धीरे से सिर हिलाया, मुड़ा और दरवाजे की ओर चला गया। उसके ठंडे सफेद बाल हल्के से लहरा रहे थे। जब वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ने सोचा कि हान जून सीधे चले जाएंगे, तो उन्होंने उसे अचानक दरवाजे पर रुकते देखा। वैसे जियानेर, क्या आपने अपने शिष्य को सम्राट का बैनर दिया था जिसे आपने एक सुरक्षात्मक जादुई हथियार के रूप में जीता था? हान जून थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ा और पीछे मुड़कर देखा। उसकी ठंडी आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं, क्योंकि उसने पास ही खड़े दो लोगों पर नजर डाली। मास्टर को लगता है कि सम्राट बैनर में सांस को दबाने की प्रबल क्षमता है। चूंकि आपके पास पहले से ही फ्रॉस्ट स्काई ब्रेसलेट है, इसलिए सुरक्षा के लिए उसे देना एक अच्छा विचार होगा। क्रंच, हान जून ने ठंडी आवाज में बोलना समाप्त करने के बाद वांग चेन और जियांग लिंगजियन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वांग चेन, जियांग लिंगजियन, जियांग लिंगजियन वहीं खड़ी होकर पास ही बंद दरवाजे को देख रही थी। वह अपने निचले होंठ को हल्के से काटने से खुद को रोक नहीं पाए, अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट महसूस कर रही थी। वांग चेन भी थोड़ा उलझन में था। हान जून की बातों से उसने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि हान जून उसी चीज के बारे में बात कर रहा था जो उसने पिछली बार रजाई में छिपाई थी। वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपना सिर घुमाया जैसे कि उन्हें कुछ महसूस हुआ हो, और उनकी गहरी और सुंदर आंखें धीरे धीरे मिली। वातावरण 10 सेकंड से अधिक समय तक शांत रहा। कोई बात नहीं, मेरे मालिक के सामने कुछ नहीं हुआ। जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, और इस डर से कि वह इस बारे में ज्यादा सोचेगा, उसने उसे दिलासा देने के लिए कुछ फुसफुसाया। अच्छा, ऐसा ही लगता है, हम उसके सामने निर्दोष हैं। एक शिष्य का गुरु के बिस्तर पर सोने में क्या बुराई है? तुमने कुछ नहीं किया है ना? वांग चेन को माहौल शांत लगा, इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और खुश होने का नाटक करते हुए हाथ हिलाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने सुना, उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए और उसकी खूबसूरत आंखें शर्मिंदगी से थोड़ी झुक गईं। मूर्ख शिष्य, जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की निगाहों से बचने के लिए अपना सुंदर चेहरा थोड़ा सा घुमाया और अपने दिल में धीरे से कहा, तो फिर जियानिक्सियन, क्या अब तुम हान जून के पीछे पीछे जाकर चीजों से निपटोगे? वांग चेन चुपचाप जियांग लिंगजियन के करीब गया, उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और उलझन में पूछा। जियांग लिंगक्सियन ने दरवाजे की ओर देखा और थोड़ा विचलित होकर सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक महसूस किया कि कोई धीरे से उसकी कमर को गले लगा रहा है। नहीं, मेरी मालकिन अभी भी बाहर हैं और दरवाजा बंद नहीं है। अगर उन्होंने अचानक दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा? जियांग लिंगक्सियन का शरीर थोड़ा अकड़ गया और उसने अपने पतले और सुंदर हाथों का उपयोग करके वांग चेन की बाहों को खींच लिया जो उसकी कमर को जकड़े हुए थे। तो फिर इसे ताला लगा दो। नहीं नहीं, अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो ऐसा लगेगा कि हम चोरी कर रहे हैं। जियांग लिंगक्सियन थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसने वांग चेन की बाहें पकड़ रखी थी। जब उसकी बात खत्म हुई तो शर्म के मारे उसने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए रेगिस्तान जाना है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देर के लिए रोक लूंगा, ठीक है? वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की पतली लेकिन मांसल कमर को गले लगाया, उसके सामने आया और उसके चेहरे की ओर देखा। क्या आप मेरा काम खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं और फिर मुझे अपने साथ जाने दे सकते हैं? ये सुनकर जियांग लिंगजियन का संघर्ष धीरे धीरे कम हो गया और वह बेवजह उदास हो गई। उसने अपनी खूबसूरत लालसा भरी आंखों से वांग चेन को देखा। कोई बात नहीं छोटे मालिक, अच्छे बनो, सोचो, तुम्हें कुछ करना है और वैसे भी वापस नहीं आओगे, इसलिए मैं इस अवसर का लाभ उठाकर इसे खत्म कर दूंगा। वांग चेन ने अपना दाहिना हाथ जो उसकी कमर पर था बढ़ाया और कोमल आवाज में उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन ने कुछ देर तक सोचा, फिर थोड़ा भौहें चढ़ाई और एक पल के लिए हिचकिचाया। ठीक है ठीक है, जियांग लिंगक्सियन ने झिझकते हुए और कुछ हद तक निराश भाव से सहमति जताई। वह जानती थी कि यही सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उसके पास एक बेहतर तरीका है। जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और धीरे से वांग चेन का बायां हाथ पकड़ लिया और उसकी अनामिका उंगली में रखी अंगूठी को देखने लगी। अंततः जियांग लिंगक्सियन से आत्मा का एक छोटा सा कण धीरे धीरे निकला। हल्के ठंडे रंग वाली आत्मा धीरे धीरे उसकी भौहों के बीच से उड़कर उस वलय में विलीन हो गई। वांग चेन ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा जो थोड़ी बंद थी, और उसका चेहरा धीरे धीरे करीब आने से खुद को रोक नहीं सका। इस दौरान वांग चेन ने अपने होठों को नम करने के लिए दो बार उन्हें दबाया और अंत में जियांग लिंगक्सियन को धीरे से चूमा, जिसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर रखी थी। जियांग लिंगक्सियन को अपने होठों पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ और गले लगने के दौरान उसका नाजुक शरीर थोड़ा अकड़ गया और उसकी कमर धीरे धीरे कस गई। लेकिन एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने अपनी हल्की सी कांपती हुई खूबसूरत आंखें नहीं खोली। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद रखी और बिना कुछ कहे चूम ली। वांग चेन ने उसे लंबे समय तक नहीं चूमा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने उसे बहुत लंबे समय तक चूमा तो जियांग लिंगक्सियन का शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर मैं उसे तब तक चूमता रहूं जब तक वह नर्म न हो जाए, तो क्या वह क्रोधित नहीं होगी यदि हान जुन को पता चल जाए कि हमारे बाहर जाने पर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वांग चेन के सुंदर चेहरे पर गर्म सांसें धीरे धीरे जियांग लिंगक्सियन से अलग हुई, उसने आखिरकार अपनी खूबसूरत पानी जैसी मुलायम आंखें खोली। शिष्य, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जियांग लिंगक्सियन ने अनिच्छा से अपनी पतली बाहों को वांग चेन की कमर के चारों ओर लपेटा, अपना सुंदर चेहरा उसकी गर्दन में कसकर छिपा लिया और दबी हुई आवाज में बोली, दस्तक दस्तक दस्तक। विदाई चुंबन के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन को चौंका दिया, जो लगभग भूल गए थे कि बाहर लोग हैं। जियांग लिंगक्सियन ने दरवाजे की ओर देखा, फिर अपना सिर उठाकर वांग चेन की ओर देखा। उसकी आंखों में अनिच्छा और उदासीनता थी। फिर जियांग लिंगक्सियन ने अपना सुंदर चेहरा करीब लाया और अंतिम शर्म के साथ उसने वांग चेन के होठों को थोड़ी देर के लिए चूमने की पहल की और फिर धीरे धीरे अपनी बाहों को ढीला कर दिया। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को स्वयं उसके कपड़े सीधे करने में मदद की, और जब उसने शर्म से उन्हें टाल दिया और अपने हाथों के पीछे थप्पड़ मारा, तब जाकर उसने अंततः उन्हें सीधे किया। फिर वांग चेन ने लापरवाही से अपने सफेद कपड़े ठीक किए और फिर वह और जियांग लिंगक्सियन दरवाजे तक गए और उसे खोल दिया। क्रंच। एक पल के बाद ताइक्सु अमर संप्रदाय सड़क पर। चलो चलें, रेगिस्तान चलें। वांग चेन खुशी से सड़क पर चल रहा था, शिष्यों की उत्सुक निगाहों का सामना कर रहा था और उसके बगल में जियो किंगक्सु का अभिवादन कर रहा था। चूंकि बहुत कम लोग जियाओ किंगक्सु की युवावस्था के बारे में जानते हैं, इसलिए वह आमतौर पर केवल तभी प्रकट होता है जब वह व्यक्तिगत मामलों से निपट रहा होता है। तो कोने में खड़े अधिकांश शिष्य वांग चेन की ओर देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आज उनके आसपास कोई महिला क्यों नहीं है। वांग चेन और शियाओ किंगक्सु को जाते हुए देखकर शिष्य, जो तीन या दो के समूह में थे और अपने क्षेत्र के अर्चन चरण में थे, भौहें चढ़ा लीं। क्या आपको लगता है कि वह इतनी सारी महिलाओं द्वारा परेशान किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता और पुरुषों के प्यार में पड़ गया है? स्नैप, क्या तुम पूरी तरह से मूर्ख हो? संत ताइक्सु जैसी सुंदरता के साथ, जो स्वर्ग से उतरती परी की तरह दिखती है, सभी महिलाओं को सीधा होना पड़ता है, तो फिर कौन इतना मूर्ख होगा कि अब भी किसी पुरुष को पसंद करे? जब एक शिष्य ने अपने अच्छे भाई को ये कहते सुना, तो वह खुद को रोक नहीं सका और उछलकर उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कोसा। जहां तक मेरी बात है, मुझे तो बस मर्द पसंद हैं। भाई, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। इसी समय दोनों शिष्यों के पीछे से एक शिष्य प्रकट हुआ और उसने कुछ ऐसा कहा जिससे वे इतने डर गए कि वे तुरंत भाग गए। ताइक्सु अमर संप्रदाय पर्वत के तल पर, ताइक्सु अमर शहर। वांग चेन और जियो किंगक्सु एक बूढ़े आदमी की निगाह के नीचे टेलीपोर्टेशन सरणी में चले गए और एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। क्या आप तैयार हैं? तैयार, ये सुनकर जियो किंगक्सु ने ऊपर देखा और अपना सिर उठाकर चिल्लाया, जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे स्पिरिट स्टोन दे देना, वरना मैं टेलीपोर्ट कैसे कर पाऊंगा। टेलीपोर्टेशन व्यूह के प्रभारी वृद्ध व्यक्ति ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लेने का इशारा किया और टेलीपोर्टेशन व्यूह में मौजूद दो लोगों की ओर देखा। वांग चेन और जियो किंगक्सु ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में स्पष्ट रूप से देखा, आप इसे दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा भाई पैसे कैसे दे सकता है? छोटा भाई होने के नाते तुम्हें पहल करनी चाहिए, समझे? वांग चेन ने जियो किंगक्सु के कंधे पर थपथपाया, बहुत अप्रसन्न नजर से उसकी ओर इशारा किया और उसे डांटा, धत्तेरी की, घर में कोई दादी नहीं है, हे हे। जियो किंगक्सु ने गुस्से में शाप दिया, आत्मा पत्थर निकाला और उसे बूढ़े आदमी पर फेंक दिया, फिर गुस्से से घुट गया जब उसने वांग चेन के शब्दों को सुना कि वह नहीं चुन सकता। तो फिर आप कमाल हैं। फुफ, जैसे ही क्रॉस वाइल्डनेस टेलीपोर्टेशन एरे की प्रकाश स्क्रीन रोशन हुई, वे दोनों एक पल में गायब हो गए क्योंकि जियो किंगक्सू ने अंगूठा दिखाया। पीली रेत उड़ रही है और रेगिस्तान उजाड़ है। एक बड़े लेकिन अमर वस्तुओं की खेती के लिए समृद्ध नहीं शहर में, शहर के केंद्र में टेलीपोर्टेशन सरणी से एक शून्य लहराई। वाह, जैसे ही प्रकाश पर्दा जला, एक अंगूठा उठाए एक आकृति और एक मुस्कुराता हुआ आदमी अचानक टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रकट हुआ। वांग चेन हंस रहा था, लेकिन टेलीपोर्ट होने के बाद जब उसने अपने सामने खड़े आदमी को टेलीपोर्टेशन एरे का इंतजार करते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। नहीं हे हे, वांग चेन की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं जब उसने उस भाग्यशाली बेटे को देखा जो उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। उनकी नजरें मिली। स्वतंत्र साधकों में सौभाग्य का पुत्र यांग क्यू ई, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, एक बूढ़े व्यक्ति के भाग्य कथन के तहत पैदा हुआ था जिसने भविष्यवाणी की थी कि उसका अग्निकिलिन के साथ संबंध है, इसलिए उसका नाम यांग क्यूई रखा गया। वांग चेन अपने पिछले जीवन में इस दुश्मन को जानता था और उसे गंभीरता से संदेह था कि बूढ़ा आदमी मूर्ख त्यांदाव था। यांग क्यू भी भाग्य का पुत्र था जिसने अपने पिछले जीवन में उससे सबसे अधिक भयंकर लड़ाई लड़ी थी और वह लगभग हर बार मृत्यु तक लड़ता रहा। हालांकि समान स्तर के लोगों के बीच आमने सामने की लड़ाई में यांग क्यू उसे हरा नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांग क्यू के पास एक पालतू जानवर था, किलिन नाम का एक दिव्य जानवर। उन दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया, इसलिए वे उसके हाथों मारे जाने से बाल बाल बच गए। इस समय टेलीपोर्टेशन सरणी में खड़े होकर वांग चेन और यांग क्यूई ने एक दूसरे को लंबे समय तक देखा और दोनों ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। ये व्यक्ति, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ताइक्सू अमर संप्रदाय का भट्टी शरीर है, औरतों पर जीता है, अब वो मुझे ऐसे देखता है, क्या मरना चाहता है? बाहर कई अफवाहें हैं और यांग क्यू ने जो सुना वह वास्तव में न तो सच है और न ही झूठ। लेकिन किसी कारण से जब यांग क्यू ने वांग चेन को देखा तो उसके दिल में अकथनीय चिड़चिड़ापन महसूस हुआ और उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत दिखाई दिया। दानहाई क्षेत्र के 6ठे स्तर पर अपनी ताकत महसूस करते हुए यांग क्यू को विश्वास था कि वह वांग चेन को मार सकता है जो गुयुआन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। यांग क्यू का पालतू जानवर अग्नि क्यूलिन है जिसके कारण उसका चरित्र बहुत मजबूत है और वह किसी भी समय बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन इस यात्रा में उसका उद्देश्य राक्षस को मारना और उसके खून का उपयोग युवा किलिन को खिलाने के लिए करना था जिसने अभी अभी अपने स्वामी को पहचाना था और वह और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। मैं बहुत देर से टेलीपोर्टेशन एरे पर खड़ा हूँ, क्या अब मैं नीचे उतर सकता हूँ? यांग क्यू की आंखों में गुस्से की झलक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग चेन को देखकर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, विशेषकर जब उसने सोचा कि संत ताइक्सू जैसी सुंदर देवी वास्तव में ऐसी बेकार भट्टी को अपने शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार करेंगी, तो वह और भी क्रोधित हो गया। चल दर, वांग चेन ने उसे अनदेखा किया, उसे ठंडेपन से देखा, फिर जियो किंगक्सू को नमस्कार किया जो उसके बगल में हैरान था और चला गया। ये तो एक बर्बादी है, फिर भी वह इतना घमंडी है। दो लोगों की पीठ को देखते हुए यांग क्यू टेलीपोर्टेशन सरणी के करीब खड़ा था, बहुत गुस्से में था और बेवजह वांग चेन को मारना चाहता था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही थी, उस बाहरी व्यक्ति को मारना चाहती थी जिसने वांग चेन को इस दुनिया में लाया था। क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत है? जियो किंगक्सू, जो वांग चेन के पीछे पीछे चला गया था, भौहें चढ़ाकर उलझन में वांग चेन को देखा और पूछा। खैर, एक घातक प्रतिशोध। ये सुनने के बाद वांग चेन ने चुपचाप सिर हिलाया और अपना सिर घुमाकर यांग क्यू की ओर देखा जिसे बहुत दूर टेलीपोर्टेशन एरे में भेजा जाने वाला था। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जियो किंगक्सू ने फेंक कहा, घूम गया और अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, फिर उसे हवा के माध्यम से टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर जोर से जकड़ लिया। इस क्षण यांग क्यू अचानक दूर चला गया। अचानक टेलीपोर्टेशन व्यू में गड़गड़ाहट हुई और एक शक्तिशाली बल ने उसे कुचलकर खंडहर में बदल दिया। उसमें ताओवाद की एक खास आभा है। मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन मैं उसे कष्ट दे सकता हूँ। हे हे हे, जियो किंगक्सू ने उस दृश्य को देखा जहां शहर के लोग डरावने रूप से टेलीपोर्टेशन सरणी को देख रहे थे, अपने बड़े सफेद दांत दिखाए और हंस दिया। वांग चेन, अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये आदमी मुझसे भी बुरा है। वांग चेन को अचानक अपने पिछले जीवन का एक दृश्य याद आया जहां वह और जियो किंगक्सू एक दूसरे से परिचित हुए थे और अपने दुश्मन की पैतृक कब्र को एक साथ खोदने गए थे और उसका दिल धड़क उठा। तुमने टेलीपोर्टेशन एरे को क्षतिग्रस्त कर दिया, क्या तुम्हें इसकी कीमत चुकाने का डर नहीं है? जियो किंगक्सू को फिर से परखने के लिए वांग चेन ने अपनी आंखें उठाई और पूछा। वह सरल है। ये सुनकर जियो किंगक्सू ने अपने दयालु चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई और फिर उसने अपने शरीर में स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। मैं यहाँ कुछ समय से हूँ। मैंने कई भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश किया है और आज मैं सजा के तौर पर आपके शहर में एक टेलीपोर्टेशन एरे को नष्ट कर रहा हूँ। यदि आप निर्दोष लोगों को इसकी मरम्मत करने की अनुमति देने का साहस करते हैं तो बेहतर होगा कि आप आधी रात को अपनी आंखें खुली रखकर सोएं। जियो किंगक्सू ने अपनी आवाज को कर्कश बना दिया जो पूरे बड़े शहर में फैल गई, जिससे अनगिनत लोग तुरंत चौंक गए और उन्हें आसमान की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आकाश में कोई भी नहीं था, केवल स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र से एक शक्तिशाली दबाव अचानक उत्पन्न हुआ और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। छह छह छह, तुम अभी भी कमाल हो। जब वांग चेन ने उसकी शांत चाल देखी, जिससे वह अपने पिछले जीवन में बहुत परिचित था, तो उसने तुरंत उसे अंगूठा दिखाया और उसकी बहुत प्रशंसा की। चलो मुझे यूजों के पास ले चलो और हम तुम्हें उसे ढूंढने ले चलेंगे। वांग चेन को परिचित ज़ियाओ किंगक्सू का एहसास हुआ, वो वापस आ गया था, सब कुछ वापस आ गया था। फिर वो मुस्कुराया और खुशी से हाथ हिलाया। टहलना, ये सुनकर जियो किंगक्सू ने आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट जारी किया जो वांग चेन के चारों ओर लिपटा हुआ था, और फिर उसका आंकड़ा अचानक सड़क पर कई लोगों की भयभीत निगाहों में गायब हो गया। जियो किंगक्सू इन निगाहों से बिल्कुल भी नहीं बचता था। आखिर जियो किंगक्सू के बुरे कामों का उससे, जो ताइशु संप्रदाय के गुरु का पुराना रूप था, क्या लेना देना था। इस समय जियो किंगक्सू, जो वांग चेन के साथ सड़क पर था, ने चुपके से राहत की सांस ली क्योंकि उसने जल्दी से यूजों की जानकारी देखी थी। सौभाग्य से, सौभाग्य से। जब से उसे पता चला कि जिस खूबसूरत महिला को उसने धमकाया था वह यू संप्रदाय की पवित्र युवती थी, तब से उसने यू संप्रदाय के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की जल्दी की। उनका ध्यान हमेशा चार प्रमुख अमर संप्रदायों पर रहा था और उन्होंने कभी भी यू संप्रदाय जैसे प्रथम श्रेणी के संप्रदायों पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए जब जियो किंगक्सू को पता चला कि वह महिला यूजों की पवित्र युवती थी, तो उसने जल्दी से यूजों के बारे में जानकारी खोजी। अन्यथा रेगिस्तान में चंद्र संप्रदाय के स्थान के निर्देशांक न जानना उसके लिए शर्मनाक होगा। एक दर्जन मिनट के बाद एक बड़े रेगिस्तानी नखलिस्तान के ऊपर आकाश में जियो किंगक्सू और वांग चेन अचानक उतर आए। युएजों के विशाल द्वार और सीढ़ियों को देखते हुए, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करते थे और चांदनी नीले रंग में बने थे, 5 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे पट्टिका के साथ, जियो किंगक्सू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह अंततः यहां है, 500 साल बाद मैं अंततः तुम्हें फिर से देख सकता हूं। दरअसल वांग चेन ने जो कहानी सुनी थी वह पूरी नहीं थी। ज़ियाओ किंगक्सू और सुज़ियान्यू ने कपड़े पहनने के बाद भी एक दूसरे को पहचानना नहीं छोड़ा। लेकिन उस समय सुज़ियान्यू प्रेम पुष्प के जहर और अपने कौमार्य भंग के कारण बेहद कमजोर हो गई थी। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। यह उस समय की बात है जब जियो किंगक्सू ने पूरे एक साल तक सूर्य और चंद्रमा गुप्त क्षेत्र में उसकी देखभाल की और गुप्त क्षेत्र बंद होने के बाद भी बाहर नहीं गया। अगले वर्ष जब गुप्त क्षेत्र को पुनः खोला गया, तब तक जियो किंगक्सू और सुज़ियान्यू के बीच अटूट बंधन समाप्त नहीं हुआ था। उस वर्ष देखभाल करने और देखभाल पाने के अनुभव ने वास्तव में जियो किंगक्सू और सुज़ियान्यू दोनों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। दुर्भाग्य से सुज़ियान्यू बहुत सतर्क थी और उसने जियो किंगक्सू को अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। आखिर वो चंद्र संप्रदाय की संत थी। गुप्त लोक में रहते हुए भी उसे अक्सर डर लगता था, बाद में वहां से निकलने की तो बात ही छोड़िए।